शुभ प्रातः मित्रों, इस प्रातः में इस आराधनालय में फिर से आकर बहुत ही आनंदित हूँ। एक सप्ताह के पश्चात अपना जुकाम शैतान को वापस करके हर चंद मिनटों में, आप जानते हैं, हर बार वो मुझे पकड़ा देता है, मैं उसे वापस पकड़ा देता हूँ और हम अब भी लड़ रहे हैं। मैंने ठाना हुआ है कि ये उसे ही रखना है, समझे। हर बार वो मुझे दे देता है और मैं उसकी ओर वापस खसका देता हूँ। देखा, वो मुझे देता है और मैं उसकी ओर खसका देता हूँ। इस प्रकार वो वापस देने में तेज है। यद्यपि आप जानते हैं, निश्चय ही वो जानता है कि कैसे करना है, परंतु अंत में मैं उसे थका दूंगा या उसके धैर्य को तोड़ दूंगा, जैसे कि मैंने उस रात्रि कहा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, उसके लिए प्रार्थना हुई और उसने कहा ठीक है, कहा कि शैतान ने मुझे बताया कि मैं चंगा नहीं हुआ हूँ, और कहा मैंने देखा कि मेरे सारे लक्षण वही थे जैसे कि आरंभ में थे, और उसने कहा ठीक है। मैंने कहा शैतान, ये सच है, मैं कोई अंतर नहीं देखता, परंतु तुझे मालूम है क्या, जब तक वे मुझे नहीं छोड़ते मैं जितना हो सकता हूँ उसकी गवाही देता रहूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए अब यदि तू चिपका रहना चाहता है तो मेरी सुनता रहे और आसपास रहे। ये वास्तविक विश्वास है, परमेश्वर की महिमा की गवाही देना, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का ठोस प्रमाण है, वो चीजें जो दिखाई नहीं पड़ती, समझे। आप विश्वास को देखते नहीं, आप विश्वास पर विश्वास करते हैं। इस सप्ताह घर में बहुत व्यस्त रहा, उनका पहला दिन था, मैं सोचता हूँ लगभग वहाँ 30 थे, और तब मैंने चाहा कि मेरे सारे साक्षात्कार और बातें आई, और ये बहुत ही व्यस्त सप्ताह रहा। इस सप्ताह मैंने कुछ सीखा, मैं गया और यहाँ नगर में मेरा मित्र है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति, वो एक चिकित्सक है। हम एक संघ विद्यालय में गए, डॉक्टर सैम अदेर, और वो थोड़ा मोटा है, और मैंने उसे लगभग 4 वर्षों से नहीं देखा। मैंने उससे लगभग 3 या 4 घंटे उससे इस सप्ताह बातें की। हम दफ्तर गए और उसे बंद करके अंदर जाकर बातें की, और मैंने कुछ बातें उसे बताई जो कि मैंने आत्मिक पाई थी, दुष्ट की शक्ति के विषय में, और कैसे वे भीतर आते हैं, और वो मुझे शारीरिक विज्ञान बता रहा था या उसका निदान चिकित्सा में। यह आश्चर्यजनक था कि ये देखना कि आपस में ये कितनी सिद्धता से मेल खाते हैं, समझे। इसलिए वो मुझे कुछ निश्चित स्राव के विषय में बता रहा था जो मनुष्य में आते हैं, जिससे कि मनुष्य को जुखाम ना हो या कुछ और। कहा आप बस, ये उसमें कुछ स्राव आ गया है और जीवाणु इस निश्चित स्राव में आ जाते हैं, या ये स्राव जीवाणु को बनाता है। मैंने कहा यदि स्राव जीवाणु को बनाता है तो फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि जीवन कहाँ से आता है, समझे। ये ठीक है कि उसने कहा हम ये नहीं जानते, कहा बता नहीं सकता, आप मिर्च लें या कुछ और वे जीवाणु विभिन्न रूप में बनते हैं, तब उनमें स्वयं ही संख्या की बढ़ने की विधि होती है। मैं समझता हूँ कि स्राव में से होते हुए इन जीवाणु को हटाते रहें, या डॉक्टर या किसी के द्वारा या नर्स इसके विषय में अधिक समझेंगे, परंतु मेरी रुचि और मेरे विचार थे कि वे जीवाणु स्वयं उसमें का भीतर का जीवन, उस छोटे प्याले नुमा एक छोटे कैप्सूल के समान, उसके भीतर का जीवन इतना छोटा कि मानव दृष्टि से इसे देखा नहीं जा सकता, परंतु उस सूक्ष्म चीज में एक बड़ा सामर्थ्य कांच देख सकता है, इसके अंदर जीवन है। क्या कारण है कि वो जीवन इतना सारा स्राव अपने चारों ओर लपेट लेता है और कैप्सूल को बनाता है। देखिए, यह एक जीवाणु, ये शैतान है, ये आत्मिक शक्ति है, वे कभी योग्य नहीं हो पाएंगे। वे ऐसे स्थान पर आ जाएंगे कि वे अणु से भी नीचे चले जाएं, ताकि वे इस छोटे सूक्ष्म जीवाणु को ले ले आदि आदि, और छोटी स्राव की झिल्ली जो कि केवल शक्तिशाली शीशे के द्वारा देखी जा सकती है, और तब, परंतु उससे आगे वे नहीं देख सकते, क्योंकि कोई नहीं है कि कोई भी प्राकृतिक चीज नहीं है कि उसे पकड़ सके। अब इसके पहले मैं लोग खड़े हुए हैं, अब चार्ली मुझे देखते हुए बुरा लगता है, आप और डेविड और रॉडनी और आप सब वहाँ, जब मैं आपके घर आया तो आपने मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार किया और आदि आदि, और परमेश्वर के भवन में आपको बैठने का स्थान नहीं दे सकता, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। यदि आप यहाँ आ जाएं तो यहाँ ये मेरी है, यहाँ ऊपर आ जाएं और स्वयं को स्वागत अनुभव करें। आप में से कोई भी जो यहाँ आना चाहता है और ये कुर्सी ले ले, बस यहाँ ऊपर आ जाएं, समझे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अच्छा वाला है। ये वास्तव में मेरी नहीं है, ये श्री विल्सन की है, विद्यालय के अध्यक्ष। मेरे पास ये 1937 से है, इसलिए ये सबसे पुरानी है। इसलिए मैं, उसने यहाँ कुछ समय पहले कहा, अरे मेरी कुर्सी अब तक तुम्हारे पास है। मैंने कहा प्रचार करने से पहले मैं उसमें हर रात्रि में बैठता हूँ, और उसने कहा अच्छा तो फिर ये अच्छे हाथ हैं, इसलिए इसे चलने दो। अब आपका स्वागत है। एक कुर्सी यहाँ है और फिर यदि आप यहाँ आना चाहें जहाँ ये छोटे छोटे बालक बैठे हैं, अब आप संकोच ना करें, सोचें कि आप छोटे हैं क्योंकि आप नहीं हैं, परंतु आप फिर भी होना चाहेंगे। परंतु और यहाँ एक और कुर्सी है, यहाँ पर बैठे हैं, और एक और यहाँ है, और इस प्रकार से आप कर सकते हैं, विशेषकर वहाँ कुछ महिलाएं, ये एक प्रकार से वहाँ खड़ा होना है। धन्यवाद। और यदि आप यहाँ आते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी, और यहाँ बैठे ये ठीक होगा, अपने हाथ पीछे से ले ले, झुक जाएं, जैसे कि हम बातें करते हैं। और चार्ली, मैंने सोचा तुम इस ओर आ रहे थे, मैं सारे समय उसे छेड़ता हूँ। मैंने कहा तुम आराधनालय में आओ, मैंने यत्न किया कि उससे मिलूं और आकर मुझसे मिले, और तब मैंने कहा आज तुम आराधनालय में आते हो तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि इस प्रातः डॉक्टर चार्ली कॉक्स संदेश देंगे और चला जाऊंगा। उसने कहा मैं बेहोश हो जाऊंगा, इसलिए इसके पहले मैं उसे बुलाऊं, वो पीछे को चला गया। इसलिए मैं चाहूंगा इसके पहले कि हम इस सबक को आरंभ करें, पिछले सप्ताह मैंने सोचा कि प्रभु ने हमें आशीषित किया, क्या आपको पसंद आया? ये हर स्थान में उमड़ पड़ा, यहाँ तक कि ये संदेश कैलिफोर्निया में पहुँच गया। पिछली रात्रि उन्होंने कैलिफोर्निया से टेलीफोन किया, इससे अब वे तय करना चाह रहे हैं और इसी चीज को कैलिफोर्निया में भी चाह रहे हैं अगले आने वाले जनवरी में। देखा, पवित्र आत्मा एकदम से वहाँ शेयरपोर्ट में प्रभाव डालना चाह रहा था, ऐसा लगा, और इस प्रकार से ये स्थान स्थान पर जा रहा है, प्रकाशन का लगभग एक घंटा, और इसलिए हम बहुत ही आनंदित हैं और विश्वास कर रहे हैं और अपने झुंड को देख रहे हैं यहाँ इस आराधनालय में, परमेश्वर के प्रकटीकरण को अपने मध्य में देख रहे हैं कि इसके द्वारा फलें फूलें। इसके लिए हम बहुत आनंदित हैं और विश्वास करते हैं कि हम कलीसिया की बुलाहट के महान घड़ी में हैं और इसे क्रम में रख रहे हैं। इसलिए मैं कुछ ढूंढ रहा था कि मैं, जबकि मैं अपने अच्छे मित्र डॉक्टर अदेर के उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, बातें कर रहा था, और उन्होंने कहा एक्सरे की विभिन्न चीजों पर बात कर रहे थे और खराब जुखामों और विभिन्न जीवाणुओं के विषय में कहा, और उठकर अपनी पुस्तक ली और उनमें मुझे दिखाया कि उन्होंने क्या ढूंढा। उसने कहा बिली मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि बुरा तेज जुखाम, उनमें से बहुत सो ने कहा कि तेज बुरे जुखाम के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने हमेशा सोचा कि यदि तुम्हारा गला खरखरा रहा है, यदि आप किसी चीज का गरारा करेंगे, मैंने कहा जब प्रचार के बाद मुझे हो जाता है, मैंने कहा कि मैं रात्रि में घर जाकर उस थोड़ी खरखराहट को, मैंने कहा मैं लिवरिस लेता हूँ और गरारा करता हूँ। मैंने कहा हमारे पास ये हमारे घर में वर्षों वर्षों से है मुंह साफ करने के लिए। उसने कहा कि ठंडा पानी भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं सोचते कि आप किसी चीज का गरारा करेंगे तो वो कभी आपको लाभ पहुंचाती है, क्योंकि ये केवल इतना कर सकता है जो जीवाणु आपके गले में है उसे धो देता है, ये आपके रक्त प्रवाह में नहीं जा सकता, यदि ये करता है तो आपके गले को फाड़ देता और आप क्षतिग्रस्त होते, समझे, और कहा ये नहीं कर सकते। इसलिए पुरानी कहावत है फिर वापस आओ, दवाई बेचने के लिए है, खाने के लिए नहीं, आप जानते हैं। इस सब के बाद और चिकित्सा पुस्तकों को देखते हुए जो कि मेरे घर में भी हैं, पढ़ने के लिए मैं औषधि में रुचि रखता हूँ। निश्चय ही कोई भी वस्तु जो परमेश्वर के लोगों की सहायता करती है, मनुष्य जाति की सहायता करती है, यदि ये शांति है, शांति शांति शब्द के अध्ययन करने में मैं रुचि रखता हूँ, मैं अच्छे समाज में रहने में रुचि रखता हूँ, मैं अच्छे विद्यालय में बालकों को भेजने में रुचि रखता हूँ, मैं किसी भी अच्छी चीज में रुचि रखता हूँ, पूरा पूरा और सही। और औषधि ने कुछ महान चीजें की हैं, मैं विश्वास करता हूँ बहुत सी चीजें परमेश्वर ने उपयोग की हैं। मैं विश्वास करता हूँ हम परमेश्वर के प्रति अधिक ईमानदार और पवित्र हों, उनके पास कैंसर के लिए भी और हर चीज के लिए भी सामग्री होगी, यदि हम परमेश्वर के पास चीजें हैं, यदि हम उसके विषय में उससे पूछें, समझे। इसलिए अब मैं इसी कारण विश्वास करता हूँ कि सॉल्ट टीकाकरण, क्योंकि छोटे बालक जिस प्रकार से पीड़ित होते हैं और शैतान दुष्ट चीज वहाँ उन छोटे बालकों को लकवा और चीजें करता है, और परमेश्वर ने इसकी खोज होने दी संरोपण के लिए, और इसने महान चीजें की जिसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आभारी हैं। धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने हमें सदा आशीषित किया है। और भाई जहाँ वो घर वापस नहीं जा रहा है, क्या वो बहन नाश है? वो ओ ये अच्छा है, ये अच्छा, ओ ठीक है। अब घर आने के पश्चात मैं अध्ययन कर रहा था, मैं वहाँ कमरे में बैठ गया और देर तक अध्ययन करता रहा, ये सब क्या है? मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जिसका कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, ताकि आप मेरे साथ अध्ययन कर सकें। और प्रभु जब वो कमरे में था, मैंने उसके लिए लिया क्योंकि मुझे उसके साथ कुछ महान अनुभव हुए थे। परंतु क्या आपको मालूम है, डॉक्टर ने मुझे बताया, उसके बाद मुझे उच्च दर्जे और हाल ही की औषधि पुस्तकों में दिखाया जो कि मैं जानता हूं और मैंने अभी अभी खोजा है। जो भी है, एक डॉक्टर यहां बैठे हुए मुझे सुन रहा है। अब ये हाल ही की सबसे अच्छी चीज तेज जुकाम के लिए है। उनके पास कोई औषधि नहीं है, उन्होंने एस्प्रिन आदि को बेकार ठहराया है और आदि आदि, केवल दर्द को कम करने के लिए और आदि आदि। जुकाम या दुर्गति, ये जुकाम में कोई लाभ नहीं पहुंचाता, परंतु आराम करने में आपकी सहायता करता है। और बुरे जुकाम के लिए सबसे अच्छा है कि लेटकर सो जाएं, आराम करें, बस पलंग पर लेट जाएं। इसके लिए सबसे अच्छा यही है जो आप कर सकते हैं। अब फिर मुझे अध्ययन करना है, मैंने कहा डॉक्टर सैम, तो फिर ये है एक तेज जुकाम। अच्छी बात है कि आप आराम करें। उसने कहा ये किसी भी चीज के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा डॉक्टर, मैंने कहा ये बहुत ही अच्छा है। और हमने थोड़ी और देर बातें की और मैं फिर घर चला गया। और मैंने उसे बताया वो खरगोशों और गिलहरियों को पसंद करता है और उसके लिए बाहर नहीं जाता। हम एक साथ बहुत शिकार किया करते थे जब हम लड़के थे, शिकार खेलना और विशेषकर मछली पकड़ना। इसलिए तब मैं घर गया, मैं ये सोचने लगा, क्या आप जानते हैं, मैंने जानवरों को ध्यान से देखा। आप कुत्ते को लें, वो बीमार होता है, वो जाएगा थोड़ा पानी पिएगा और कहीं जाकर लेट जाएगा, जाएगा लेट जाएगा। तब फिर मुझे विचार आया, अगली प्रातः मैं पलंग में लेटा हुआ था, लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। वे लगभग 6:30 बजे उठे, मैं लगभग 4:30 बजे उठ गया था या 5 बजे। मैं वहाँ लेटा हुआ था, बहुत बार सोच रहा था, परमेश्वर चीजों को प्रकट करता है। आप जानते हैं मैं ये नहीं सिखाता, परंतु क्या आप जानते हैं, मनुष्य आरंभ में जब परमेश्वर ने उसे बनाया, उसने उसे चिकित्सा करवाने के लिए नहीं बनाया। उसके अंदर उसकी अपनी चिकित्सा होती है, वो अपने ही अंदर एक इकाई है, समझे। तब चंगाई बाहर के स्रोत से नहीं आती, इसे अंदर की ओर से ही आना है। अब हम बाहर की सहायता ले सकते हैं, जैसे कि जीवाणुओं को मारने को, या हम में जो भी है, या हम अपने हाथों को ले सकते हैं और एक दूसरे को काटते, एक टुकड़ा बाहर निकालते, या कुछ जैसे कि अपेंडिक्स या खराब दांत या कुछ और उसे बाहर निकालते हैं। परंतु चंगाई किसी बाहर की वस्तु से जो हम लगाते हैं नहीं आती। चंगाई वो सामर्थ्य जो अंदर है, हमारे में है, वापस कोशिकाओं को बनाने की, जो कि अपने स्थान में टूट गए हैं, जो निकाल दिए गए, और इसलिए चंगाई आप में है। अब ध्यान पूर्वक सुने और जोर लगाकर सोचें। इसके पहले आप इस विचार को जाने दें। आरंभ में मनुष्य जब वो बनाया गया, एक मनुष्य ईश्वर था, वो पूर्णतः एक ईश्वर था, क्योंकि वो परमेश्वर की सूरत पर था। परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वो उन सब चीजों का वारिस था जो परमेश्वर में है। और मनुष्य को एक राज्य दिया गया और उसका राज्य पृथ्वी पर था। आपका अधिकार मछलियों पर, हवा की चिड़ियों पर और सब चीजों के ऊपर था। वो बस बोल दे और हर चीज उसका कहना मानती थी, क्योंकि वो स्वयं में ईश्वर था, विश्वव्यापी परमेश्वर नहीं, परंतु मेरा अर्थ स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर से। परंतु वो अपने राज्य का अधिकारी, वो एक राजा था, एक राज्य करने वाला राजा, वो मनुष्य था। और अब भी अपनी गिरी हुई अवस्था में उसमें अब भी प्रकट है। अब अधिक समय नहीं हुआ, वे यत्न कर रहे थे कि मिलावटी नस्ल पैदा करें, और ये कहा कि मनुष्य नीचे की जाति के जानवरों से आया है, और क्रम विकास के द्वारा वो स्वयं को ऊपर लाया। अच्छा देखिए, वे विज्ञान के द्वारा स्वयं को मूर्ख बना रहा है, जब तक कि उसने स्वयं को ही गलत सिद्ध नहीं कर दिया। अपने ही मत को आप किसी की मिलावट करके और उसे उच्च स्तरीय बनाएं, ये वापस नीचे आ जाता है। ये नहीं हो सकता, मिलावटी भुट्टा या कोई भी स्वयं को फिर वापस उत्पन्न नहीं कर सकती। ये जैसे मैं उस दिन कह रहा था, गधा और घोड़ी संतान उत्पन्न कर सकते हैं या खच्चर को जन्म देगा, परंतु ये खच्चर दूसरे खच्चर को जन्म नहीं दे सकता। आरंभ करने के लिए फिर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर बीज अपनी ही जाति के अनुसार। अब जब बनाए गए थे, जब हम बनाए गए और उन्होंने हाल ही में ये पाया है कि आपकी देह ज्योति से भरी हुई है, एक्सरे ने ये सिद्ध किया है। एक्सरे की कोई अपनी किरणें नहीं होती, ये आपकी ज्योति को उपयोग करता है। आप 4 किरणों के साथ जन्मे हैं, थोड़ी देर के पश्चात कहिए 20-25 एक रन निकलती है और 35 दूसरी या 50 दूसरी निकलती है और अंततः जब आप लगभग 65 पार करते हैं तो आप अपनी अंतिम किरण पर रह रहे होते हैं और हर बार आप एक्सरे उतारते हैं और आप उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। यही कारण है कि आपके पास और नहीं है, आप इन बालकों के पैरों को उन मशीनों से सटा देते हैं क्योंकि ये उन किरणों को उनकी छोटी देह में तोड़ रही है और वो ब्रह्मांड किरण जो आप में है, जिसके आप बने हैं, ज्योति की कोशिकाओं से भरे हैं, ये ब्रह्मांडीय किरणें हैं, परंतु परमेश्वर एक भिन्न ज्योति है, परंतु फिर भी वो ज्योति है। मैं सोचता हूँ वो चित्र जो वहाँ है एक महान प्रमाण है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ज्योति है। और जब हम परमेश्वर की ज्योति में उसके पुत्रों के समान चल रहे थे, परमेश्वर ब्रह्मांडीय ज्योति नहीं है, परंतु परमेश्वर की ज्योति हमारी ब्रह्मांडीय ज्योति में होकर कार्य करती है, हमारी कोशिकाएं, और हम एक समय हम पूरी रीति से परमेश्वर के वास्तव और मूल पुत्र थे, परंतु जब गिराव आया और तब वहां से और आज आत्मा के फल प्रेम आनंद धीरज कोमलता सज्जनता सहनशीलता ये सब अलौकिक हैं। ये एक उस स्थान पर आता है जहां सारी देह इतने धीरे धीरे जैसे कि समुद्र की तलहटी में समुद्री घास, बहुत सी बार गोताखोर और वे इस घास के नीचे आ जाएंगे और इसके पहले कि वो जान पाएं वे इस प्रकार से उलझ जाते हैं कि वे इसके बाहर नहीं आ सकते। पाप ने इसी प्रकार से मनुष्य के साथ किया, इसी प्रकार से ठंडक या सुस्ती ने कलीसिया के साथ किया, साम्यवाद ने राष्ट्र के साथ इसी प्रकार से किया। ये इतनी धोखेबाज है और तब ये मानव देह में ये हमें ढांक लेता है और परमेश्वर की ज्योति को बाहर धकेल रहा है नामधारियों के द्वारा और विश्वास का इनकार करने और आदि आदि के द्वारा। परमेश्वर के विश्वास की महान सामर्थ्य की किरणों को बाहर धकेल दिया जो हम में है, जो होना चाहिए। उन्होंने इन सारी किरणों को एक ऐसे स्थान पर बाहर धकेल दिया कि हम एक समय में आ गए और तब अब सराय के नीचे कलीसिया है क्योंकि इसे बाहर निकाल दिया गया। सारा का सारा अंधकार है बाहर और यहाँ तक कह रहे हैं ये घटित नहीं होता, इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये हो सकता है। परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को देखिए और फिर भी मनुष्य स्वयं में कहीं भीतर स्वयं में कहीं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, वो केवल एक छोटा सा बटन के समान है। जब मनुष्य बचाया गया वो उसमें का परमेश्वर है, ये वही छोटी ज्योति है जो भीतर आती है जो उसे जो गलत है करने से रोकती है। अब यदि आप सारा द्वेष और शत्रुता और झगड़े और अविश्वास निकाल सकते हैं तो वो छोटी बटन जैसी परमेश्वर की ज्योति और सामर्थ्य में बढ़ने 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 लगेगी और अविश्वास को बाहर कर देगी और आप इसे शारीरिक व्यायाम के द्वारा नहीं करते, आप ये पवित्रताई और पवित्र जीवन के द्वारा कि पवित्र आत्मा आप में से होकर कार्य करे। मैंने इसमें से कुछ को पकड़ा है जहां अधिक समय नहीं हुआ, कितनों को स्मरण है कि जब फिजी का पैरी उस प्रातः मरा हुआ जिलाया गया। आप में कुछ यहां है, आपने ये यहां बहुत बार अखबार में देखा। मैं देखता हूं बहन विल्सन और वे उन्होंने अपने हाथ उठाए हैं। जब वो व्यक्ति मरा तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, अब वो जीवित है। कभी कभी इसकी गवाही देने को कलीसिया में आता है। वो कई घंटों से मरा हुआ था, वो फेफड़ों की क्षति से मरा था, वो लहू से लथपथ था और मैं गया। उन दिनों में मैं युवा प्रचारक था और यहाँ बहन जैक्सन सदस्य हुआ करती थी और एक मेथोडिस्ट प्रचारक की पत्नी, अब मैं भूल गया कि उसका क्या नाम था, शेफनर, भाई शेफनर और बहन शेफनर, और वे वाइस हार्ट के संबंधी थे और वो वहाँ पलंग के पास खड़ी थी और मैं दूर हटना आरंभ हो गया और वो उतना ही लहू में था जितना हो सकता है जहाँ वो मरा था और उसकी आंखें पलट गई थी और उसका गला सूज गया था। उन्होंने उसके मुंह पर चादर डाल दी थी, उसकी पत्नी वहाँ थी, रो रही थी और प्रियजनों को घर के पते लेने का यत्न कर रही थी कि प्रियजनों को बुलाए। मैं पलंग से दूर जाने लगा, मुझे लगा कि किसी ने अपने हाथ मुझ पर रखे। मैंने सोचा ये बहन शेफनर थी और जब मैं घूमा तो आसपास कोई नहीं था और जब मैं घूमा तो वो हट गया। भाई एलिज वहाँ मृत पड़ा था और हम बहुत अच्छे मित्र थे, नदी पर मछली पकड़ी, आप जानते हैं कि हम कैसे साथ साथ रहे। और उसे वहाँ चोट लगी, एक यातायात के विशेष साधन पर सवार था, उससे उसके फेफड़े कुचल गए थे, उसका लहू निकल रहा था, उसके लहू बहने से उसे टीबी हो गई थी और वो मर गया। मैं इस ओर हटना आरम्भ हो गया तब मैंने उस हाथ को फिर अनुभव किया, मैं घूमा वो मुझसे फिर अलग हो जाएगा। और इसके पहले मैं जान पाता कि मैं क्या कर रहा था, मैं उस व्यक्ति के ऊपर लेटा हुआ था, अपने होंठ उसके होंठ पर, मैं भी लहू में वैसे ही लथपथ था जैसे वो था। उस पर लेटा हुआ था, परमेश्वर को पुकार रहा था और मैंने अनुभव किया कि कोई चीज मेरे कान के पास आई। ये उसका हाथ था। आपने उसे यहाँ खड़े होकर गवाही देते हुए सुना है, देखा कैसे वो, और वो फिर जीवित हो गया। ये लगभग 25 या 30 वर्षों पहले हुआ था। आज वो जीवित है, यहाँ मोड़ पर है। अधिक समय नहीं हुआ वो इसकी गवाही देने यहाँ कलीसिया में आया था। यही जहाँ से टेलीफोन आया और एक बार जानना चाहते थे। मैंने इसकी कनाडा में गवाही दी थी जब मैंने अपनी पहली सभाएं आरंभ की थी। उन्होंने श्री कूट्स को बुलाया, देखभाल करने वाले को, और पूछा कि कोई व्यक्ति वहाँ उस कक्ष में से जी उठा था जो मर गया था। अभी भी मेरे पास वो कटिंग है। उन्होंने कहा, हमने बहुत से आश्चर्य कर्मों के विषय में सुना है कि हुए। श्री कूट्स ने कहा कि श्री ब्रैनम मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, सब प्रकार की चीजें हुई हैं, परंतु हमारे पास ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं है कि कोई मरुओं में से जी उठा हो, विशेषकर इस अंतिम संस्कार के कक्ष में। कनाडा वासियों ने इसे गलत समझा और अगले दिन ओ अखबार भरा हुआ था। उसने कहा, हर स्थान से सैकड़ों लोगों ने फोन किया और भाई पेरी स्वयं वहां पर अपनी देह की पुनरुत्थान की गवाही के लिए वहां थे और उन बातों को जो अखबार में थी उसका विरोध कर रहे थे। और इसलिए तब ये समझा गया था कि ये वहाँ नहीं था, ये उसके घर में घटित हुआ। इसलिए जहाँ वो मृत पड़ा था वे उसे वहाँ अंतिम संस्कार वाले कक्ष में अभी तक नहीं ले गए थे। तब उस रात्रि मैंने पढ़ा जहाँ इरेनियस, मैं विश्वास करता हूँ या ये संत मार्टिन था, जिसने अपने शरीर को अपने मित्र पर डाल दिया था उसके फांसी चढ़ जाने के बाद। अब तो ये इतिहास है और उस पर एक घंटे तक पड़ा रहा और वो व्यक्ति जीवित हो गया। और मैं बाइबल में देखता हूँ जहाँ एलिया ने अपने शरीर को मृत बालक के ऊपर रखा और वो जीवित हो गया। मैं छोटे लड़के के लिए जो फिनलैंड में था सोचता हूँ, जब वो वहाँ सड़क पर मरा पड़ा था, सड़क के एक और पड़ा था, तब भी लगभग 2 माह पहले, मैं विश्वास करता हूँ ये जीन न्यूज़वीक में थी जो कि उन्होंने निकाला। वे उसे दिव्य चंगाईकर्ता कहते हैं, लंदन में निकाला और उन्हें बीमारों के लिए प्रार्थना करने को भेजा और वहाँ बजाय दवाई के 80% अधिक चंगाई थी जब बीमारों के लिए प्रार्थना की गई। रीडर डाइजेस्ट ने इसे लिखा और यहाँ अमेरिका में उन्होंने ये लिखा और रीडर्स डाइजेस्ट में जहाँ उन्होंने दिव्य चंगाई की जांच परख की थी और उन्होंने एक भाई को लिया जिसने बीमारों के लिए प्रार्थना की थी और एक बीमार व्यक्ति था और उससे बीमार के लिए प्रार्थना करवाई और तब उस पर एक शीशे की पन्नी का टुकड़ा रखा। कोई भी जानता है कि शीशे की पन्नी किरण को परावर्तित कर देती है और ऊपर और व्यक्ति के मध्य में, और व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा था वो भाई उसका हाथ और इस प्रकार से लेट गया और एक्सरे लिया गया और व्यक्ति के हाथ से दिखाई पड़ा एक किरणों की चमक उसके हाथ से आ रही थी, उस आदमी पर पड़ रही थी। देखा, ये ठीक बात है। जी हाँ, परमेश्वर जानता है कि इसका क्या अर्थ है जब उसने कहा वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इस व्यक्ति का एक बीमार पर हाथों का रखना और यांत्रिक एक्सरे, ओ परमेश्वर, ये दर्शाता है कि किरणें व्यक्ति के हाथों से आ रही हैं। कैसे लोग ये कहने के लिए इतने मूर्ख हो जाते हैं कि दिव्य चंगाई नहीं होती। क्यों? यहाँ तक कि यांत्रिक तंत्र, वो यांत्रिकी जिसे कि विज्ञान ने बनाया है, एक उनके अपने विचार के लिए फटकार है। ये कलीसिया जो कह रही है दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है और परमेश्वर की सामर्थ। उस शिकागो के व्यक्ति के विषय में क्या है, आगे और आगे बता रहा था कि उसने इस मामले को वहाँ मेरे सम्मुख कैसे रखा और वो बात कि कैसे वो हाथ से झूठ जांचने वाला हो सकता है इसका, समझे। और वो महिला लेटी हुई मर रही थी, उस पर ये परीक्षण किया गया और हाथ को चारों ओर घुमाया भी गया उस पर्याप्त सामर्थ्य से कि रेडियो संदेश समस्त संसार में भेजें 40 बार, और मशीन को तोड़ दिया गया। वो संत मरते हुए उसने स्वीकार किया, इसे दुष्ट व्यक्ति पर रखिए, वो जो मर रहा है। और जब ये किया गया तो उसने उस हाथ को झटक दिया, इसका उल्टा, इस पार जो कि मशीन को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। वो विधर्मी, उसने कहा, यदि कोई परमेश्वर है और वो भले हृदयों की भलाई है, अपनी महिमा के लिए वो इस मशीन में इतनी सामर्थ भेजेगा कि इसे फेंक दे। उस महिला में कुछ है कि उस सामर्थ को बनाए, और यदि एक दुष्ट व्यक्ति उसे दूसरी ओर फेंक दे, कहा परमेश्वर मुझ पापी पर अनुग्रह हो, और उसने अपना हृदय मसीह को दे दिया, ये ठीक बात है। क्यों? विज्ञान जानता है, और एक दिन आपको पता लगेगा कि परमेश्वर आप में है, समझे। परमेश्वर स्वयं मनुष्य में है, परमेश्वर हम में। ओ कैसे मैं उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही शानदार। अब इसके पहले उसके वचन पर आएं और अब हम थोड़ा अपना समय लें, क्योंकि आज प्रातः हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और मैंने दे दिया है। और अब कोई पूछ रहा था कि हम यहाँ पर अगले रविवार होंगे या नहीं। ठीक है, अभी तक मैं नहीं जानता, वे जान सकना कठिन है जब तक कि इसे परमेश्वर प्रकट न करे। यदि प्रभु ने चाहा है, संभव है अगले रविवार रात्रि में प्रातः के सारे उपदेश अपने प्रिय भाई से जो यहाँ है, अगले रविवार रात्रि संभव है यदि मैं आसपास हुआ, प्रभु ने चाहा, जो कि मैं अक्सर होता हूँ जब तक कि बुलावा ना हो, तो मैं, हमने उसका सितारा पूर्व में देखा है और उसकी आराधना करने आए हैं, इस पर बोलना चाहता हूँ, एक संदेश, एक बड़े दिन का संदेश। अब हम उसके पास चलते हैं या उसके वचन के पास, हम प्रार्थना के द्वारा उसके पास चलते हैं। यदि सब जो खड़े हो सकते हैं, हम एक क्षण के लिए खड़े हो जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम सबसे आनंदित लोग हैं, हम इतने अधिक आनंदित हैं कि हमारे प्राण उसे अपने में समा नहीं सकते। कभी कभी हम चिल्ला पड़ते हैं और अपने उस आनंद को जो हमारे हृदयों में बाहर निकलते हैं यीशु मसीह में होते हुए, ये जानने के लिए कि जिस घड़ी में हम रह रहे हैं, जहां हर चीज में हलचल है, फिर भी एक निश्चित नींव है, और बीते दिनों में तेज तर्रार लोग जो उठ खड़े हुए हैं और अपने अपने यंत्रों से परमेश्वर के अस्तित्व को गलत सिद्ध करने का यत्न किया और फिर वापस परमेश्वर की महिमा की गवाही दी। सच में यहूदा को स्वयं ये कहना पड़ा कि उसने एक निष्कपट लहू को धोखा दिया। रोमी सरदार ने कहा, सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, उसके अपने शत्रुओं को गवाही देनी पड़ी। और हम ये देखने के लिए जीवित हैं कि एक वैज्ञानिक युग अपने अंत पर आ गया है और वे उसके आगे नहीं जा सकते, वे किसी भी क्षण एक दूसरे को टुकड़ों टुकड़ों में उड़ा देंगे। और फिर भी हम देखते हैं हर विज्ञान का यंत्र जिसका उन्होंने आविष्कार किया है, आपको खंडन करने का यत्न किया, आपके चारों ओर घूमे और आपकी महिमा की गवाही दी। इसके लिए हम आपका कैसे धन्यवाद करें। प्रभु, आज हम इसे स्मरण रखें कि परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं होगा। प्रभु, हमें विश्वास दें, जैसे कि थोड़े समय पहले एक गंवारू कहावत जो मैंने कहा कि परमेश्वर की सामर्थ हम में इस विषय पर और हमारे सारे तंतु परमेश्वर की ज्योति है और अंधकार और पाप ने हमारे प्राण के उन छोटे छोटे छिद्रों को बंद कर दिया है, होने पाए इस प्रातः पवित्र आत्मा हमारे जीवों में फैल जाए, हमारे सबसे भीतर वाले जीव में विश्वास का दबाव बनाए, ताकि हमारा पूरा शरीर और जीवन परमेश्वर की सामर्थ से इतना परिपूर्ण हो जाए जब तक कि लोग यीशु मसीह को हमारी कलीसिया में रहते हुए ना देख लें। पिता, इसे ग्रहण करें। अब हम सब आपको समर्पित करते हैं और मांगते हैं कि आप इन थोड़े से वचनों को आशीषित करेंगे जो अब हम कहने जा रहे हैं, और उस पर थोड़ी टिप्पणी करने को आपके एक शिष्य के द्वारा लिखा जा चुका है, वो महान संत पौलुस। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा इसे लेगा और इसे हृदयों में बढ़ने दे और आने वाली चंगाई सभा के लिए विश्वास दे। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं।
My power and my spirit in the midst of thee, and I speak unto my prophet this day,
धन्यवाद प्रभु, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर, हम तेरी भलाई और अनुग्रह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे प्रेम के प्रकटीकरण और सामर्थ्य के लिए तेरे धन्यवादित हैं। उस सब के लिए जो आपने हमारे लिए किया है, वे आशीषें जो आपने हमें दी हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं। मैं सच में इस संदेश की आवाज, इसे स्वयं अपने में वही संदेश होना चाहिए जो आगे गया और पापियों को पुकारता हुआ प्रतीत हो कि आपको ढूंढे, क्योंकि विनाश की घड़ी समीप है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ इस प्रातः उन लोगों में से हो जो ये समझेगा हम इन बातों के विषय में कुछ नहीं जानते कि ये सत्य में पवित्र आत्मा मानव होंठों से होकर बोल रहा है, अनुवाद करने के लिए, उन लोगों को बुलाने के लिए जो जगत की उत्पत्ति से पहले अभिषिक्त हैं, कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहरे और संभव है लंबे समय से दूर रहे। संभव है प्रभु वे आज तुझे जानने के लिए आएं और उस छिपने के स्थान को ढूंढें, क्योंकि समय समीप है। पिता, इसे प्रदान करें जैसे कि इस संदेश पर हम आगे तेरी प्रतीक्षा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब यदि कोई ऐसा हो जो ठीक ठीक ना समझ सका हो कि इस प्रकार से संदेश कैसे आगे जाता है, उसमें से एक ने कुछ छोड़ दिया, कुछ कह रहा था, दूसरे ने उसी को आरंभ किया, क्योंकि आप ध्यान दें, दूसरा वाला छोटा था, थोड़ा सा, जो पहले वाले ने छोड़ दिया था। जब इसका अनुवाद आया, ये सब उसी एक पंक्ति में है। आप देखिए, जो संदेश को लाया, पापियों के लिए पुकार, ये ऐसा ही होना था। ये लोग नहीं जानते कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कोई इसे नहीं जानता, इसे संसार में तब तक नहीं जानता, परंतु यही चीज है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, समझे? जी हाँ। अब मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय निकालें। ये अच्छा है कि आप में से सारा अविश्वास बाहर निकाला जाए, ताकि पवित्र आत्मा अंदर आए और अपना स्थान ले, आप जानते हैं, और आपके तंतुओं में होकर और आपके जीवन को नियंत्रित करे। अब आप जो पवित्र वचन लिख रहे हैं, उस दिन मैंने ध्यान दिया, इस प्रकार की शिक्षा बहुत सहायता करती है। जब तक मैं इन दो तीन पृष्ठों को जिस पर मैंने बोलने जा रहा हूँ, आज की प्रातः वचन पर और दूसरी बातें, ताकि आप इन्हें लेकर उन स्थानों पर निशान लगा लें, और मैंने यहाँ निशान लगा रखे हैं ताकि मैं इन्हें ना भूलूं। अब पहले कुरिन्थियों का 14वां अध्याय 1-8 पद तक, अब ध्यान से सुने। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि कोई उसकी नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसी प्रकार निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती हैं, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा? और यदि तुरई का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? अब मैं चाहता हूँ जब आप घर जाएं तो इस अध्याय को पूरा पढ़ें, क्योंकि इसके बहुत से पद, इस अध्याय के 40 पद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें जब आप घर जाते हैं। ये वरदानों की व्याख्या करता है। अब यदि मैं इस प्रातः इस मूल पाठ को अपने, मैं जो कहना चाहता हूँ वो अनिश्चित शब्द है। अब यहाँ पौलुस बोल रहा था, अन्य भाषा पर बोल रहा था, यदि कोई अनुवादक ना हो तो कौन जान पाएगा कि उन लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या कहा? वे नहीं जान पाएंगे, परंतु वो केवल परमेश्वर से बातें कर रहा है। निश्चय ही उसकी आत्मा वचन दे रही है और वो गौरवपूर्ण, ये उसे आशीषित करता है। उसने कहा वो अपनी उन्नति करता है, क्योंकि उसे स्वांतना है कि परमेश्वर उसके द्वारा बोल रहा है। परंतु यदि उसके साथ साथ अनुवाद आए, देखिए अनुवाद पीछे से आता है, तब ये केवल उसकी ही उन्नति नहीं करता, ये पूरी कलीसिया की उन्नति करता है। प्रत्येक को प्रभु का वचन देता है उसके द्वारा। अब उन्होंने कहा यदि कोई भविष्यद्वक्ता हो, भविष्यद्वक्ता बोल रहा है ताकि सारी कलीसिया, जो कि एक भविष्यद्वक्ता, ये क्या है? दिव्य वचन का एक दिव्य प्रकाशन, जिसमें लोगों को देने के लिए वचन का प्रकाशन है, तब ये सब की उन्नति करता है। समझे? सब एक व्यक्ति जो अन्य भाषाओं में बोलता है, भाषाएं बोल सकता है, और कलीसिया में किसी को भी अन्य भाषा इसके बोलने की मनाही है जब तक कि वहाँ कोई अनुवादक ना हो। यही कारण है कि अन्य भाषा बोलने की अनुमति देते हैं। हमारे पास यहाँ कलीसिया में 3 या 4 अनुवादक हैं इस समय, यहीं पर कलीसिया में, जो अज्ञात भाषा का अनुवाद करते हैं, और इसलिए यदि कोई अनुवादक ना हो तो हम उन्हें कलीसिया में बोलने की अनुमति ना देंगे, जो भी है घर पर, और जब वे प्रार्थना कर रहे हों, क्योंकि वे अपनी उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर आत्मा है, जब तक वे यत्न ना करें। वास्तव में लोग सोचते हैं वे जो कह रहे हैं आप समझ सकते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। वे ऐसे हैं, खड़े हुए और कुछ कहना आरंभ कर दिया, वे इसे रोक नहीं सकते, ये तो बाहर की ओर उमड़ता रहता है, और वे सोचते हैं वे जो बोल रहे हैं, जिसे कि आप समझ रहे हैं, ये उपविवेक की स्थिति है। जैसे कि जब मंच पर, जैसे आज आप ध्यान देंगे, जब आत्मा की परख आती है, या बहुत से लोग, मैंने उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जैसे कि आज मंच पर आप ध्यान देंगे, जब परखना आता है तो यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पवित्र आत्मा पर ध्यान दें, जब ये नीचे आता है, भक्त गणों में से होकर निकलना आरंभ करेगा और उन लोगों को बताता है कि वे कौन हैं, या वे कहाँ से आए हैं, क्या घटित हुआ, उन्हें क्या रोग है, और सब। समझे? ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से अधिक तेज है, गुदे और हड्डी के आर पार जाता है, यहाँ तक कि विचारों को परखता है और हृदय की भावनाओं को और विचारों को। समझे? ये परमेश्वर का वचन है। जब पौलुस ने कहा यदि तुम सब अन्य अन्य भाषा बोलते हो, कोई अनुवाद ना हो, तो अनपढ़ भीतर आकर कहता है कि ये लोग पागल हैं, क्रेजी। क्रेजी का अर्थ पागल है, और अब कहते हैं वो पागल हैं। परंतु यदि एक जो भविष्यवाणी कर सकता है और हृदय के विचारों को प्रकट करता है, तो हर कोई गिर पड़ेगा, परमेश्वर उनके मध्य में है। अब यदि वहाँ अनुवादक है, अज्ञात भाषा का अनुवादक, भविष्यवाणी है, देखिए ये भविष्यवाणी है स्वयं में, क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहा है और ये अनुवाद देता है, ये निश्चित लोगों को निश्चित चीजें करने के लिए बताता है, और प्रत्येक जानता है कि आप पर कब प्रहार करेगा, आप जानते हैं ये कौन बातें कर रहा है, और इसलिए ये देखने में अच्छा है कि केवल यही नहीं, ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर मनुष्य में है जो कि अपना कार्य कर रहा है। बहुत हम निश्चय ही इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैंने ये ध्यान देना आरंभ किया है कि इसने दूसरे स्थानों कलीसियाओं में भी आना आरंभ कर दिया। चार्ल्स फुलर, कितनों ने कभी सुना है पुराने रीति के बेदारी की घड़ी, महान व्यक्ति। उसने कहा अधिक समय नहीं हुआ, उसने कहा हमारे पास अन्य भाषाओं में बोलना अनुवाद ठीक यहाँ पर है, वहाँ लॉन्ग बीच में। ये सत्य है, मैंने बहुत बार वहाँ उसके साथ प्रचार किया है, इसलिए उसके पास अनुवाद है और सबको शांत बैठा देता है। देखिए, इसकी बात यह है, हम इन वरदानों का आदर नहीं करते, और फिर कभी कभी यदि वरदान नियम विरुद्ध होता है और आपको इसे रोकना पड़ता है। देखिए, ये शैतान है जो उन्हें ऊपर चढ़ाता है। यदि वो सत्य को आपसे अलग न कर सके तो वो उसी सत्य को लेगा और इससे आपको ऊपर चढ़ा देता है, समझे? ये ठीक बात है, वो इससे धर्म उन्माद उत्पन्न कर देता है। अब हम इसे यहाँ ठीक रखना चाहते हैं, ये हमारी कलीसिया में फिर कार्य करने लगा है वर्षों बाद पहली बार, इसलिए हम इसे ठीक ठीक रखते हैं कि उन्हें मालूम पड़े। जब अब बहुत सी बार, जैसे कि अब कोई हो सकता है जिसे अन्य भाषा बोलने का अनुभव सा होता है इस समय, परंतु उन्हें शांति बनाए रखनी चाहिए, समझे? मैं अब मेरे पास वचन है, और तब इसके बाद पूरा हो जाता है और वेदी पर बुलाहट या जो कुछ हो ये यहाँ समाप्त हो गया, तब संदेश आ सकता है। अब देखिए, बोलने वाला अन्य भाषा बोल सकता है या इसके पहले। अब यदि ये प्राप्त करता जाता है और वरदान आते हैं तो फिर हमारे पास उनके मिलने के लिए समय होता है, और वे आराधना आरंभ होने से एक घंटा पहले मिलते हैं और एक साथ बैठकर भविष्यवाणी करते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं और उन संदेशों को लिखते हैं और उन्हें यहाँ प्रचार मंच पर रखते हैं। जब पास्टर आता है वो बाहर आएगा और कहता है यहोवा यूं कहता है, ये घटित होगा। परसों वो भाई जोन्स जो माल लाने ले जाने के लिए वाले रास्ते के पार रहता है वो हट जाए, क्योंकि पटरी पर सर एक डिब्बा गिरने वाला है और उसके घर को कुचल देगा। यहोवा यूं कहता है, यहाँ आज प्रातः एक महिला है जिसका नाम अमुक है, वो अमुक स्थान से आई है, और जब वो लड़की थी उसने कुछ चुराया था। भाई बर्नम या भाई नेविल जो भी हैं उस पर हाथ रखेंगे, उसके गलती स्वीकार करने के पश्चात और वो उसे ठीक करेगी तो वो चंगी हो जाएगी। उसका अमुक नाम है, समझे? और पास्टर इसके पहले कि ये आराधना आरंभ हो इसको पढ़ दे, ये ठीक बात है, समझे? अब ये हमारे मध्य में बालक के रूप में है, समझे? ये बालक के रूप में है, तब आप देखते हैं कुछ भी छूट नहीं सकता। देखिए, शैतान भीतर आता है और शरीर में आरंभ करता है, तब वो करता है और इस प्रकार से पूरी कलीसिया को टुकड़े टुकड़े कर देता है, धर्म अंधता में चले जाते हैं। आप देखते हैं कि किसी भी समय आगे बढ़ते हैं परंतु कलीसिया क्रम में है, समझे? और अब यदि एक व्यक्ति जिसके पास वरदान है और फिर वो वचन के द्वारा बुलाया गया है और वे इस पर ढीले हो जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि ये परमेश्वर का वरदान नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वरदान वचन का आदर करता है, समझे? यही कारण है कि दिव्य चंगाई वैसी की वैसी ही है, समझे? ये पवित्र आत्मा वचन का आदर करता है, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आप में वचन का आदर करेगा, क्योंकि उसने ये लिखा है स्वयं, देखा, और वो आप में है। ये परमेश्वर की ज्योति आप में है, ये चाहे जो हो, यहाँ वचन जहाँ भी लिखा है वो इसका आदर करेगा। भविष्यद्वक्ताओं का आत्मा भविष्यवाणी करने वाले वरदानों भविष्यद्वक्ता के वश में है। आप देखते हैं कि जो कि वचन को प्रकट करने वाला है। अब और क्या हम इन बातों को अपने दिनों में देखने से आनंदित नहीं? अब ये अनिश्चितता का दिन है। यहाँ ये कहा कि यदि तुरही अनिश्चित स्वर दे तो युद्ध के लिए स्वयं को कौन तैयार करेगा? पौलुस यहाँ बोल रहा है, ठीक है, वो इन कुरिन्थियों से बोल रहा था और उन दिनों में उनमें से बहुत से सिपाही थे उनकी अपनी सेना में। अब यदि तुरही अनिश्चित स्वर देती है तो कौन स्वयं को तैयार करेगा? आपके पास किसी भी चीज की निश्चितता का होना है, हमें जानना चाहिए कि ये सही है या नहीं। और अब हम एक महान अनिश्चितता के समय में रह रहे हैं। अब सब ये जानते हैं, अनिश्चितता का दिन, हम ये जानते हैं अनिश्चितता का दिन और अनिश्चितता का समय। मैं विश्वास नहीं करता कि कभी ये समय था, जब से अदन वाटिका में समय आरंभ हुआ, जब पाप ने आकर अनंतता को समय में तोड़ दिया। मैं विश्वास नहीं करता कि कभी कोई इतनी अनिश्चितता का समय रहा होगा जैसे आज, क्योंकि एक भी आशा आज के स्वाभाविक संसार में नहीं बची। अब आप देखते हैं, मैंने समय देखे हैं और इतिहास में पढ़ा है जब युद्धों ने पृथ्वी को ढांक रखा था, ये सत्य है, परंतु कभी भी समय नहीं रहा जब समस्त पृथ्वी एक सेकंड में टुकड़े में टूट जाएगी, समझे? और ऐसा विनाश ये सप्ताह और छोटे और आदि आदि लोग, अब ये एक मिनट लेगा, हो सकता है इतना भी नहीं, बस एक बटन दबाया और बस हो गया। और उनके पास नहीं है। क्यूबा इसे स्वयं कर सकता है। इसे ये नहीं है कि एक छोटा सा हैती ये कर सकता है। कोई भी छोटा राष्ट्र जो करना चाहे सारे संसार में आग लगा सकता है और उसकी कक्षा से उसे बाहर कर सकता है किसी भी समय जब भी वह चाहे, समझे। इसे केवल एक पागल जहाँ की संसार में लाखों हैं ये करने के लिए। कुछ आत्मघातियों को देखें वहाँ पहुँचकर और उनके मध्य में हो गए और शैतान ने उन्हें इतनी बुरी रीति से जकड़ा जहाँ वे उन स्थानों में लटके हुए हैं। बस उस बटन को दबाना है और गए। और जैसे ही वे जाते हैं तो ये दूसरों को रडार के पर्दे पर आ जाता है और वे अपना दबाते हैं और हम यहाँ पर हैं, समझे। बस क्योंकि उनके पास हर व्यक्ति के पास उसका पर्दा है। वो देख रहा है समुद्र में, पनडुब्बियों में, दूर टापुओं में, हर जगह चारों ओर बैठे हैं, वहाँ उत्तर ध्रुव में, नीचे दक्षिण ध्रुव पर, हर जगह इन बड़े पर्दों के साथ, इन बड़े बड़े पर्दों के साथ। बस कोई बटन दबाए, बस वे ये चाहते हैं। और यहाँ उनका बटन दबा और वो बाकी दबाते हैं और दबाते हैं और क्या होने जा रहा है। परंतु सोचिए, ये आज इसके पहले आराधना से बाहर जाएं आज प्रातः हो सकता है। परंतु स्मरण रखें, इसके पहले ये घटित हो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो अपनी कलीसिया के लिए आता है, आने की प्रतिज्ञा। इसलिए हम नहीं जानते कि वो किस समय आएगा। कितनी शानदार बात है। और उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं वो प्रकट होगा। क्या आप इस प्रातः देखना नहीं चाहेंगे। जैसे कि हम छोटा गीत गाते हैं, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके मुख को देखना चाहता हूँ, उसके बचाने के अनुग्रह को सदा गाना है। जब जीवन सारा पूरा हो जाए और परेशानी और दुख अंतिम बार चले जाए और हम उसे देखेंगे और हम वहाँ खड़े होते हैं, युवा अमरणहार सदा उसकी उपस्थिति में, जहाँ कभी भी पाप, बीमारी, हृदय रोग, दुख ना होगा, जब सारा समय अनंतता में बदल जाएगा। क्योंकि क्या ही शानदार बात है। अब ये आपको क्या करने के लिए बनाता है। अब कार्य करना चाहते हैं ताकि सब उस स्थिति में आ जाएं जो कि आप आ सकते हैं उठाए जाने के लिए। मैं चाहता हूँ, मैंने स्वयं को फिर पवित्र किया और मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है कि मैं दूना भाग करूँगा और हर चीज की है जो मैं जितना अच्छा जानता था। मैं बस चाहता हूँ कि मैं फिर से 18-20 वर्ष का हो जाऊँ और जो जानता हूँ जानूँ। कैसे मैं थोड़ी अधिक देर खड़ा रहूँ और थोड़ी अधिक मुलाकातें कुछ इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए। आज प्रातः आप युवा लोगों, जो युवा हैं, आप में अब भी जवानी है और पारिवारिक बंधन नहीं और आदि आदि होने पाए, परमेश्वर आपको वो दर्शन दृष्टि दे कि आप देखें हम किस घड़ी में जी रहे हैं। अनिश्चितता, आइए कुछ अनिश्चित बातों को देखें। अब इस अनिश्चित समय में अनिश्चितता है। हम युद्ध के विषय में बोलें, युद्धकर्ताओं की बातों में अनिश्चितता है। हम नहीं समझ सकते, वे नहीं जानते। आप जाएं और वे बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और आदि आदि, और वे एक साथ एकत्र नहीं हो सकते। वहाँ अनिश्चितता है। वे नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है। सारी महान युक्तियाँ और आदि आदि, वो युद्ध अध्ययन और संभावनाएं और ये कैसे निकलेगा, आज प्रातः उनके पास उत्तर नहीं है। वहाँ कोई नहीं करता, वे आपको नहीं बता सकते। ठीक, कुल मिलाकर विज्ञान महान चीज है जो कि वे सोच सकते हैं। सारी महान युक्तियां जिसमें होकर वे निकल सकते हैं, सारे वैज्ञानिक युद्ध अभ्यास और बटन जो वे निकाल सके, उनके वैज्ञानिक यंत्र और उनके महान चतुर बुद्धियां जो कि बुद्धि के लिए सोचते हैं, और जब वे कुल मिलाकर इस घड़ी में पाते हैं, उन्होंने एक बात कही, ये मध्य रात्रि से 3 मिनट पहले, ये उनका उत्तर था। क्या हम इसे जीवित रख सकते हैं? क्या हम नीचे खोद कर इसे नीचे रख सकते हैं और उन बमों को नीचे गहराई में दूर रख सकते हैं कि हमें हानि ना पहुंचे और एक राष्ट्र के समान जीवित रहें? निश्चय ही हम नहीं कर सकते। वो पृथ्वी में 1 मील गहरे में फट जाएगा। क्या हो यदि आप 10 मील की गहराई में हो? यदि आप होंगे तो आप लावा में होंगे। परंतु यदि आप इतनी दूर पहुँच सकें तो उसका झटका आपके शरीर के भीतर की आपकी सारी हड्डियां तोड़ सकता है। नीचे कोई विधि नहीं है, मार्ग ऊपर है। ओ, उत्तर पाकर मैं बहुत आनंदित हूँ। क्या आप नहीं? एक आवाज जो निश्चित है, वो तुरंत ही नीचे खोदने की और गुफाओं में जाने की। मैं अब सुनता हूँ कि वे सारी सरकार को हिला रहे हैं और यहाँ पर आदि आदि फोर्ट नॉक्स के आसपास और वो वहाँ मैमथ गुफा के आसपास और वहाँ एक स्थान है जहाँ वे इसको तय कर रहे हैं कि जब यदि एक छोटे विवाद के युद्ध के रूप में आता है या कुछ और, तो वे सरकार को इन गुफाओं में ले जाने के लिए तैयार हैं। क्या बाइबल इसे स्पष्ट रूप में नहीं कहती कि वे स्वयं को गुफाओं में छिपा लेंगे और पृथ्वी की जगहों में? बिल्कुल ठीक समझे, उनके पास उत्तर नहीं है। इसलिए हमारी सेना शक्ति एक बड़ी टुकड़ी के पास उत्तर नहीं है। हम हुआ करते थे, हमारा विज्ञान कहेगा हम एक महान यंत्र बना सकते हैं, हम जर्मन से भी अच्छी बंदूक बना सकते हैं, हमारे पास लोग हैं जिनके पास बहुत ही धैर्य और सामर्थ्य है, और पुराने अमेरिकन और ढोल बजाते हैं, बिगुल बजाते हैं, लहराते हुए झंडे और थोड़ा सा हर्ष और इस प्रकार की सारी चीजें। लड़के हम वहाँ जा सकते हैं और अपना धैर्य पीछे छोड़कर ये करते हैं। आपको वहाँ नहीं जाना है, ये एक समय है, हम इसे घर पर ही पाने जा रहे हैं। बस एक व्यक्ति को बटन दबाना है, बस कुल मिलाकर यही होना है, एक मनुष्य। हजारों सिपाहियों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक मनुष्य बिना समझ का, बस शैतान से जकड़ा हुआ, उस बटन को दबाने के लिए, और यही पर्याप्त है, समझे। इसलिए उनके पास उत्तर नहीं है, इसलिए अंत में वे क्या कहते हैं, ठीक है जब तक मध्य रात्रि हो 3 मिनट हैं। मेरे पास इसका एक चलचित्र है, मैंने अपने एक डॉक्टर मित्र को कुछ समय के लिए दिया है। जब तक मध्य रात्रि नहीं होती 3 मिनट हैं। अब ये लगभग 5 वर्ष पहले बनी थी जब यहूदियों ने पहली बार फिलिस्तीन को वापस जाना आरंभ किया, और चलचित्र में दर्शाया गया कि वे बूढ़े अपाहिजों को अपनी पीठ पर लादकर चल रहे हैं, और वे वहां जा रहे थे, उनका साक्षात्कार लिया जा रहा था। और इस प्रकार से जब उन्होंने उनसे पूछा, कहा क्या आप अपने स्वदेश वापस जा रहे हैं कि अपने देश में मरें, कहा हम मसीह को देखने वापस आए हैं। ओ, और भविष्यद्वक्ता ने क्या प्रतिज्ञा की है, आप में से बहुत सोने लुक और लाइफ प्रतिज्ञा पढ़ी है, और वे उनमें उन हवाई जहाजों के चित्र हैं जो उन्हें उन विभिन्न स्थानों से वापस ला रहे हैं, वहाँ ईरान और स्थानों से जहाँ पर वे थे। और जब वे उन हवाई जहाजों पर नहीं चढ़े होंगे, उन्होंने कभी नहीं देखा था, वे अभी पुरानी लकड़ी के हल से जोतते थे, जैसे 2500 वर्षों पहले जब रोमन साम्राज्य ने उन्हें इधर उधर भगा दिया था, और वे उन्हें उन हवाई जहाजों पर नहीं ले जा सकते थे। परंतु एक बूढ़ा, उनका बूढ़ा याजक बाहर आया, रब्बियों में से एक शिक्षक वहाँ आकर बोला, क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बताया कि किसी दिन हम अपने स्वदेश को वापस जाएंगे उकाब के पंखों पर। उन्होंने अपने हल नीचे रख दिए, जहाज पर चढ़ गए और पंखों पर घर वापस आ गए। यशाया ने इसे देखा, परंतु उसे मालूम न था कि वो क्या था, ये उड़ते हुए पक्षी के समान दिखाई पड़ता है। उसने इसराइल को वापस आते देखा आगे पीछे झूमते हुए, और तुम जो हवाई जहाजों पर सवार हुए जाते, जानते हैं कि क्या है ये, ये ऊपर नीचे लहराता है जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, घर वापस आ रहे हैं। वे वहाँ उतर गए, उन्होंने कहा अच्छा मसीहा कहाँ है, वे उसे देखना चाहते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप यहूदियों को इस प्रकार से वापस जाते देखें, ये परमेश्वर की घड़ी है, हम अंत पर हैं। अभी हाल ही में राष्ट्र बना है, सब वे जो हुए हैं, और अपनी मुद्रा है, उनकी अपनी फौज है, हर चीज उनके पास, सब कुछ है, वे फिर से एक राष्ट्र हैं, समझे। ओह क्या ही सुंदर विचार है इसके लिए, मेरे पास वचन है यहाँ थोड़ा सा आगे, जी हाँ इसी पर। अब अनिश्चितता युद्ध की, हम नहीं जानते कि किस समय रेडियो पर सुनिए, आप उन्हें रेडियो पर कहते हुए सुनते हैं, आपके तहखानों में बहुत सामान है, पर्याप्त पानी है, घटना में वहाँ आपके पास रेडियो है, और इसे सरलता से लें। मैंने पत्रिका में देखा है वे छोटे भवनों का विज्ञापन दे रहे हैं कि उनमें आ जाएं, कि आपके तहखाने में या आपके आंगन में व्यवस्थित कर दें, या ऐसे ही कुछ, यदि बम आने लगता है आप जीवित रहते हैं, जो भी है युद्ध आपको ले लेगा, जो भी है, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं। वे यहाँ न्यू ऑरलियंस में बम गिरा सकते हैं, और युद्ध आपको यहाँ ले लेगा, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है, जो भी है आप मर जाएंगे, इसलिए भीतर टिके रहें और थोड़ी देर जीवित रहें। ओ प्रभु, मैं तो इसका विश्वास तक नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ, इसका यत्न करना भी निरर्थक है, ये ठीक बात है, परंतु कलीसिया को चिंता करने की बात नहीं, तब उस समय आप यहाँ नहीं होंगे, जो भी हो, समझे। एक बात निश्चित है, समझे, आप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की निश्चितता ने ऐसी प्रतिज्ञा की है। अब हम थोड़ा सा कुछ लें जो कि अनिश्चित है, थोड़ी चीजें, नौकरी अनिश्चित है, आप नहीं जानते किस समय आप आज कार्य कर रहे हैं, कल की आप नहीं जानते, ये बस अनिश्चित है। आपके पास अच्छी नौकरी होगी आप सोचते हैं, और अगले दिन मालिक आता है, किसी को ले लेता है और आपको बाहर कर देता है, किसी और को अंदर ले लेता है, इसलिए नौकरी डामाडोल है। हम इसे भी ले लें, घरेलू जीवन अनिश्चित है। मैं आपको बताता हूँ, मैं नहीं जानता कि हमारी स्त्रियों के चरित्र तंतु को क्या हो गया, तलाक बढ़ते जा रहे हैं, मैं, ये बस भयानक है। और आप देखिए, जहाँ की तलाक की अदालतों में भीड़ है, जहाँ की लड़कियाँ और लड़के विवाह करेंगे और साथ साथ रहेंगे, 3 या 4 बालक या कुछ इस प्रकार से, और वे अलग हो जाएंगे और बाहर निकल करके दूसरे से विवाह करेंगे, दूसरे से विवाह करेंगे, दूसरे से विवाह करेंगे, दूसरे से विवाह करेंगे, और उनके घर में एक निर्धन परिवार, वास्तव में निर्धन परिवार में उस रात्रि था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि मैं अंत तक कैसे निर्वाह करूंगा। मैंने चारों ओर देखा, उसने कार्य किया, उसकी एक छोटी पत्नी वहाँ थी, सच में दुर्बल जितनी हो सकती थी, चार पांच छोटे छोटे गंदे चेहरे वाले बालक वहाँ कमरे में थे। मैंने कहा, लड़के तुम करोड़पति हो, और उसने कहा, ओ भाई बरना, मैं आपके शब्द पर विवाद नहीं करूंगा। उसने कहा, भाई मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैंने कहा, परंतु तुम्हारे पास कुछ है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। मैंने कहा, तुम्हारे पास एक पत्नी यहाँ है जिसके पास संभवतः उसके नाम पर दो जोड़ी कपड़े भी नहीं है, यदि उसके पास है तो उसे किसी ने दिए हैं, क्योंकि पुरुष के पास पूरे दिन का कार्य है। और तब और मैंने कहा, उधर देखिए, परंतु वो जितनी वफादार हो सकती है वो है। मैंने कहा, आज रात्रि कितने ही करोड़पति हैं, अपना सारा पैसा दे देंगे जितना उनके पास है कि घर इस प्रकार से अपनी पत्नी के पास आए, ठीक है। मैंने कहा, उसकी पत्नी कहीं बाहर पुरुषों के झुंड में है, कहीं शराब खाने में गाना गा रही है, सिगरेट पी रही है, रात भर इधर उधर और इस प्रकार की बातें, और फिर भी वो उससे प्रेम करता है, परंतु देखिए उसे क्या मिला, उसका सारा जीवन उस स्त्री में लिपटा हुआ है, और देखिए जिस प्रकार वो कर रही है। और इसके विपरीत भी स्त्री पुरुष के लिए, समझे, इसमें कोई अंतर नहीं है। वो समय आ रहा है जहाँ सारा सब कुछ एक पाप के गट्ठर में है। साधारण महिला घर में अपने बालकों के पालन पोषण का यत्न कर रही है, और उसका पति कहीं बाहर पिए हुए है, जीवन व्यतीत कर रहा है, दूसरी स्त्रियों के संग भागता फिर रहा है। वो क्या देगी यदि उसके पास करोड़ों डॉलर होते, ये देखती कि उसका पति वास्तव में एक मनुष्य बन गया। केवल एक ही मार्ग है जो कभी हुआ, यीशु मसीह उत्तर है। कोई कुछ भी कभी भला नहीं कर सकता, ये अंत के समय में है, ये मसीह है और केवल वही। और तब मैंने कहा, कितने पिता हैं जो आज इधर उधर घूम रहे हैं करोड़ों डॉलर के साथ, जो कुछ उनके पास है सब दे देंगे, यदि वो छोटा मस्तिष्क से परेशान बालक जो उसके पास है उतना ही स्वतंत्र होता जैसे आज रात्रि तुम्हारे बालक यहाँ पर हैं, समझे। वो मेरी ओर देखने लगा। मैंने कहा, देखिए, आपने कहा आपके पास कुछ बकवास और सेम और पाव रोटी है, इस दोपहर बाद आपने अपना पैसा निकाला और थोड़ी सी रोटी सेम आज रात्रि अपने बालकों के लिए ले ली। मैंने कहा, इनमें से सबका पेट ठीक है और इसे खा सकता है, और आपने भी खाया। जॉन डी रॉकफेलर ने क्या कहा, वो करोड़ों डॉलर दे देगा यदि वो एक निवाला पत्ता गोभी का खा सके। मैंने कहा, आपने बताया आप आज प्रातः खिड़की के पास बैठे थे, ठंडी हवा अंदर आ रही थी, वो महल में बैठे हुए देखिए कहीं, परंतु फिर भी आपको वहाँ बैठकर पत्ता गोभी खानी पड़ी उस बहती हुई ठंडी हवा में, उस कागज के टुकड़े में। मैंने कहा, जॉन डी रॉकफेलर, आपके समान उसे खाने को मिलता तो वो लाखों डॉलर दे देता जो आप किसी भी समय खा सकते हैं। कितने अंधे मनुष्य अपने हाथ में छड़ी लिए हुए सड़क के किनारे खड़े हैं, आपकी आंखों के लिए जितना पैसा उनके पास है दे देंगे, समझे। आप उन चीजों का मूल्य नहीं आंक सकते जो वास्तव में धनी है, उन चीजों के साथ जिसे हम धन कहते हैं। अब कलीसिया के सदस्य मुझे क्षमा करें, यही कारण है कि हम इस प्रातः कहने का यत्न कर रहे हैं, आप अपनी बड़ी कलीसिया का मूल्यांकन नहीं कर सकते। आपकी बड़ी बड़ी मीनारें और चीजों का परमेश्वर के प्रेम के साथ, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदयों में है, आपको देता है, कोई तुलना नहीं है। ये चीजें अलौकिक से आती हैं। आप सोच सकते हैं हम विचित्र हैं, क्योंकि आप उन्हें अन्य भाषाओं में बोलते हुए सुनते हैं और अनुवाद, और लोग रोते और चिल्लाते और चीखते हैं, बजाय सबके मैं ये लूंगा, बल्कि मैं छोटे पुराने जर्जर भवन का प्लास्टर होऊंगा, जहां परमेश्वर की सामर्थ लोगों से मिलती है, जहां कलीसिया इन चीजों के साथ आती है, बजाय की महान आराधनालय के जो सारे संसार में है, जिनमें गुनगुने ठंडे कहलाने वाले लोगों में जो मसीह कहलाते हैं प्रचार करूं, जो कि ध्यान दें, हर वचन जो आप बोलते हैं और आप प्रेरणा से प्रचार नहीं कर सकते, आपके पास अमुक अमुक होना चाहिए, और हर न्यायी, हर डॉक्टर और हर चीज जो वहाँ होते हैं उन पर ध्यान रखें, ताकि आप कुछ ऐसा ना कहें कि उनकी भावनाओं को आघात पहुँचे, क्योंकि कलीसिया में वे अधिक देने वाले हैं। मैं प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुओं के संग मार्ग लूंगा, आमीन। आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, इसे करने की कोई विधि नहीं है। इसलिए आज जो मसीह में है वही धनी मनुष्य है। अब आप कहते हैं आपकी दृष्टि अच्छी है, अच्छा स्वास्थ्य, बहुत पैसा और सब कुछ, परंतु फिर भी बिना मसीह के आप नष्ट हैं, आप अभागे, बेचारे, निर्धन, अंधे, नंगे और नहीं जानते, समझे? यही तो लुदिकिया की कलीसिया थी। आप राष्ट्र के सबसे बड़े आराधनालय से हो सकते हैं, आप सबसे बड़े नामधारी कलीसिया से हो सकते हैं, परंतु जितने नष्ट हो सकते हैं हैं, समझे? इसलिए धनी मनुष्य वो मनुष्य है जो मसीह में है, ये ठीक बात है। अब घरेलू जीवन की अनिश्चितता, नौकरी की अस्थिरता, युद्ध की अनिश्चितता होना, कलीसियाओं का अनिश्चित होना, ये होते हुए हम इस पर आते हैं। आइए हम कुछ मिनटों के लिए कलीसिया जीवन की अनिश्चितता पर बोलेंगे। वे आप केवल आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते कठिनता से, क्योंकि इसके मूल्यांकन की कोई विधि नहीं है। पवित्र आत्मा में क्या ही अनुभव है बजाय कलीसिया की सदस्यता के, समझे? कोई विधि नहीं है कि आप इस पवित्र आत्मा को खरीद लें। ये परमेश्वर की ओर से मुफ्त वरदान है, जिसे वो चाहे वो किसी के पास भी आता है। आप कहते हैं क्या ये केवल पेंतिकोस्तल के पास जाता है? पेंतिकोस्तल नामधारी नहीं है, उन्होंने ये करने का यत्न किया, परंतु आप परमेश्वर को नामधारी नहीं कर सकते। पेंतिकोस्तल एक अनुभव है जिसे कोई भी विश्वासी ले सकता है, समझे? ये बैप्टिस्ट, कैथोलिक, यहूदियों, कालों, गोरों, भूरे, पीले, लाल, किसी भी मतसार या किसी भी चीज के लिए है। चाहे आप निर्धन, धनी, कुछ ना हो, बहुतायत से हो, चाहे आप कहीं बीच में हो या जो भी आप हो, आप ये आपके लिए है, और ये परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके लिए नापा गया है कि इसे लें। आपके लिए कोई दाम नहीं है, केवल आप ही दाम हैं कि अपना जीवन उसे समर्पित कर दें और इसे ले लें। कितना साधारण है, बस सारा का सारा, बस आपने जो कभी जाना भूल जाए और बस स्वयं को उसे समर्पित कर दें, और ये इस प्रकार आता है, स्वीकार करें, इस प्रकार से स्वीकार करते जाएं। नामधारी कलीसियाएं वे ये नहीं हो सकती। नामधारी आपको अनिश्चित स्वर देते हैं। अब मैं आपको ये दर्शा दूं कि ये अनिश्चित स्वर है। आप इस नामधारी में जाएं, वे कहते हैं ये हमें मिला है, बाकियों के पास ये नहीं है। ठीक है, आप उस नामधारी के पास जाएं, अगले वाले के पास जाएं, हमारे पास है, उनके पास ये नहीं है। देखिए, हर एक नामधारी कलीसिया, यहाँ 900 विभिन्न नामधारी कलीसियाएं हैं, 969, मैं सोचता हूँ कि आंकड़े के अनुसार यही सही है, और 969 विभिन्न नामधारी कलीसियाएं, और हर कोई दावा करता है कि दूसरा गलत है और ये उनके पास है, इसलिए ये निश्चय ही एक अनिश्चित स्वर है। ओ, 900 और, परंतु ये आवाज कैसी लगती है? यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। क्या है? आंकने की यही विधि है, कहाँ ढूंढें कि सत्य कहाँ पर है, समझे? कहते हैं हम मेथोडिस्टों के पास है, हम बैप्टिस्टों के पास है, हम कैथोलिकों के पास है, हम प्रेस्बिटेरियनों के पास है, केवल यीशु ही है जिसके पास ये है, क्योंकि उसने कहा मैं ज्योति हूँ, सत्य मार्ग हूँ, इसलिए ये मसीह आप में। इसलिए विभिन्न महान नामधारी निश्चय ही एक भिन्नता है, और ये बहुत ही अविश्वसनीय स्वर देते हैं, और कोई भी चीज जो अनिश्चित, जैसे कि ये, वो भी अविश्वसनीय है। कोई भी चीज जो अनिश्चित है, अविश्वसनीय है। आप कलीसिया के सदस्य बनने पर निर्भर नहीं हो सकते और कहें कि यही है, क्योंकि हर एक अलग अलग स्वर देता है, और आप कहाँ जा रहे हैं ये आपसे ये स्वीकार करवाता है। यदि कोई कभी स्थान था, ये बयान मैंने बहुत बार दिया है, इस प्रातः मैं उसे फिर कह रहा हूँ, खराब स्थान जहाँ मिशनरियों की आवश्यकता है, मैं जानता हूँ वो संयुक्त राज्य है। अवरधर्मी क्या है? एक मूर्ति पूजक, अविश्वासी। अच्छा, अब अफ्रीका में हमारे पास, और वहाँ नीचे थाईलैंड में, और राष्ट्र के विभिन्न भागों में, हमारे गांव में अवरधर्मी जो मूर्तों की पूजा करते हैं, और हम उन्हें अवरधर्मी या मूर्ति पूजा कहते हैं क्योंकि वे मूर्तियों की आराधना करते हैं। वो सीधे और उल्टे हाथ में भेद नहीं जानता, वो अपना काखागा नहीं जानता, वो केवल इतना जानता है कि ये ईश्वर है जिसे कि उसे ओझा ने बताया कि ये ईश्वर है, यही जहाँ परमेश्वर है वो इसमें है। अब वो केवल ये बात जानता है कि कुछ खाने को ढूंढे और खाए, जो भी है वो इसे ढूंढ सकता है। अब हम इसे अवरधर्मी कहते हैं। अब इस व्यक्ति से व्यवहार करना कठिन नहीं है यदि आप उसके पास सत्य को ले जाएं, परंतु सबसे कठिन कार्य कि आप जिससे व्यवहार करें, ये शिक्षक अवरधर्मी है। ये अवरधर्मी यहाँ संयुक्त राज्य में है, जिसने कॉलेज से 4 डिग्रियां ली हैं और प्रचार मंच के पीछे खड़ा है, एक अविश्वासी। कहते हैं उस प्रातः हमारी सभा थी और प्रभु ने उस महिला को चंगा किया, और ये अवरधर्मी, ये शिक्षित विधर्मी अवरधर्मी एक अविश्वासी है। बीते परसों एक स्थान पर बैठा हुआ था, वहाँ कुछ लोगों का झुंड था, उनमें से कुछ यहाँ पर हैं। सामने की ओर एक महिला ने कार चलाई, पांच या छह लोग भीतर बैठे थे। एक महिला थी, वो चलाती हुई बड़े लंबे ट्रक के सामने आ गई। एक व्यक्ति दरवाजे पर आया और बोला, भाई बनम, मैं इस चिन्ह के पास आना नहीं चाहता, परंतु कहा मैं यहाँ से निकल रहा था और कहना चाहता था। मैंने कहा अंदर आ जाओ, समझे? और मैंने कहा नहीं। बोला मेरी पत्नी गवाही देना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है जो घटित हुआ। वो बहन मर्सियर की अच्छी सहेली हुआ करती थी। भाई लियो यहाँ पर हैं, कलीसिया के भाइयों में से एक, टेप करने वालों में से एक, उसकी माँ। और लगभग 8 या 10 वर्षों पहले मैं यहाँ कहीं पूर्व में था और एक महिला प्रार्थना करवाने के लिए सामने मंच पर आई। पवित्र आत्मा ने कहा, आप श्रीमती अमुक अमुक हैं, आप उस निश्चित स्थान से आई हैं, आप अमुक चीजों से ग्रस्त हैं। हाँ, ये सब सत्य था। अब कहा, अब आपकी एक सहेली है जो कैलिफोर्निया में रहती है, वो आपकी बहुत ही प्रिय सहेली है, और ये महिला गुर्दे के कैंसर से मर रही है। उसने कहा, भाई बर्नम, ये बिल्कुल सत्य है, ये पवित्र आत्मा है जो हृदय के भेदों को प्रकट करता है। आप देखते हैं, इसे तो अमेरिकन लोगों को मुंह के बल गिरा देना चाहिए और कहें, परमेश्वर, समझे, इसे ये करना चाहिए। परंतु ओ, ये शिक्षित अवरधर्मी, इस प्रकार के लोगों से व्यवहार करना कठिन है। देखिए, वो इतना तेज है, परमेश्वर से अधिक जानता है, इसी कारण उसने अपने बीज को मिलावट वाला बना दिया है, अपने पशुओं को दोगला कर दिया है, और सब कुछ देखिए उसने, उसे स्वयं क्या क्या मिला। वापस आ रहा है और साधारण बन रहा है, ऐसा करके अपनी रोटी को अपने लिए ठुकरा रहा है। ये ठीक बात है, अपनी आत्मा के विचारधारा में वो इससे अलग हट गया। अब हम देखते हैं कि इस महिला ने कहा, जी हाँ, ये ठीक बात है, मेरी एक सहेली है जो कैलिफोर्निया में है, जो गुर्दे के कैंसर से मर रही है। मैंने कहा, आप लिख लो और उसे बता दो, यहोवा यूं कहता है, वो मरेगी नहीं अपितु जीवित रहेगी। और वो महिला बाहर थी और उसने कहा, ये लगभग 10-12 वर्ष पहले होगा, और कहा, मैं भली, स्वस्थ और अच्छी हूँ, उस गुर्दे पर कोई चिन्ह नहीं है, वो चंगी हो गई है। कहा, उसके लगभग 5 वर्षों पश्चात मुझे फोड़ा हो गया, और फोड़ा इतना बढ़ गया, जब तक कि ये मैं विश्वास करता हूँ कि उसने कहा, आर पार वो 17 या 27 इंच का था। वो इतनी बढ़ गई थी कि वो इस फोड़े के साथ खड़ी नहीं हो सकती थी। जब खड़े होने का यत्न करती तो वो स्वयं अपना संतुलन नहीं रख सकती थी, और वे उसे इस कलीसिया में ले आए और उसे वहाँ बैठा दिया, और वे उसे रात्रि के समय लाए जब उस प्रातः हम चंगाई सभा कर चुके थे, और यहाँ भाइयों ने उसे बता दिया कि उस रात्रि हम बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस प्रातः ही बीमारों के लिए प्रार्थना हुई थी, और वे मुझ पर एक बार में अधिक बोझ नहीं डालना चाहते थे। और इस प्रकार से जब सभा समाप्त हो गई, परंतु सभा समाप्त होने के पश्चात मैं वहाँ खड़ा हुआ, कुछ लोगों से बातें कर रहा था, और कोई व्यक्ति इस महिला को पकड़े हुए था और घर के आसपास ले गया और सीढ़ी पर बैठा दिया, जहाँ से बाहर निकल गए, और वो वहाँ बैठी हुई थी, लोग उसे पकड़े थे। और भाई टेलर, हमारे प्रिय भाइयों में से एक जो कलीसिया के हैं, वे वही थे जब ये हुआ, और मैं सोचता हूँ उस महिला को वहाँ लाने में सहायता की थी। भाई टेलर, क्या आप यहाँ हैं? आप कहाँ हैं? पीछे, हाँ, यहाँ पीछे, वो वहाँ खड़े थे, उपस्थित थे, उसे वहाँ लाने में सहायता की, और फोड़ा इस प्रकार निकल गया। और इस प्रकार से फिर कहा, मैं जब पीछे के दरवाजे से बाहर आया, उसकी ओर देखते हुए ताका, कहा, महिला, प्रभु यीशु, जिसने तुझे गुर्दे के कैंसर से वर्षों पहले चंगा किया, वो तुझे थोड़े से चंगा करता है। यहोवा यूं कहता है, बिल्कुल छुआ नहीं या कुछ नहीं, बस बाहर निकला और कार में बैठ गया और चला गया। देखिए, मैं चला गया। उसने कहा, क्या आप बाहर आकर उसे देखेंगे? मैंने कहा, हाँ, निश्चय ही, उससे कहिए अंदर आ जाए। कहा, नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हमें जाना है। वहाँ बाहर गया और वो छोटी महिला कार में से बाहर कूदी, वैसी ही जैसे मैं सीधा सपाट हूँ। वहाँ सड़क पर उसका महान समय था, इधर उधर सड़क पर भाग रही थी, अन्य भाषा में बोल रही थी, और प्रेस्बिटेरियन सेवक के घर के सामने जोर जोर से चिल्ला रही थी। एक शानदार समय था। अब कोई पड़ोसी देखकर सोच सकता था, अच्छा, कोई पागल खाने से आया है कि भाई बर्नम उसके लिए प्रार्थना करें। वो महिला पागल खाने से नहीं थी, उसका प्राण उस महिला से था। देखिए, उसका शानदार समय था। उसने कहा, इधर देखिए भाई बर्नम। उसने अपना कोट खोला, वैसे ही सपाट जैसे हो सकता था। उसने कहा, अब पहले 2-3 महीने में जब आपने मुझे ये कहा मेरी दशा बहुत खराब थी और कहा डॉक्टर ने कहा अब वो इस ओर कोई प्रयास नहीं करेगा, यदि मैं इस फोड़े को बाहर नहीं निकालने का यत्न करने दूं तो इसका भार और अधिक। उसने कितना बताया था? लगभग 30 पाउंड। भाई टेलर, उन्होंने लगभग 30 पाउंड वजन आका और कहा एकदम से ये आरंभ हो गया। ओ, वो अपने वचन को स्थिर रखता है, ये ठीक बात है। अब यदि आप उस महिला को लिखना चाहते हैं तो हमारे पास उसका पता है, सब कुछ है। उसने लियो के लिए छोड़ा है कि उसकी माँ को उसके लिए अभिवादन करे और आदि आदि। ऐसा हुआ कि उसके भाई का विवाह यूटिका में जो मेरा मित्र हुआ, लड़की वहाँ थी, उसका नाम क्लाइड रेन है, वो सब चलता है बहुत से और बहुत सारी। हम उसे छेनी कहते हैं। जब वो लड़का था हम साथ साथ खेले थे, यहाँ यूटी का पाइक में रहते थे। अब वहाँ एक प्रकार का प्रांतीय अफसर है और उसकी बहन कार में बैठी थी और मैं सोचता हूँ कि वे कैंपलाइट आराधनालय में जाते हैं। मुझे अचरज हुआ कि उस पर कैसा प्रभाव पड़ा। उसने कहा बिली ये बहुत शानदार है। ओ, लड़की को मैं स्वयं ही जानता था, बहुत सी बार मैं उसके साथ था युवाओं के समान जब हम यहाँ मार्ग पर रहा करते थे, और बहुत ही अच्छी लड़की जितनी वो हो सकती थी। अब वो लगभग मेरी आयु की है और इस प्रकार से वहाँ बैठी हुई इस गवाही को सुन रही थी और ये उसके पति की बहन थी जो चंगी हुई थी। ओ भाई, मैं आपको बताता हूँ इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, ये सत्य है, ये परमेश्वर का वचन है, ये इसे ठीक बनाता है। इसलिए जो चीज अनिश्चित है वो अविश्वसनीय है। और जब इस समय के दिन जबकि वे निश्चित नहीं है कि यीशु कल आज और सर्वदा एक सा है, तो उन्हें अकेला छोड़ दो। आप निश्चित हो सकते हैं होने के लिए, आप इसे जान सकते हैं जो कि उसका, यदि वो आप पर कोई और आश्चर्यकर्म ना करे परंतु महान आश्चर्यकर्म कि आपके पाप क्षमा कर दिए। ये सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म है जो उसने किया कि मनुष्य जाति के पाप क्षमा कर दिए। एक व्यक्ति को लेकर उसका मत परिवर्तन करे, देखिए कि उसका भीतर वाला जीवन बाहर की चीजों से बदल गया, जो कि एक समय वो पीता, जुआ खेला, बुरा किया और इस प्रकार की बातें, और अचानक से उसे वापस पीछे घुमा दे प्रेम के लिए और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा प्रिय मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अपने छोटे बालकों को उठाएं, उन्हें गोदी में लें। पिता ने सारे पैसे विस्की में खर्च कर दिए और पिता ने ये किया और माँ ने सारी रात प्रतीक्षा की और आप बालकों को छोड़ दिया। मैं ये फिर नहीं करूँगा, परमेश्वर मुझे क्षमा करे। और कैसी वो गवाही, वहाँ वो सबसे बड़ी बात है। सारे अज्ञात शराबी और सारे इस प्रकार के सदा नहीं बदल सकते जैसा वो बदला, वे व्यक्ति के लिए कभी नहीं कर सकते। यहाँ उस छोटी पुरानी रोजेला ग्रिफिथ को देखिए, वहाँ बैठी है। जब शिकागो के बहुत से अज्ञात चार बड़े बड़े अस्पतालों ने उसके डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया, एक क्षण के अंदर मंच पर उन बेचारी चमगादड़ रूपी आँखों को बदल डाला। इस प्रकार के कोट के साथ खड़ी थी, मिक कोट पहना हुआ था जहाँ उसकी माँ उसे लाई थी। वो तेज लड़की थी और अपने कोट में अपनी विस्की की बोतल ले रखी थी और डरी हुई थी कि सड़क पर गिर पड़ेगी और इसके पहले कोई उसे ढूंढ सके वो ठंड से मर जाएगी। वो वहाँ पर खड़ी थी जब सारे सनानमस ने और सब ने उसे छोड़ दिया। अब वो इस पर एक पुस्तक लिख रही है। वो मंच पर आई, पवित्र आत्मा ने उसे कहा तुम्हारा नाम रोजेला ग्रिफिथ है, इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। तुम एक पियक्कड़ हो, तुम एनोनिमस में थी और सब कुछ, परंतु अब यहोवा यूं कहता है अब ये हो चुका। और वो महिला यहाँ बालकनी में बैठी है, वो फ्रेड स्टेयर के साथ नृत्य करने वाली संगनी थी, वो कूदी, ये ठीक बात है। वो पियक्कड़ भी थी और एक स्वापक सेवी, अब कानून उसे ढूंढ रहा था और उसका पिता खड़ा था, कहा मैं इससे अप्रसन्न हूँ। उसने कहा एक मिनट रुकिए पिताजी, ये व्यक्ति ठीक है, इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। यहोवा यूं कहता है आप चंगी हो गई हैं, स्वयं को दे दो। अब वो बाहर कार्य क्षेत्र में अपने पति के साथ है जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। ओ प्रभु, ये क्या है? यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। उन दिनों में जब नामधारी इस पर अनिश्चित हैं, हम क्यों नामधारी कलीसिया की सुने जब मसीह एक सा बना रहता है? इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, ये सदा निश्चित है। अब हम जानते हैं कि बाइबल कहती है यदि कोई चीज जो मरी हुई है आवाज करती है, एक मृत वस्तु, मरी हुई कलीसियाएं या जो भी हो आवाज कर सकती हैं, परंतु जब तक आवाज में अंतर ना हो, जब तक ऐसा ना हो, हम निश्चित हो सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ वचन सिपाहियों के विषय में लिख रखे हैं। जी हाँ, सिपाही अपने प्रशिक्षण के दिनों में वे उन बिगलों के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं और कैसे वे आवाज लौटने की या उन्हें क्या करना है और सब बातें उन्हें आवाज के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। और यदि वे उस आवाज को नहीं जानते तो वो कैसे जानेंगे कि उन्हें तैयार होना है। ये ठीक बात है, परंतु वे उस आवाज के लिए सिखाए गए हैं और वे जानते हैं जब वो आवाज निकलती है, इसका अर्थ एक निश्चित बात है। कैसे जब टाइटस ने यरूशलेम की दीवारों को घेर लिया था, इसे सेना से घेर लिया, वे सारे सिखाए हुए सिपाही, वो चेले, इतिहासकार कैसे लिखते हैं, उस दिन यीशु ने पहाड़ पर बैठे हुए कहा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, वो जो खेत में है अपने घर को ना लौटे कि अपना कपड़ा ले, जो घर में हो वो छत पर ना जाए या नीचे उतरे, कहा परंतु अपने पहाड़ों पर भाग जाए क्योंकि संकट का समय होगा। अब देखिए महान नामधारी कलीसियाओं ने क्या कहा जब उन्होंने टाइटस को बढ़ते हुए देखा, अब हम यहोवा के भवन को चलें और प्रार्थना करें। उन्हें बहुत देर हो गई थी, ये याजक की अनिश्चित आवाज थी, वो कलीसिया की अनिश्चित आवाज थी, परंतु वे जो यीशु की आवाज से प्रशिक्षित थे उन्होंने पहाड़ों का मार्ग जितनी जल्दी हो सका ले लिया और केवल वे ही जीवित रहे। अनिश्चित आवाज, नगर से भाग जाओ। अब यदि उसने उन्हें ना बताया होता और प्रशिक्षण ना दिया होता तो भागना है वे कैसे जान पाते। अब यूसुफ उस महान इतिहासकार ने कहा, केवल जो बचे वे मसीह के चेले थे जो कि नरभक्षी थे। एक इतिहासकार ने कहा वे नरभक्षी थे, कहा उन्होंने यीशु नासरी नाम के एक व्यक्ति को लिया जिसे पिलातुस ने क्रूस पर चढ़ाया था और उन्होंने कब्र से उसकी लोथ चुरा ली थी और निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसे खाया। वे क्या कर रहे थे? प्रभु भोज ले रहे थे, प्रभु की देह, आप जानते हैं, जैसे हम यहाँ पर करते हैं, समझे। और कहा केवल वे ही थे जो जीवित बचे क्योंकि वे नगर से बाहर निकल गए थे, वे आवाज जानते थे। ओ भाई, होने पाए इस प्रातः पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आए, पवित्र आत्मा के उस हृदय की धड़कन की आवाज दे और उसकी सामर्थ्य की, केवल वे ही जीने योग्य हैं। परमेश्वर के तुरही की आवाज और हमारे हृदय इस घड़ी में तैयार हैं कि जाने क्या करना है। हम जो जीवित हैं और बच्चे रहेंगे तो जो सोए हुए हैं उनसे कदापि आगे ना बढ़ेंगे क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी। वे सब सिपाही जो सामने लेटे हुए हैं युगों से सो रहे हैं, परंतु जब तुरही फूंकी जाएगी, यद्यपि वे निद्रा में मृत हैं, ये उन्हें नहीं रोकेगा क्योंकि तुरही बजेगी और उन्हें जगा देगी। वे तैयार हैं, वे जो तैयार नहीं हैं वे आवाज को नहीं जानते। जब वो आवाज प्रभु के आगमन की धमाका ये स्वर्ग और अधलोक को हिला देगा, जब ये धमाका होता है, परंतु वे जो अधलोक में हैं, जो नष्ट हो गए, उस आवाज को नहीं जानते, वे नहीं जानते कि क्या करना है, परंतु वे जो मसीह में सोए हैं वे उस निश्चित आवाज को जानते हैं। ओ प्रभु की तुरही फूंकी जाएगी और समय और ना होगा और प्रातः अनंतता में फूटेगी चमकदार साफ, जब पृथ्वी के बचाए हुए अपने घरों में जमा होंगे उस आकाश के पार, और जब सामने नाम पुकारे जाएंगे मैं वहाँ होना चाहूँगा। आज प्रभु यीशु के लहू से अपने नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिख लो और ये अनिश्चित आवाज ना होगी। अब हम विपत्तियों की आवाज सुन रहे हैं, परमाणु बम सब जगह लटके हुए हैं, राष्ट्रों के मध्य में अशांति, घबराहट का समय। हम क्यों नौकरी के लिए चिंता करें? हम क्यों घर के लिए चिंता करें? हम किसी चीज के लिए क्यों चिंता करें? यीशु ने हमसे कभी भी चिंता करने के लिए नहीं कहा, परंतु कहा जब तुम इन बातों को घटित होते हुए देखो तो अपने सिर उठाना और आनंदित होना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। ये सुसमाचार की आवाज की निश्चितता है। जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया में आकर हृदय के विचारों को परखता है, इन महान चिन्हों को कर रहा है, सांझ के समय आत्मा की वापसी, जब ज्योतियां चमक रही हैं, हम उसे आते हुए देखते हैं और उन्हीं चीजों को करते हुए देखते हैं जो उसने सदोम में किए इसके पहले कि उसे जलाता। देखे वो सरदूत अपनी पीठ घुमाकर कहता है कि सारा क्यों हंसी। उसके पीछे यीशु ने कहा, जैसे सादोम के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पितर के दिनों में होगा। ये क्या है? ये प्रभु यीशु के आने की आवाज है। देखो इसके पहले बड़ा और भयानक दिन संसार को नष्ट कर दे, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो बालकों के हृदय को वापस मूल विश्वास पर लाएगा, वापस सुसमाचार पर, परमेश्वर की सामर्थ पर वापस, वास्तविक पवित्र आत्मा पर वापस, फिर से वापस मसीह के पास। इसके पहले महान दिन आए, हम तुरई को बजते हुए सुनते हैं। ओ ये क्या है? प्रभु के संतो जागो, जबकि अंत पास आ रहा है। क्यों ओंग रहे हो? आइए उस अंतिम बुलाहट के लिए हम तैयार हो जाएं। यदि ये अनिश्चित आवाज देता है तो कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा यदि ये अनिश्चित है? परंतु ये अनिश्चित नहीं है। लोग कहते हैं ये क्या चीज है? वे पवित्र आत्मा के विषय में लोगों के मस्तिष्क पढ़ने की बात कर रहे हैं, और वे चीजें जो वो कर रहा है ये सुसमाचार का निश्चित स्वर है। मसीह ने कहा कि ये इसी प्रकार होगा। अच्छा, क्यों ये सारी बड़ी बड़ी कलीसियाएं कर सकी? मसीह ने कहा ये इसी प्रकार होगा, अनिश्चित नहीं है, ये इसकी निश्चितता है। हमारी इस पर 8 दिन की सभा हुई जानने के लिए। बाइबल सख्ती से कहती है कि ये बात इसी प्रकार होगी। महान नामधारी कलीसियाएं उठेंगी, वे सब मिलकर अपने को कलीसियाई संघ में ढाल लेंगे। हमें मिल गया, पशु की मूरत बना रहे हैं कैथोलिक पुरोहितवाद। हम पशु की एक मूरत बनाएं। वहाँ ये हमें मिला, संघ, हमारे नामधारी इसमें है। ये अनिश्चित स्वर नहीं है, ये वास्तविक सच्चा स्वर है, ये निश्चित स्वर है। हमारा यूएन, संयुक्त राष्ट्र में महान विश्वास है, ये उतना ही गहरा है जैसे राष्ट्र संघ था। वही चीज हमारे पास राष्ट्र संघ था। पहले विश्व युद्ध के पश्चात वे सारे संसार को शासित करने जा रहे थे, ये नहीं चल पाया। अब यूएन की भाषा इतनी अनिश्चित है कि वे नहीं जानते कि क्या करें। वे वहाँ थे जब क्रुश्चेव ने अपना जूता निकाला और मेज पर पटका, और इससे क्या लाभ हुआ? सारे विभिन्न, ये यूएन की अनिश्चितता है। यूएन ठीक है जहाँ तक ये चलता है, परंतु बहुत देर हो गई है इस प्रकार की बातों के लिए, बहुत देर हो गई है। केवल एक ही स्वर निश्चित है, वो सुसमाचार है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कौन सा युद्ध? प्रभु का आगमन। अब अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करो, बुराई के विरुद्ध, जबकि बुराई लोगों को हर प्रकार से दुर्बल कर रही है। हर चीज गलत चल रही है, घरेलू जीवन गलत चल रहा है, और यूएन गिर रहा है, राष्ट्र टूट रहे हैं, चारों ओर परमाणु बम हैं, परिवार टूट रहे हैं, ममता और नीचे गिर रही है, लोगों के मध्य में आचरणहीनता और एक दूसरे में अविश्वास, सारे नामधारी झगड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? निश्चित होना, स्वयं को युद्ध के लिए तैयार कर लें। जबकि टेलीविजन सड़ गया है और रेडियो और अखबार, विज्ञापन की सारी धाराएं, निरंतर सारी चीजें, सिगरेट, तंबाकू और विस्की और पीना और स्त्रियों के अनैतिक वस्त्र, गंदे मजाक और मजाक करने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों पर, और अमेरिका इसके लिए गिर रहा है जैसे एक बड़ा, जैसे नबूकदनज़र राजा के घर का सामान लाया उस रात्रि आमोद प्रमोद, जब वहाँ उन्मादियों की भीड़ वहाँ थी, उनकी बड़ी शराब की दावत और नाच था और टेलीविजन। यदि ये उस दिन वहाँ होता, उनके जोकर वहाँ पर थे और वो वहाँ दीवार पर एक हस्त लेकर आया। और आज जब हम सोचते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं, हमारे पास संसार के सबसे अच्छे वैज्ञानिक हैं, हमारे पास संसार का सबसे अच्छा है, मालूम पड़ा कि हम मिसाइल की दौड़ में पीछे हैं। हाँ, और फिर संयुक्त राष्ट्र का क्या हुआ? केवल दीवार पर हस्ते नहीं, परंतु वहाँ प्रक्षेपात्र मिसाइल आकाश पर लिख रही है कि हम वर्षों वर्षों पीछे हैं। क्या बात है? दीवार पर हस्तलेख है। उस दिन में ये अन्य भाषा में लिखा गया, दीवार पर हस्तलेख। वहाँ केवल एक पुरुष को छोड़ सारे राज्य में कोई और नहीं था जो इसका अनुवाद कर सका, परंतु उसके पास अनुवाद का वरदान था। उसने इसका अनुवाद किया और कहा, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परमेश्वर ने तुम्हारे मध्य में एक राष्ट्र के लोगों को भेजा जिन्हें तुमने पवित्र शोर करने वाला कहते हो। तुमने जाकर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला और उन्हें दबाया और अपने देवताओं और मूर्तियों को लेकर और चीजों से उनके द्वारा आराधना की और आनंद से रहे। और अब तुमने जाकर उनके परमेश्वर के मंदिर में से उसी के बर्तनों को लिया और यहाँ आकर उसका उपहास उड़ाया, उन पवित्र शोर करने वालों का उपहास उड़ाया और गंजे प्रचारक और सब इस प्रकार से, और परमेश्वर इससे उकता गया। और अब तुम्हारे उजड़ने का समय आ गया। वही राष्ट्र जो उन्हें ले जाएगा उस समय फाटक पर प्रतीक्षा कर रहा था, उसके थोड़े समय पश्चात वे काटे गए, उनकी स्त्रियां काटी गई थीं, उनके रक्षक, उनकी सेना, हर चीज ले ली गई। तराजू में तोला गया परंतु हल्का निकला। और हमारे पास रेडियो टेलीविजन का पागलपन और मजाक और गंदगी, आचरणहीनता और धूर्तता और भद्दी भाषा और सारी चीजें, जब तक परमेश्वर इससे उकता नहीं जाता, जब सुसमाचार पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया का सच्चा सुसमाचार वहां राष्ट्र में आर पार चल रहा है, यीशु मसीह की निश्चितता और उसके आगमन को दर्शा रहा है, जब तक कि यहां समय है जब परमेश्वर हमारे आकाश के आर पार लिखता है, तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। आमीन। हम भयानक स्थिति में हैं, निश्चित स्वर को सुने न कि अनिश्चित यूएन को। जी हाँ श्रीमान, यहाँ तक कि उस दिन जब हमारा चुनाव था, उन्होंने यहाँ कुछ समय पहले कहा कि जब उन्होंने राजनीतिक संसार के वोट गिने और जब वे ये कहेंगे, वे कहते हैं हमारे पास, मेरे पास अब एक मशीन है कि सबको ईमानदार होना है, क्योंकि आप एक छोटा डंडा खींचेंगे तो ये आपके व्यक्ति को वोट पड़ गई, आप खींचिए, कटक की आवाज, आपके व्यक्ति को वोट पड़ गई। ओ, उन्हें मालूम पड़ा कि यह अनिश्चित है। श्री हूवर ने इसे प्रकट कर दिया, उस दिन दिखा दिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी, जब उन्होंने मशीन लगाई कि हर बार उन्होंने श्री निक्सन को वोट डाली, उन्हें श्री कैनेडी को वोट डालनी थी उसी प्रकार से, और वे इस विषय में कुछ क्यों नहीं करते, तब यदि उन्हें मिलता है कि ये इस प्रकार था, क्यों? ठीक है, इसमें कुछ निश्चित नहीं है। आप जानते हैं कि क्या होगा श्री हूवर, समझे? ठीक है, आप देखते हैं हर चीज अनिश्चित है, आप नहीं बता सकते कौन चुना गया था, कैनेडी या कैनेडी चुना हुआ कहलाया, परंतु मैं नहीं जानता कि वो चुना हुआ है या नहीं। अब मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ गलत क्या है और सही क्या है, मुझ में इतनी समझ है। जब ये हमारे सामने ठीक है कि उस व्यक्ति ने FBI के द्वारा प्रमाणित कर दिया, उन्होंने मशीन को इस प्रकार से नियोजित किया था कि ये करे, ये दूसरे दल ने इस प्रकार से नहीं किया, ये कैनेडी का दल था जिसने ये किया था। क्यों? इसे इसी प्रकार से होना था। परमेश्वर के राज्य के बाहर संसार में कुछ नहीं है जो स्थिर रह सके, क्योंकि हर राज्य तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। हमारा राष्ट्र ये क्यों है? यहाँ कुछ वर्षों पहले यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, मैं जाकर उसके नीचे बैठा करता था। मैंने सोचा वो पेड़, जब मैं बूढ़ा व्यक्ति हो जाऊंगा, यदि मैं जीवित रहा तो मैं आकर इस पेड़ के नीचे बैठूंगा। अब ये केवल एक ठूंठ है। वो स्थान जहाँ मैं रहा करता था, मैं उन्हें वहाँ निकलते हुए देखा करता हूँ, और उनके छोटे छोटे हाथ, वो तो अंदर से एक कैंटिकन थे, वो तो एक रिकॉर्ड आदि थे, छोटा सा व्यक्ति 145 या 50 पाउंड उठा लेते थे, परंतु मजबूत थे। ओ, श्री कूट यहाँ है, उन्होंने मुझे बताया 950 पाउंड का लट्ठा उन्हें स्वयं चढ़ाते देखा, एक वास्तव में मजबूत व्यक्ति। मैं उन्हें अस्थि ने समेटते हुए देखा करता था, टूटे हुए दर्पण के पास जो सेब के पेड़ के ऊपर ठुका हुआ था, हाथ धोया करते थे। आप में से कुछ इंडियन लोग नहीं जानते होंगे कि हम वहाँ पर कैसे रहा करते थे, कि हम उस पुराने धोने के बर्तन के पास बैठकर घड़े के पास, हैंडपंप, माँ के पास एक पुराना थैला था, आटे का थैला, उसकी तौलिया बनी थी एक प्रकार की सजावट, मैंने उसमें से कुछ धागे खींचकर उन्हें नीचे की ओर सजावट में बना दिया था, बड़ा पुराना, वो उस तौलिया से रगड़ा करती थी, लगभग छन्नी सा हो गया था, पुराना खुरदुरा आटे का थैला, वो उस पुरानी तौलिया से मुझे पोछा और रगड़ा करती थी। अब मैं देखता था पिता वहाँ खड़े हैं, और अंदर आकर आप जानते हैं, उन छोटी छोटी अस्थियों को समेटकर, और वो हाथ धोएंगे, और उन मांसपेशियों को देखो, मैंने कहा आप जानते हैं वो 500 वर्ष जीवित रहेंगे, वो इतने मजबूत हैं। परंतु आप जानते हैं क्या, जब वो 52 वर्ष के थे मर गए। क्यों? यहाँ हमारा स्थिर नगर नहीं है। मैं वहाँ रोम में खड़ा था, जहाँ महान कैसर खड़ा था, जो उन गलियों से अपनी बड़ी जनता और शान के साथ निकला करता था, और जो उसके पास था, और आप जानते हैं कि उनके राज्य को कहाँ ढूंढें? ये अब जमीन में 20 फुट नीचे हैं, 2000 वर्षों ने से डुबा दिया। काहिरा मिस्र में खड़ा हुआ था, जहाँ वो महान फिरौन एक दिन खड़ा था, जिसने परमेश्वर के लोगों को सताया, जिसने उन्हें भगाया और उन्हें गुलाम बनाया, वहाँ 20-30 फुट नीचे है, उनके राजमहलों के खंडर हैं। मैं वहाँ लंदन इंग्लैंड में खड़ा हुआ था, जहाँ सारे महान महान महाधर्माधिकारी और चीजें खड़ी थीं, और वो सब, और मालूम पड़ा कि ये जमीन के नीचे धस गईं। ये क्या है? यहाँ हमारे सदा रहने का नगर नहीं, परंतु हम एक आने वाले को ढूंढ रहे हैं। क्यों ये राज्य? यह आपको बताने के लिए है, उस अनंत के विषय में बोल रहे हैं। क्यों ये पेड़ सुंदर है, ये प्रतीक्षा कर रहा है, ये परमेश्वर के संपूर्ण पुत्रों की प्रगटीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है, जब वो पेड़ सदा के लिए जीवित रहेगा। एक राज्य है जो आएगा, और बाइबल ने कहा यहाँ हमारा सदा रहने का नगर नहीं है, परंतु एक है आने वाला है जिसे हम ढूंढते हैं, और वहाँ परमेश्वर ने हमें एक राज्य दिया है जो टल नहीं सकता। पृथ्वी पर सारी चीजें टलने और हिलने योग्य हैं, गिर रही हैं, हर चीज क्षीण हो रही है, हम मरणहार संसार में जी रहे हैं, हर चीज मर रही है, पेड़ मर रहे हैं, घास मर रही है, फूल मर रहे हैं, नगर मर रहे हैं, संसार मर रहा है, आप मर रहे हैं, हर चीज मर रही है, मैं मर रहा हूँ, हर चीज मर रही है। विशेष किरणें और तेजाब और चीजें हवा में हैं, वो रसायन हवा में हैं। यहाँ तक कि आप इस बड़े पुल को लेते हैं, जब मैंने देखा ये आया, ये 22 वर्ष पहले वहाँ डाला गया, उन व्यक्ति को उनका जीवन इस पर नाश होते हुए देखा, जब उन्होंने आर पार पुल बनाया और इसके विषय में बोला गया था। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, सोचा कि मुझे चित्त उत्तेजना के दौरे पड़ते हैं। मैंने उसे बताया, मैंने कहा मैंने एक पुल आर पार देखा है और मैंने उन व्यक्तियों को गिना है, 20 वर्षों बाद वो पुल वहाँ बना और उतने ही व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। मैं सोचता हूँ ये 16 थे, ठीक। अब मैंने सोचा जब उन्होंने वहाँ बड़े बड़े गाटर डाले कि ये पुल सदा के लिए है, ओ उन्होंने इसे 3-4 बार रंग किया और जब उसमें जंग लग रहा है, ये क्या है, हवा की इन किरणों ने उसे जला दिया। हम एक सुंदर युवती को पाते हैं, 16 की, आराधनालय में बैठी हुई चिंगम चबा रही है, छांट रही है और आगे बढ़ रही है और बाहर जाकर अपने कपड़े खींचकर समेट रही है, जहां वो कामुक दिखाई पड़े स्वयं को मटकाती है, और थोड़े से सूर्यास्तों से वो बूढ़ी और झुर्रीदार हो जाती है और उसका मांस लटकने लगता है, और वो छोटी देह जो उसने मटकाई और आत्मा को उसमें रहने दो और उसे नियंत्रित करने दो, वो उसके आचरण को कुत्ते के सामने डालता है और न्याय के दिन व्यभिचार करने के लिए उसे उत्तर देना होगा। जो को भी कुदृष्टि स्त्री पर डालता है वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका, ये अनुभव ना करते हुए कि वो सिवाय मिट्टी के और कुछ नहीं है और वापस मिट्टी में जा रही है, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये क्या है, यदि केवल वो ही अनुभव करे और रुके, ये एक अनिश्चित स्वर है। ठीक है, अब अमुक अमुक टेलीविजन पर, अमुक अमुक विद्यालय में किसी विशेष व्यक्तित्व की नकल करने का यत्न कर रहा है, आप उसे कभी भी उसे अपना आदर्श ना बनाएं, परमेश्वर को देखें। ओ अनिश्चित स्वर, चुनाव, अब कैसा समय आ गया है, अनिश्चितता। यदि हमारे पास समय होता हम जरा इस पर चलें। मैं देख रहा हूँ बहनें सब वचनों को लिख रही हैं। अब दूसरे तीमोतियस में दूसरा, हम जरा कुछ मिनटों के लिए पढ़ें। दूसरा तीमोतियस दूसरा अध्याय और तीसरे से आरंभ करके, दूसरा तीमोतियस तीसरा अध्याय हम पढ़ें। इधर सुनिए, इसे भी जानिए, अब ये आत्मा है, ये भी जानते हैं अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब ये पवित्र आत्मा है जो इस प्रातः आप आराधनालय में सुन रहे हैं, वहाँ पीछे बोल रहा है 2000 वर्षों पहले 66 ईसा पश्चात इस दिन के लिए, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतधन, अपवित्र, उस दिन को देखें। आज आप पवित्र के लिए बोलते हैं, वे आपको पवित्र शोर करने वाला कहते हैं, बालकों को देखिए वे कैसे करते हैं, किशोर अपराधी, वे इसकी बात करते हैं। मैं आप अभिभावकों से असहमत हूँ, क्या ये किशोर अपराधी नहीं, ये अभिभावक अपराधी, समझे, ये यही है। आप में से कुछ केंटकी की माताओं को कहते हैं, कितनी अशिक्षित केंटकी या वे पुरानी माताएं, चौड़ी बाढ़ की टोपियों के साथ इस प्रकार से, और अपना काखा गावे नहीं जानती, वो इतनी वर्गीकृत होती हैं। परंतु मैं आपको बताता हूँ, उसकी किसी पुत्री को इस प्रकार से आने दो जैसे आप में से कुछ की किसी रात्रि उसके कपड़े गुजले हुए और सारे चेहरे पर लिपस्टिक, उसके बाल उलझे हुए, वो नहीं कहेगी प्रिय क्या तुम्हारा महान समय हुआ, वो किसी चीज में से पट्टी निकालेगी और वो अंतिम बार जानेगी, वो बाहर चली गई, और तब आप उसे अपवित्रता कहते हैं। जी हाँ, यही है, कृतधन, अपवित्र, बिना प्राकृतिक प्रेम, मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर के बैरी उन लोगों से घृणा करते हैं जो सही जीवन व्यतीत करने का यत्न करते हैं, विश्वघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे, वे बॉल खेल या कुछ इस प्रकार का, या जहां कुछ सिने सितारे कुछ विशेष करने जा रहे हैं, और दूसरा इस प्रकार का, जिस प्रकार की पुराना रोमन सर्कस वर्षों पहले, उसके लिए लाखों डॉलर खर्च कर देंगे, परंतु जब ये सड़क पार पवित्र आत्मा की सभा में जाने की बात आती है तब वे अपने घर के छज्जों में बैठे हुए हंसते हैं। अच्छा, आप कहते हैं भाई ब्रैनम वे लोग कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि पांचवा पद क्या कहता है, भक्ति के भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। किसकी शक्ति को न मानेंगे? परमेश्वर की शक्ति। भक्ति का भेष धरेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को न मानेंगे। आराधनालय जा रहे हैं, नामधारी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, परंतु पवित्र आत्मा के अस्तित्व का इनकार करते हैं। ये नियम बना रखा है और उन्हीं चीजों को कर रहे हैं जो उन्होंने आरंभ में किया था। ओ देखिए, नामधारी का कैसा श्राप है। ओ मैं आशा करता हूँ कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आप इसे उसी उजियाले में समझेंगे जो मैं कहने का यत्न कर रहा हूँ। अब इस पर ध्यान दें, भक्ति का भेष धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से वो कलीसिया से क्या कह रहा है, अलग रहो, ऐसों से अलग रहो, इसमें से बाहर आ जाओ। ये ठीक बात है, क्योंकि सुनिए, हम दूसरा पद या दो पद पढ़ें, जरा सुनिए, क्योंकि हम देखें इस विशेष प्रकार के लोग कैसे होते हैं। देखिए, यदि ये अनिश्चित है, इन्हीं में से वे लोग हुए हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी हैं और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सत्य क्या है? यीशु मसीह सत्य है। उसने कहा मैं सत्य हूँ। पिलातुस ने कहा सत्य क्या है? मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ। स्त्रियाँ, सब प्रकार की महिलाएं, सोसाइटियां और कंबल बनाना और एक साथ जा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं और दावतें और सूप दावत की पास्टर को भुगतान करें और आदि आदि इस प्रकार से, और कभी भी यीशु मसीह के ज्ञान तक पहुंचने योग्य नहीं होते कि वो आज पवित्र आत्मा में अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के अस्तित्व में है। कभी नहीं। मूर्ख स्त्रियां, अब वो आप बहनों से बात नहीं कर रहा है, कहा मूर्ख स्त्रियां, ठीक है, विभिन्न अभिलाषाओं से दबी रहती हैं। आप इसे भली प्रकार जानते हैं, इसलिए मेरी छोटी बहनों मैं आप लोगों के लिए आनंदित हूँ। कभी नहीं योग्य होती। कितना अनिश्चित स्वर है उस कहलाने वाले नामधारी से। आज कलीसिया का स्वर कितना अनिश्चित है। कौन जानता है क्या करना है? आज मैं आपको कलीसिया दिखाऊं। युद्ध के बादल चारों ओर हैं, परेशानियां चारों ओर हैं और लोग अपने आराधनालय में भाग रहे हैं और उत्तर पा नहीं सकते। बड़े दिन की रात्रि में इस पर प्रचार करने जा रहा हूँ। पूर्व में सितारे का कोई उत्तर नहीं। अब ध्यान दें, ओ ये वहाँ लटकता है और उनके पास उत्तर नहीं है। वे नहीं जानते कि क्या कहें, क्यों? केवल एक बात वे दोहरा सकते हैं, हमने ये विद्यालय में सीखा था। कलीसिया उस पर निर्भर नहीं रह करती जो उन्हें विद्यालय में सिखाया जाता है, परंतु ये जीवित पवित्र आत्मा कलीसिया में इसको लिए जा रहा है और मार्गदर्शन कर रहा है और आने वाली बातों को पहले से दर्शा रहा है, जैसे कि इसने टाइटस के दिनों में किया। आने वाली बातों की चेतावनी दे रहा है, आने वाले क्रोध से भागो। ओ वो जिसके पास है कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तब फिर क्या और चीज है मैं पूछूंगा। इस प्रातः में आपको अधिक नहीं रोकना चाहता, परंतु क्या कुछ है जो निश्चित हो? यदि मैंने आपको बहुत सी अनिश्चित चीजें बताई हैं, क्या कुछ है जो निश्चित है? क्या किसी बात के विषय में निश्चितता है? क्यों, निश्चय ही। मैं धन्यवादित हूँ कि एक है। क्या कोई चीज है जो निश्चित है? मैं आपको बताता हूँ क्या निश्चित है। ये यीशु मसीह का सुसमाचार। अब यदि आप लिखना चाहते हैं, हम इसे निकालेंगे नहीं, परंतु आप लिख सकते हैं यदि आप चाहें। मत्ती 24:35 यीशु इन दिनों के लिए बोल रहा है और क्या होने जा रहा था। मत्ती 24:35 उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये निश्चित है, यही वो चीज है जो निश्चित है, वो उसका वचन। अब एक चीज है हम देखते हैं, हम कलीसिया पर नहीं बना सकते, हम अपने राष्ट्र पर नहीं बना सकते, हम ये बहुत ही अनिश्चित हैं, परंतु एक चीज है जो निश्चित है और वो निश्चित परमेश्वर का वचन है। आप निश्चय ही इसे आप करने जा रहे हैं। उनमें से एक ने कहा एक निश्चित चीज थी, वो कर था। ओ नहीं, कर बहुत निश्चित नहीं है। प्रभु आ सकता है, वे इसे वसूलने से वंचित रह सकते हैं। फिर ये सब हो गया। उन्होंने कहा मृत्यु निश्चित है। नहीं श्रीमान, मृत्यु निश्चित नहीं है, नहीं, वास्तव में नहीं। उठा लिया जाना हो सकता है, तो फिर कोई मृत्यु नहीं। मृत्यु भी निश्चित नहीं है, नहीं नहीं, इस दिन में नहीं, ये बहुत वर्षों पहले, परंतु अब नहीं। मृत्यु भी निश्चित नहीं है। और जो भी है, एक बार एक व्यक्ति को जानता हूँ जो परमेश्वर के साथ साथ चला, दर्शाने के लिए एक उदाहरण। और एक दिन वो चलते चलते थक गया, इसलिए वो वास्तव में हल्का होकर ऊपर चलने लगा, परमेश्वर के पास घर को चला गया। कोई भी जानता है कि वो कौन था? हनोक। और वो क्या था? इस दिन में कलीसिया का प्रतीक, और नूह जो कि प्रतीक है, और हमने इसे पिछले पाठ में पिछले सप्ताह लिया था। नूह इसराइल का प्रतीक, जिसे ले जाया गया वहाँ रूपांतरण के पर्वत पर था, वहाँ यूरोप के नीचे फिलिस्तीन में देख रहा था। और जब नूह ने देखा हनोक गायब हो गया, उसने सोचा हनोक का क्या हुआ, हनोक का क्या हुआ, वो कहाँ है? जो कि पोता था, नूह हनोक का पोता था, और उसने कहा वो कहाँ पर है, उसका क्या हुआ, हम उसे नहीं ढूंढ सकते। नूह ने नाव बनानी आरंभ कर दी, वो जान गया कि समय निकट आ गया, तब उसी समय। और अब जब कलीसिया उठा ली गई, और लोग कहते हैं अच्छा, मैंने पुलिस बुलवाई, मैंने टेलीफोन किए, वो यही मेज के पास बैठी थी और वो गायब हो गई। हाँ, मैं नहीं जानता उसका क्या हुआ। भाई, केवल इतना ही नहीं, पुलिस कहती है इस प्रातः इस बात के लिए हमारे पास 500 टेलीफोन आए हैं। क्या हुआ अन्य जातियों का? तब ये तुम्हारे लिए समय समाप्त हो गया। ये ठीक बात है, ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन निश्चित है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मत्ती 24:35, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा असफल नहीं हो सकती। यीशु ने कहा सारे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। आप कहते हैं आकाश, जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 21, यूहन्ना ने कहा मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। और मुझे यूहन्ना ने पवित्र नगर को देखा, नया यरूशलम, एक दुल्हन के समान स्वर्ग से नीचे आ रहा था। यही वो था, अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। ओ, वही मैं होना चाहता हूँ। परमेश्वर वह होने के लिए उस दिन मेरी सहायता करें। ठीक है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा निश्चित है, हम ये अनुभव करते हैं। अब हम जरा एक छोटा सा वचन लें या एक छोटी सैर, और पीछे जाकर ढूंढते हैं कि बीते दिनों में जिन्होंने विश्वास किया वे कैसे निकल कर आए उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा, कि वो स्वर निश्चित था। अब हम बाइबल के आरंभ में चलते हैं, केवल 2 या 3 चरित्र, और हम प्रार्थना पंक्ति के लिए तैयार होंगे अगले 15 मिनट या कुछ। आइए हम पहले वाले पर वापस चलें और भाई नूह को आरंभ में लेते हैं। नूह उत्पत्ति में हम पाते हैं कि वहाँ 2 या 3 स्वर थे। नूह के दिनों में बहुत से स्वर आ रहे थे, उनमें से एक नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना, कहा कि वर्षा होने जा रही है। अब परमेश्वर सुनिए, परमेश्वर अक्सर आपको कुछ ऐसा बताता है जो संसार की बातों के सामने बिल्कुल मूर्खता होती है। वो ये संसार को चकरा देने के लिए करता है, समझे? वे अपने मस्तिष्क में गड़बड़ा जाते हैं, वे कहते हैं अब एक पवित्र शोर करने वालों का झुंड। ओ, भलाई के वास्ते मुझे ये नहीं बताओ कि परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर इस तरह के झुंड को छोड़ देगा। यही बात बालाक और बालाम ने कही थी, कहा जब इसराइल को नीचे देखा, कहा उन्होंने मार्ग में हर नीचे नीच कार्य किया है, वे करते हैं, परंतु वो मारी हुई चट्टान और पीतल के सर्प और उन चिन्हों और आश्चर्य कर्म को देखने में असफल रहा, चंगाई और उन बातों को उस शिविर में। आधार रूप में वे एक से थे, परंतु परमेश्वर कुछ इतना मूल करता है, परमेश्वर मूल है। अब ये अजीब लगता है, परंतु वो है। अब हम पाते हैं कुछ चरित्रों के साथ, नूह को देखिए। अब बाइबल ये कहती है नूह के दिनों में कभी भी आकाश से वर्षा नहीं हुई थी, परमेश्वर पृथ्वी को पृथ्वी पर से ही सींचता था, कभी भी वर्षा नहीं हुई थी। और यहाँ ये सामने हठधर्मी था, एक बड़ी नाव बना रहा था, लगभग 2 मोहल्लों के बराबर लंबी, एक नाव तैरने के लिए, जबकि उसको तैरने के लिए कुछ नहीं था, वहाँ पानी नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ कोई पृथ्वी पर केवल सबसे बड़ी चीज सोता था। अब वो उस चीज को किस लिए बना रहा था और उसे अंदर और बाहर से लेस रहा था, इस प्रकार की बात? क्यों? वे कहते हैं वो पानी कहाँ से आ रहा है नू? ओ, वहाँ ऊपर से। अरे, मैं वैज्ञानिक हूँ और मैं इस हवा से सिद्ध कर सकता हूँ कि वहाँ नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, नहीं होगा। जब जो सीधा पृथ्वी पर आए, वहाँ कुछ नहीं है, मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ कि वहाँ पर नहीं है। ठीक है, परंतु नूह ने कहा आप जानिए कि परमेश्वर योग्य है कि वहाँ पहुँचा दे, यही है परमेश्वर ने कहा, ये वहाँ पर होगा और ये वहाँ होगा। अरे नूह, तुम क्या कर रहे हो? मैं इसके लिए तैयार हो रहा हूँ, समझे? मैं इसे तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, अब विज्ञान अपना शोर दे रहा है। विज्ञान ने कहा वो पवित्र शोर करने वालों का झुंड वहाँ पहाड़ पर है, जो वास्तव में पागल है। क्यों? वे अपने आपे में नहीं है। अच्छा, वे लोग वहाँ बड़ी नाव बना रहे हैं। इस संसार में वे इस नाव से क्या करने वाले हैं? अरे, यदि हम संसार के सारे सोतों को ले लें और उनका सारा पानी लें, तो ये उस खोल को नमी भी नहीं पहुँचा पाएंगे। और यहाँ वे कहते हैं ये तैरने वाली है और वो पानी ऊपर से आने वाला है। परंतु नू कोई मतलब नहीं, विज्ञान कितना भी मूर्ख कहे, वो निश्चित स्वर को सुन रहा था। परमेश्वर ने कहा मैं संसार को जल से नष्ट करने वाला हूँ, इस विषय में कुछ अनिश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चित स्वर है, परंतु ये परमेश्वर का वचन है, कोई मतलब नहीं ये कि ये सुनने में कितना मूर्खपूर्ण लगता है। परमेश्वर ने कहा मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ, इस विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। आप इसका विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने कहा मैं जिसे चाहूंगा दूंगा पवित्र आत्मा, ये आता है, इस विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। कहते हैं मैं पियक्कड़ हूँ, मैं एक वेश्या हूँ, मैं चिंता नहीं करता आप क्या हैं, जो भी चाहे उसे आने दो, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। मैं बल्कि वो कहेगा कि तब कहा यदि विलियम बर्नम 1960 में आएगा मैं उसे जीवन जल का सोता दूंगा। अब ये बहुत ही सुंदर होगा लगता है, ये मेरे समान होगा, परंतु संभव है दो विलियम बर्नम हो, मैं नहीं जान पाऊंगा कि मैं कौन सा वाला था। परंतु जब उसने कहा जो कोई भी मैं जानता हूँ वो मैं था, जो भी हो इसलिए मैं था जो आना चाहता था, समझे। इसलिए आप देखिए परमेश्वर का वचन निश्चित है। अब बाहर का संसार, वैज्ञानिक संसार, ये बहुत ही अनिश्चित है, समझे, क्योंकि कहा कौन कब सोचता है। अब देखिए रात में चांद है, सितारे हैं, एक वातावरण है, और उन दिनों में वे बहुत बुद्धिमान थे, आप जानते हैं आज की तुलना में। उन्होंने उन दिनों में स्फिंक्स बनाए, क्या हम आज बना सकते हैं? एक पंजा ये 16 चपटी कारों को लेगा कि उस पर रखा जाने और हवा में नगर के आधे खंड की ऊंचाई, क्या हम इसे बना सकते हैं? उस दिन में उन्होंने पैरामिड बनाए, जब वे बड़े बड़े शिलाखंड सैकड़ों हजारों टन के हैं। हमारे पास संसार में कुछ नहीं है जो इसे बना सके, हमारे में शक्ति नहीं है, गैस या कोई चीज इसे कभी भी वहाँ नहीं उठा सकेगी। आपके पास इतनी बड़ी लंबी मशीन नहीं है, कैसे किया, और ये इतना सिद्ध है, उसमें कोई मसाला नहीं है, परंतु यह मैदान में काटा छाटा गया, कैसे भी वहाँ पहुँचाया गया, और आप एक ब्लेड या पत्थर उसमें नहीं घुसा सकते, या आपस में इतने सटे हुए हैं, हमसे अधिक बुद्धिमानी। और वही बुद्धिमानी वहाँ उनके पास रंग थे, उन दिनों में वे मम्मी बना सकते थे, आज हम एक नहीं बना सकते, हम मनुष्य की देह को मम्मी नहीं बना सकते। हम नहीं जानते उन्होंने उसमें मम्मी बनाने के लिए क्या डाला कि उन्हें स्वाभाविक बना दे। उनके पास रंग थे, उन दिनों में उन्होंने कपड़ों में रखा जो अब हमारे पास नहीं है, और हम इस प्रकार का कुछ नहीं कर सकते। उनके पास तब बहुत चीजें थी जो हमारे पास नहीं है। यहाँ कुछ समय पहले उन्होंने यहाँ मैक्सिको में जल योजना को खोदा जो उस समय की बाढ़ के समय का था, आधुनिक जल योजना। हम जो आज है हमसे अधिक बुद्धिमान, समझे, जैसा नूह के दिनों में था वे बुद्धिमान लोग समान करते हैं, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, दूसरी बुद्धिमान पीढ़ी। वे लोग कितने बुद्धिमान थे, संभवतः अधिक बड़ा विज्ञान जो एक सितारे से दूसरे सितारे की दूरी को माप ले कि कितनी दूरी पर है। वे भूगोल शास्त्र में बुद्धिमान, उन्होंने बड़े बड़े पैरामिड बनाए और पृथ्वी के केंद्र में रखे, जब तक कि कोई मतलब नहीं सूर्य कहाँ है, उसकी परछाई आसपास नहीं बनती, प्रातः सांझ मध्य दोपहर में कहीं भी कोई परछाई नहीं, मैं वहाँ था। अब ध्यान दें, सारी चीजें जो उन्होंने की और सामर्थ्य जो उनके पास थी, और क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वर्षा कभी नहीं हुई थी और आकाश में कुछ नहीं था कि वर्षा होती। संसार में कैसे उस व्यक्ति ने संदेश को पाया, उसने नहीं किया, ये यही था। परंतु जैसे नू नाव के दरवाजे पर खड़ा हुआ और लोगों को आने वाले विनाश के लिए चेताया, ऐसे ही आज नया जन्म प्राप्त सुसमाचार प्रचारक भी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। मसीह यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा छिपा हुआ है, लोगों को आने वाले विनाश के लिए चेतावनी दे रहा है। निश्चय ही जैसे नूह के दिनों में था, यहाँ हम इस दिन में खड़े हुए हैं। अब विज्ञान कैसे कह सकता है वर्षा वहाँ से आती है, परंतु आप देखिए परमेश्वर को मालूम था कि वहाँ कैसे वर्षा लाए। वो या तो भूचाल ले आया था, किसी के पास परमाणु शक्ति है वे इसे फेंक दे और पृथ्वी के एक भाग को नष्ट कर दे और ये पृथ्वी को पीछे हटा दे, कक्षपथ से बाहर कर दे, और अब ये पीछे की ओर झुकती है। और उन्होंने ये किया तो पृथ्वी का ताप और पृथ्वी की ठंडक सूर्य से और सूर्य से दूरी के कारण इस पर बादल आ गए। वो यहोवा यिरे है, वो अपने लिए कुछ भी उपलब्ध कर सकता है, कोई भी चीज जो उसके वचन ने कहा। अब वो अपने लिए कलीसिया उपलब्ध कर सकता है, उसे मुझे लेने की आवश्यकता नहीं, उसे आपको लेने की आवश्यकता नहीं, उसे नहीं है, उसे इसे लेने की आवश्यकता नहीं, वो किसी और को आपका स्थान दे सकता है। सावधान रहें, कोई आपका ताज ना ले ले, उसे आवश्यक नहीं है कि वो हमें ले, परंतु हमें उसे ही लेना है। आप निरंतर जीवित रहते हैं तो आपको उसे लेना ही है, क्योंकि केवल वही है, जैसा कि पत्रस ने कहा जब उसने कहा क्या तुम सब ऐसे जाते हो, जब उसने उन्हें सत्य बताना ही था, जब वो उनके सब रोगियों को चंगा कर रहा था, वो महान व्यक्ति था। ओ, जब उसने चिन्ह और चमत्कार किए, वो एक महान व्यक्ति था। परंतु जब उसने उन्हें सत्य बताना आरंभ किया, तब क्या हुआ? फिर हठधर्मी हो गया, वे उसे छोड़कर चले गए। वो चेलों की ओर घूमा, दुश्मन रहे, वो बहुत ही स्वाधीन था क्योंकि वो परमेश्वर था। उसने घूमकर कहा, तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि तू ही है जिसके पास अनंत जीवन का वचन है। हम इसमें निश्चित हैं, समझे? इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। हम निश्चित हैं कि आप ही हैं जिसके पास ये है। हम हर शिक्षा की बयारों से बहकाए हुए नहीं हैं। हम जानते हैं कि तेरे पास अनंत जीवन के वचन हैं, क्योंकि कोई मनुष्य उन कार्यों को नहीं कर सकता जो तू करता है, जब तक कि परमेश्वर उसके भीतर ना हो। ये ठीक बात है, उसके साथ ना हो। निकोदीमस ने यही टिप्पणी की। अब हम कहें कि नू क्या स्वर अनिश्चित है? नू सुन रहा था, नहीं श्रीमान, ये ठीक बात है। हमारा बाढ़ से पहले का विनाश, इसने सारे संसार को नष्ट कर दिया, और परमेश्वर ने पानी वैसे ही भेजा जैसे उसने कहा। क्यों? क्या परमेश्वर के वचन ने ऐसा कहा? विज्ञान डूब कर नष्ट हो गया? इन बातों को देखें। जिसने नूह को बचाया, उसी ने उसके आलोचकों को मार डाला। क्या आपको ये मालूम है? उसी पानी ने, यदि वहाँ पानी नहीं होता तो नूह नहीं बच सकता था। नाव ही थी जो तैर गई, उसी चीज ने जिसने नाव को तैराया उसके आलोचकों को डुबा दिया। और आज वही पवित्र आत्मा जिसका लोग उपहास उड़ाते हैं, ये कलीसिया को बचा लेगा और आलोचकों को दोषी ठहराएगा। देखिए, वही चीज, बिल्कुल वही चीज जो बचाता है मारता है, जो विश्वासी को बचाता है अविश्वासी को दोषी ठहराता है। ये ठीक बात है। इसलिए आप देखिए, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए। यही एक चीज है जिस पर आप खड़े हो सकते हैं और जानते हैं कि ये निश्चित है। जो परमेश्वर कहता है निश्चित है, बस इसका विश्वास करें। अब हम दूसरे व्यक्ति को लें, मूसा के दिनों में। अब मूसा शिक्षा योजना में होते हुए परखा गया, सैनिक योजना में होते हुए यत्न किया कि इसराइल को स्वतंत्र कराए, क्योंकि वो जानता था कि वो ये करने के लिए जन्मा था और वो घड़ी उसके लिए करने की थी। उसने अपनी विधि से यत्न किया, उसकी शिक्षा और अपना बड़ा समाज बनाया था या कुछ और, इसमें सैनिक विचार बनाया और अपनी ही नीति शास्त्र में वो असफल हो गया। अब ध्यान से सुने, परंतु एक दिन परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी के द्वारा पकड़ लिया। और देखिए, परमेश्वर ने इस व्यक्ति के साथ कितना तर्क संगत किया। अब परमेश्वर ने उसे जलती झाड़ी के पास खींचा और उसने उससे बातें की। अब इसके पहले परमेश्वर ने उससे कभी भी बात नहीं की, उसने इसे पुस्तकों में सीखा था, इसलिए परमेश्वर ने उससे बातें की। यही कारण है कि नूह जान गया कि वो किस विषय में बातें कर रहा था। परमेश्वर ने उससे बातें की, इसलिए वो जान गया, उसने ये परमेश्वर से सुना था, समझे? और अब एक दिन जब मूसा प्रशिक्षित तैयार हो, क्या वो विद्वान था और क्या वो एक सेना का व्यक्ति था, और उसने सोचा, मेरी सारी छात्रवृत्ति, मेरे पास पीएचडी, डीडीडी, डबल एलडी और जितनी डीडी सोची जा सकती थी, परंतु अब निश्चय मैं जान जाऊंगा कि इसे कैसे करूं, क्योंकि मैं मिस्र की बुद्धि हूं। मैं चिंता नहीं करता आप कौन सी बुद्धि के हैं, इसका लाभ नहीं। जब ये परमेश्वर की बात आती है तो ये मूर्खता, आपकी परमेश्वर के लिए बुद्धियाँ मूर्खता हैं, समझे? क्योंकि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से ऊंचे हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं, परमेश्वर ने कहा, समझे? इसलिए आपकी सबसे अच्छी बुद्धि, जैसे पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे पास लुभाने वाली बातों के साथ प्रचार करने नहीं आया जैसे कि बुद्धि करती है, क्योंकि यदि मैं ये करता तो तुम्हारी आशाएं बनती। अब पौलुस कर सकता था क्योंकि वो तेज व्यक्ति था, उसने कहा, मैं ये कर सकता था, परंतु ये क्या था? तुम मनुष्य की विचारधारा पे निर्भर करते, परंतु मैं तुम्हारे पास सामर्थ और पुनरुत्थान में पवित्र आत्मा के साथ आया ताकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में हो। आप इसी स्थिति में हैं, क्योंकि ये अनिश्चित स्वर है दूसरा वाला, परंतु ये निश्चित सत्य है। तो फिर नूह के पास, मुझे क्षमा करें, मूसा ने अनिश्चित स्वर के साथ यत्न किया, उसका नीति शास्त्र, उसकी शिक्षा, ये अनिश्चित थी, परंतु एक दिन उसने निश्चित स्वर सुन लिया। ओह, अब मुझे धार्मिक अनुभूति हो रही है। हाँ, उसने निश्चित स्वर सुन लिया क्योंकि उसने झाड़ी में ज्योति को देखा। अपने जूते उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। उसने कहा, मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है और मैंने अपना वचन स्मरण किया है, आमीन। इस विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। मुझे स्मरण है कि मैंने इसहाक और याकूब और अब्राहम को क्या बताया, और वे सारे, मुझे अपनी प्रतिज्ञा स्मरण है, मैं उन्हें नहीं भूलता। उन लोगों को चिल्लाना देखता हूँ और समय समीप है। मैं तुम्हारे पास मूसा को भेजने वाला हूँ। मूसा ने कहा, मैं कैसे कभी वापस जा सकता हूँ? सुन, निश्चय ही मैं तेरे साथ होऊंगा। इस विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग होऊंगा, समझे? और मैं तेरे साथ होऊंगा। इस विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, मैं तेरे साथ होऊंगा। उसने यहोशू को वर्षों बाद बताया, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ होऊंगा। मैं कैसे उन बड़े बड़े नगरों को जो बड़ी बड़ी दीवार के हैं लूंगा? ये तेरे समझने के लिए नहीं है। मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ होऊंगा, और जहाँ कहीं भी तेरे पैर पड़ेंगे वो तेरा है। बस चलता रहे, समझे? तेरे जीवन भर तेरे सामने कुछ भी न ठहरेगा। इस विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, मैं तेरे साथ होऊंगा। निश्चय ही मैं तेरे साथ होऊंगा, परमेश्वर ने मूसा से कहा। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, जब मनुष्य परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, व्यक्तिगत परमेश्वर का वचन सुनता है, अब आप इसे सुन सकते हैं। आप कहते हैं परमेश्वर को मुझसे मिलने के लिए आना है। जी हाँ श्रीमान, मैं यहाँ बैठकर प्रचार कर सकता हूँ जब तक मैं प्रचार मंच पर गिर ना जाऊँ। अब से 10, 20, 30, 50 वर्षों आप कभी भी नहीं सुनेंगे जब तक परमेश्वर वचन को आप पर प्रकट ना करे। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं, आपको जलती हुई झाड़ी के पास नहीं जाना है। संभव है जितना आप सोचते हो आप उससे अधिक उसके समीप हों। बस वहीं बैठे रहें और वचन में परमेश्वर को आपसे बातें करने दें। मुझे जो जीवन में जी रहा हूँ इसे छोड़ना है, मुझे ठीक होना है। ये परमेश्वर है, परमेश्वर अपने वचन में है, स्वयं को आप पर प्रकट कर रहा है। मुझे अपना जीवन परमेश्वर के संग ठीक बनाना है। ये परमेश्वर है, निश्चय ही ये परमेश्वर है। किसी दिन मुझे मरना है, निश्चय ही आप एक दिन मरने जा रहे हैं। मुझे न्याय के दिन उत्तर देना है, निश्चय ही आप न्याय में उत्तर देने वाले हैं। तब आपका न्याय कहाँ है? वहाँ उस सिंहासन के सामने जहाँ आपके लिए दया नहीं है, या यहाँ सिंहासन पर जहाँ आप पर अनुग्रह? अब चुनाव आपका है। ये अदन वाटिका के वृक्ष के समान है, एक जीवन का है एक मृत्यु का है। इसे छोड़ दें क्योंकि वहाँ आप मरते हैं, अब इसे लें और आप जीते हैं। अब आप न्यायी हैं, देखिए आप हैं जिसे करना है। अब आप न्यायी हैं, परंतु तब वो न्यायी होगा। अब आप न्यायी हैं, भले ही आप चाहें या नहीं, तब वो न्यायी होगा, भले ही आप स्वीकार करें या नहीं। इसलिए आपको अपना निर्णय लेना है, आप क्या करना चाहते हैं, परंतु ये आप पर निर्भर है। हर व्यक्ति आदम और हवा के समान, हर व्यक्ति के सामने यही और सही गलत है, और आपको अपना निर्णय लेना है। निश्चय ही मैं तेरे संग होऊंगा, मैं कैसे वापस जाऊंगा और अपने स्वामी को बताऊंगा कि मैं बच गया हूं और पवित्र आत्मा से भर गया हूं? निश्चय ही मैं तेरे संग होऊंगा। मैं कैसे कभी अपने पति को बताऊंगी कि मैं अपनी नीचता को छोड़ने जा रही हूं? मैं कैसे कभी ये करने योग्य होंगी? निश्चय ही मैं तेरे संग होऊंगा। मैं कैसे अपनी पत्नी को बता सकता हूं कि मैंने गलत जीवन बिताया, मैंने गलत कार्य किए? मैं कैसे कभी ये कर सकता था? मैं किसे फिर से अपने परिवार को के सम्मुख खड़ा हो सकता हूं? वे कैसे कभी मेरा विश्वास कर सकते हैं जबकि वे ये जानते हैं कि मैं श्रापित और रो चुका हूं और वे कार्य कर चुका हूं जो कि किए, और वापस जाकर उन्हें बताता हूं कि मैं एक मसीही हूं? निश्चय ही मैं तेरे साथ होऊंगा, परमेश्वर ने कहा। ये आपसे वो कार्य करवा लेगा जो आप सोचेंगे नहीं। मूसा को देखिए, कैसा उग्र कार्य करवा लिया उसने। क्या किया वो 80 वर्ष का पुरुष? आप कहते हैं भाई बंडा, मैं अंधेड़ आयु का हो रहा हूँ, एक बूढ़ा व्यक्ति, या चिंता नहीं कि आपकी कितनी आयु के हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उस दिन परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए बहुत शांत कर सकता है और आप उसका वचन सुन सकते हैं। वही दिन है कि वो आपसे बातें कर रहा है, आपकी आयु से कोई मतलब नहीं। मैं कैसे कभी ये कर सकता हूँ भाई वर्णम? मूसा को देखिए, 80 वर्ष का, मिस्र ने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी, उनके पास उनकी सेना के सारे भेद और सारी चीजें उनके अपने हाथों में थी, और मूसा ने अपनी पत्नी को छोटे खच्चर पर टांगे इधर उधर करके बैठाया और गोरशोम को उसकी जांग पर बैठाया, और अगली प्रातः वो अपनी टेढ़ी मेढ़ी लाठी हाथ में लिए जाता है और सफेद दाढ़ी इस प्रकार से लटक रही थी, संभव है उसका गंजा सर इस प्रकार से चमक रहा हो, और ये खच्चर वहाँ से जा रहा था, इस पुराने खच्चर को खींचता हुआ जा रहा था। वो चिल्ला रहा था, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। कोई कहता है मूसा तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्र को जा रहा हूँ उस पर विजय प्राप्त करने। कितना विचित्र है, परंतु जब एक व्यक्ति परमेश्वर से बात करता है और स्वयं में परमेश्वर की आवाज को पाता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यूहन्ना 15, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तुम जो चाहो मुझसे मांगो और ये तुम्हारे लिए होगा। समझे? कुछ भी अनिश्चित नहीं है, ये ठीक बात है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। मूसा कैसे आप? मूसा परमेश्वर से कह सकता है, मैं ये कैसे करने जा रहा हूँ? एक मनुष्य का आक्रमण मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति 80 वर्ष का, और मैं कैसे करने जा रहा हूँ उस लाखों लोगों की बड़ी सेना और उन पर विजय प्राप्त करना? निश्चय ही मैं तुम्हारे संग होऊंगा। कुल मिलाकर उसे यही जानना था। यहाँ वो जाता है, वो नीचे जा रहा है, और उसने ये ले भी लिया। क्यों? वो निश्चित था, जो स्वर उसने सुना वो सही था, और जो आवाज आज प्रातः आपने सुनी ठीक है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इब्री बालक आग की भट्टी पर, उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि वे बचा लिए जाएंगे? उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें बचाने के योग्य है। उसने ये पहले कभी नहीं किया था। वो हमें आग की भट्टी से बचाने के योग्य है, परंतु फिर भी हम निश्चित हैं कि वो योग्य है। इस विषय में हमें कोई अनिश्चितता नहीं है। हम केवल जान गए उसकी इच्छा, परंतु जो भी है, हम तेरी मूरत के सामने सिर नहीं झुका रहे हैं। हम बाहर उस झुंड में नहीं जा रहे हैं। हम उन सिगरेटों को नहीं पिएंगे, हम उस शराब को नहीं पिएंगे, हम उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम अपनी पत्नियों के ऊपर और निर्भर नहीं करेंगे अपने पतियों पर। हम निश्चित हैं परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। अच्छा, यदि आप कहते हैं तो वे आपको बैंकों खेल से बाहर निकाल देंगे, वे आपको ताश की मंडली से बाहर निकाल देंगे, महिलाओं की सहायक, मैं चिंता नहीं करता, वे मेरे साथ क्या करेंगे? परमेश्वर मुझे छुड़ाने योग्य है। आप जानते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं। वे तुम्हें पुराने समय का कहेंगे, अपने बालों को फिर से बढ़ने दें। यदि आप ये करते हैं, वे लंबे वस्त्र पहनते हैं और महिलाओं को समान व्यवहार करते हैं। आप जानते हैं वे क्या करने जा रहे हैं। वे तुम्हें पुराने जमाने का कहेंगे। मैं चिंता नहीं करता वे क्या करते हैं, परंतु परमेश्वर मुझे छुड़ाने योग्य है। और यही बात है कि मैं आज इसके पीछे हूँ। परमेश्वर मुझे छुड़ाने की योग्य है, बस। अच्छा, यदि आप अगली गर्मियों में छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं, तो सूजी क्या कहने जा रही है? मुझे चिंता नहीं है सूजी क्या कहती है। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि सूजी की बात अनिश्चित है, परंतु परमेश्वर ठीक है। ये निश्चित स्वर है, इसलिए उसने उन्हें बचाया। अब्राहम कितना निश्चित था, 25 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात उस बालक के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो उसे देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? अब्राहम एक बूढ़ा मनुष्य, अपने लोगों में अच्छा मानने, और एक दिन परमेश्वर उससे बोला, कहा कि अब्राहम, मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाने जा रहा हूँ, अब तेरा नाम बदलने जा रहा हूँ और तुझे अब्राहम पुकारूंगा, अब्राहम से अब्राहम, मैं सारे से सारा पुकारूंगा, SARRA से SARRAH राजकुमारी, और मैं उसका नाम बदलने जा रहा हूँ। और अब तुम दोनों आइए देखें, अब्राहम तू 75 वर्ष का है और 65 की है। तू उसके साथ तब से रह रहा है जब वो 16-17 वर्ष की थी, क्योंकि वो तेरी रिश्ते की बहन है, और तू उसके साथ इस सारे समय रहा जब वो छोटी लड़की ही थी। तूने उसे ब्याया और अब भी तेरे पास कोई बालक नहीं है, परंतु मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं तुझे एक बालक देने वाला हूँ। और अब्राहम, क्या तू मेरा विश्वास करता है? हाँ प्रभु, मैं तेरा विश्वास करता हूँ। अच्छा, अब वे कहने जा रहे हैं कि तू पागल है। ओ, ये ठीक है प्रभु, ये ठीक है, तू उन्हें बता दे कि तेरे बालक होने वाला है। ठीक, वो घूमता फिरता है और सारा को साथ लिए है। कहा, प्रिय, तू क्या जानती है कि हमारे बालक होने वाला है? क्या, एक बालक? हाँ, आप कैसे जानते हैं? परमेश्वर ने ऐसा कहा है। आमीन, ये ठीक बात है, तो प्रिय हमें मिलने वाला है। अच्छा, अब आप जानते हैं मैं क्या करने जा रही हूँ। आप मुझे थोड़े से पैसे दें, मैं जाकर छोटे छोटे जूते खरीद के लाती हूँ। मैं कुछ खिलौने और कुछ पीने लेने जा रही हूँ, और इस बालक के लिए हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब वो आने वाला है। जी हाँ श्रीमान। इसलिए वो नीचे दुकान पर गई, और मैं सुनता हूँ वे नीचे डॉक्टर के पास गए और कहते हैं, डॉक्टर, आप जानते हैं क्या, मैं चाहता हूँ कि आप अस्पताल में तैयार रहें, हमारे बालक होने वाला है। ओहो, आपने अपना नाम बताया था, अब्राहम। हाँ 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 श्रीमान, मुझे क्षमा करें, आज मैं जल्दी में हूँ, आप समझिए। पीछे जाकर कहता है, अरे तुम इस बूढ़े के मस्तिष्क की जांच के लिए किसी विशेषज्ञ को भेजो। क्यों? ये 75 वर्ष का है और वो बेचारी बाहर शॉल ओढ़े बैठी है जैसी कि दादी है। कहा कि उसे बालक होने वाला है। क्यों, क्या ये उस तेरा का पुत्र नहीं है जो शिनार से आया था, जो वहाँ मीनार पर था? क्या ये वो नहीं है? क्या ये उसका पुत्र नहीं है? हाँ, वो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति सूरज में बहुत घूमता फिरा, उसे लू लग गई है, वो थोड़ा पागल है, समझे? हाँ, परंतु ये अनिश्चित स्वर है, परंतु अब्राहम के पास निश्चित स्वर था, परमेश्वर ने ऐसा है। अच्छा, अधिकारी कहते हैं वो ईमानदार बूढ़ा व्यक्ति रहा है। मुझे मालूम है बहुत सी बार वो विधवाओं को चीजें देता है, और वो चीजें देता है वे, और वो बहुत दया करती है। मैं उन्हें बंद नहीं कर सकता या कुछ भी। हम उन्हें बाहर पेड़ से ना बांधे, उन्हें झाड़ झंकारों में और इस प्रकार की चीजों में, उनकी दशा और खराब हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि हम उन पर दृष्टि रखेंगे, आप जानते हैं, और उन्होंने उनकी चौकसी आरंभ कर दी। ओहो ओहो, क्या ही अनिश्चित स्वर है। परंतु अब्राहम जानता था कि वो स्वर निश्चित था, इसलिए उसने कहा, पहला महीना बीत गया, प्रिय तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, कोई अंतर? अब स्मरण रखें, आप महिलाएं 28 दिन, वो समय इसका बहुत पहले बीत चुका था, लगभग 40 वर्ष की, और यहाँ अब वो 65 की है। प्रिय तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे प्रिय, कोई अंतर नहीं, परमेश्वर की महिमा हो, जो भी है हमें मिलने वाला है, कुछ भी निश्चित नहीं है, निश्चय ही मैं पक्का हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं निश्चित हूँ हमें मिलने वाला है। अब्राहम, तुम कैसे जानते हो कि हमें मिलने वाला है? परमेश्वर ने ऐसा कहा है, जो भी है हम पाने वाले हैं। ठीक है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, पहला वर्ष, प्रिय अंतर अनुभव हो रहा है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, ठीक है, परमेश्वर की महिमा हो, जो भी है पाने वाले हैं। अब्राहम, मैंने सुना है कि तुमने कहा कि तुम एक बालक होने वाला है, ही ये अनिश्चित स्वर है, समझे? परंतु अब्राहम ने एक स्वर सुना हुआ था जिसमें ये सब डूब गया था। परमेश्वर की महिमा हो, मैं चिंता नहीं करता मुझे कितनी प्रतीक्षा करनी है, जो भी है पाने वाला हूँ। अब्राहम तुम कैसे जानते हो? परमेश्वर ने ऐसा कहा है। अब वो परमेश्वर तुझसे बातें करने को नीचे आया था? हाँ। तुम कैसे जानते हो? मैं भी उसको सुनूं। उसने मुझसे बातें की हैं, न कि तुझसे। ठीक है, आगे बढ़ो। कहा तुम पुराने अविश्वासी, आगे बढ़ो। जो भी हो तुम विश्वास नहीं करते हो, मैं उसका विश्वास करता हूँ। देखिए, इसलिए आगे बढ़ते रहो। यही है, जो भी है बालक पाने जा रहा हूँ। 25 वर्ष बीत गए, परंतु उसके पहले वो समय आए वे हा 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 ही करें। परमेश्वर ने कहा, आप जानते क्या, मैं तुम्हें उनसे अलग ले जा रहा हूँ। अपने सारे कपड़े और चीजें बांध ले और तैयार हो जाएं, बाहर निकले और स्वयं को अविश्वासियों के झुंड से अलग कर लें। मैं तुम्हें वहाँ एक छोटी सी कलीसिया देने जा रहा हूँ। कुछ लोग तुम पर विश्वास करेंगे। उस पुराने ठंडे नामधारी से अलग हो जाएं। यहाँ बाहर आकर मेरे साथ अकेला चल। जब तक परमेश्वर ने पूरा ना कर लिया, उसे आशीषित नहीं किया। स्वयं को सारे अविश्वासियों से अलग कर लिया, और वो आपको कभी भी आशीषित नहीं करेगा जब तक कि आप भी वैसा ही नहीं करेंगे। उन सारे अंधविश्वासियों को अपने से अलग कर लें, और संभव है ये ऐसा ही है और हो सकता है ये नहीं है। यदि आज प्रातः आप प्रार्थना करवाने आए हैं तो आप वास्तविक विश्वास के साथ आएं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है और ये तय हो गया। यही है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, बस इसका यही है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उसने ये कहा है और ये तय हो गया। इस विषय में कोई विवाद नहीं, सोच नहीं। ठीक है। अब 25 वर्ष बाद और अब्राहम अब बूढ़ा व्यक्ति हो गया। वो 100 वर्ष का हो गया था और सारा 90 वर्ष की। अब इस पर सोचें, छोटी सी दादी एक शॉल कंधों पर ओढ़े हुए, एक छोटी धूल से बचने के लिए टोपी, और दादा, अब जानते हैं इस प्रकार से प्रिय तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है। कोई अंतर नहीं, जो भी है पाने जा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। एक दिन उसने देखा वहाँ 3 व्यक्ति चलते हुए आ रहे थे। वे बैठ गए, उनमें से 2 सादोम में चले गए कि प्रचार करें। उसने कहा, अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है? ओ प्रभु, अब स्मरण रखें, यीशु ने कहा तू जानता है कि ये एक बार फिर होगा। वही सरदूत, उसने पहचान लिया कि वे सरदूत थे, समझे? उसने वो स्वर सुना था। जब उसने उस व्यक्ति को बोलते हुए सुना था, उसमें कुछ था कि वो पहचान गया, वो वही स्वर था, समझे? वो जान गया कि वो वही था। उसने कहा, सारा फुर्ती से भीतर गई, कहा, प्रिय वहाँ जल्दी से पहुँचो, जल्दी से चूल्हे पर से राख हटाओ, कुछ गूंद लो, पचर लो और पुरानी छलनी में डालो। आपको उनकी याद है? कुछ आटा छानो। कितने कैंटीन आपको ये स्मरण है? ठीक है, आपको चाहिए। मैंने देखा है माँ उसे लेकर पीटती थी, डन डन डन, और उसे रगड़ती और रगड़ती और डन 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 उस आटे को हिलाती, हमारे लिए रोटी तैयार करती, और तब तलने वाले बर्तन में पतले पतले मांस को उबालती, आप जानते हैं, या रोटी के बर्तन में, और उसमें चिकना डालती और काली आंख वाली मटर, हरी शलगम, बहुत अच्छा खाना। तब इस प्रकार से जब सेब की शराब तेज होकर और सिरका बनती है, आप जानते हैं, और उसके ऊपर से सारी फफूंदी हटा देते हैं, उस पर थोड़ा सा सिरका डालते हैं, ये अच्छा है। तब फिर मैं देखता हूँ सारा इन रोटियों को बना रही है इस पत्थर पर। जैसे अब्राहम बाहर निकला और देखने लगा वो कहाँ से छोटा मोटा बछड़ा ले और उसे मारा, तैयार करके भीतर लाया, बाहर गया, कहा, इस व्यक्ति में कुछ है, मैंने इस आवाज को पहले सुना है, मैं जानता हूँ इसके सारे कपड़ों पर धूल है, और आदि आदि। वो वहाँ बैठा अपना मुंह पोछ रहा है, इस प्रकार से चारों ओर देख रहा है। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस आवाज को जानता हूँ, क्योंकि ये आवाज अनिश्चित नहीं है, क्योंकि मैंने इस आवाज को 25 वर्षों पहले सुना है। और प्रिय, हमने इस सारे समय विश्वास किया कि विश्वास करें, और इस व्यक्ति के विषय में कुछ है, मैं नहीं जानता क्यों, परंतु इसमें कुछ है, मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, इसलिए जब वो बाहर गया, उसने मक्खी वाला झाड़ लिया और सारी मक्खियाँ उड़ाई, आप जानते हैं, और जब वे खा रहे थे वहाँ थोड़े समय के लिए बैठा, इसलिए थोड़ी देर बाद उनमें से 2 नीचे सादोम की ओर देख रहे थे और वो नीचे गए। तब वे आधुनिक प्रचारक नीचे वहाँ सुसमाचार प्रचार करने गए। इसलिए अब्राहम वहाँ इस व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था और उसने अपनी पीठ तंबू की ओर फेर ली। उसने कहा, अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कहा, वो आपके पीछे तंबू में है। कहा, जीवन के समय के अनुसार मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो मैंने तुझसे की थी। तब वो जान गया कि ये निश्चित स्वर है। क्या हुआ? तुरंत ही सरदूतों के जाने के पश्चात सारा युवा स्त्री हो गई, सुंदर, पीछे को झटका दिया। क्या दर्शा रही है? वो अब्राहम के प्रत्येक वंश को करने जा रहा है। वो बूढ़ी दादी युवती हो गई और अब्राहम उसकी पीठ से कुबड़ हट गया और सफेद दाढ़ी चली गई और वो फिर से युवा पुरुष हो गया। और उन्होंने एक छोटी यात्रा की गरार की ओर 300 मील, और जब वे वहाँ पहुँचे, वहाँ फिलिस्तीनी देश का राजा अबीमेलेक एक पत्नी ढूंढ रहा था, और वो आसपास उन फिलिस्तीन की सुंदर महिलाओं को ढूंढ रहा था जो कि सुंदर थीं। इसलिए उसने चारों ओर फिलिस्तीन की सारी सुंदरी महिलाओं को देखा, कहा, मैं एक को भी नहीं ले सकता, जो भी है दूसरी, मैं बस एक दिन उसने सारा को आते देखा, 100 वर्ष की छोटी दादी। उसने कहा, यही है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, वो यही है। इसलिए उसने उसे लिया कि उससे विवाह करे, और परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ स्वप्न में, उससे कहा, तूने उसे लिया है? कहा, वो मेरे भविष्यद्वक्ता की पत्नी है। कहा, तू एक मरे हुए मनुष्य के समान है। कहा, प्रभु तू मेरी सच्चाई को जानता है, इस विषय में अनिश्चितता नहीं है। उसने कहा, तू उसे वापस कर दे, जो भी प्रार्थना तू मुझसे करेगा मैं नहीं सुनूंगा, इस विषय में कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता है, तू उसे वापस फेर दे, क्योंकि मैं उसे थोड़े पैसे की आवश्यकता थी, इसी कारण ये सब हुआ। इसलिए कि उन्हें पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए तू जाकर उसे फेर दे, उसकी पत्नी उसे दे दे, यदि तू ऐसा नहीं करता है तो तू मरे हुए के समान है। इस विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हर गर्भ की हर चीज जो उसके पास थी बंद कर दिया। ये बिल्कुल ठीक बात है। वो बाहर गया और कहा, अब्राहम तूने ये क्यों किया? कहा, क्यों? वो मेरी बहन है, जैसा मैंने बताया वो थी, परंतु कहा, वो अब मेरी पत्नी हो गई। तब आगे बढ़ा, अब वो क्या था? तब जब वो छोटा बालक उत्पन्न हुआ, इतने वर्षों के पश्चात जब वे फिर बदल गए, परमेश्वर ने कहा, एक दिन कहा, उसे पहाड़ पे ले जाकर उसका गला काट दे। ओ प्रभु, उत्पत्ति 22, वो इस छोटे बालक को वहाँ ऊपर ले गया और छोटे इजाक को लिया। वो छोटा बालक नहीं था, वो लगभग 14 वर्ष का था। उसके छोटे घुंघराले बाल इस प्रकार से पीछे थे, और चाकू निकाला, बूढ़े बाप का कांपता हुआ हाथ, कोई संदेह नहीं, कठिनाई से सटक रहा था, गला सूख रहा था। आप जानते हैं, मेरा एक ही पुत्र, मैंने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, मेरे कभी भी पुत्र नहीं था, उसे देखो, यहाँ ये मेरा एक ही पुत्र है, बेचारा छोटा लड़का, परंतु परमेश्वर आपने मुझसे करने को कहा है, मैं आपके वचन पर विश्वास करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता आप कैसे करने जा रहे हैं, परंतु प्रभु आपने इसे मुझे दिया, जैसे कि मरुओं में से। अब यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, इब्रानियों 11:17-19, हम जरा इसे निकालें और फिर हम इसे लेंगे। इब्रानी 11:7-19 तक हम बंद करने जा रहे हैं, एक मिनट, 11:17, ठीक है। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, उसने विचार किया, 19वां पद, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरुओं में से जिलाए, तो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। अब्राहम ने कहा, प्रभु यदि तू पीछे, वहाँ जब मैं बांझ थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पापी थी, और तूने मुझे कुछ बना दिया, तूने मुझसे प्रतिज्ञा की है, और ये यहाँ पर है, आपने मुझे पुत्र दिया, और उसके आने के लिए मैंने 25 वर्ष प्रतीक्षा की, और अब 14 वर्ष बाद, क्यों? ये एक नवयुवक है, अपनी माँ के हृदय का घमंड, मैं इसे घर से ले आया, माँ इसे नहीं समझेगी, परंतु मैं आपको समझता हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपकी आवाज सत्य है। अब आपने मुझसे कहा कि इसे बलिदान चढ़ा, इसे मार, और आपने मुझे बताया कि मेरे द्वारा मैं बहुत से राष्ट्रों का पिता होऊंगा, इस लड़के के द्वारा, कि आप इस लड़के को ले लेंगे, और इसके द्वारा जब आपने मुझसे प्रतिज्ञा की और मांस के टुकड़ों को अलग अलग किया था उस दिन, और वो सफेद ज्योति उनके बीच में से होकर निकली, आपने मुझसे प्रतिज्ञा की, उसके अनुसार ये बालक यहाँ पर है कि तू अपने ही पुत्र का पालन करेगा, आमीन, तू अपना ही पुत्र उत्पन्न करेगा, मेरे ही पुत्र के वंश के द्वारा तेरा अपना पुत्र होगा, मेरे ही पुत्र के द्वारा तेरा अपना पुत्र होगा, और वो सारे राष्ट्रों को बचाएगा। प्रभु मैं नहीं जानता कि तू इसे कैसे करने जा रहा है, ये मेरा काम नहीं है, परंतु मैं इसकी निश्चितता को जानता हूँ, मैं तेरी प्रतिज्ञा की निश्चितता को जानता हूँ, और मैंने प्रेरित होकर लिया है, और मैं उसे जैसे मरुभूमि में से प्राप्त करूंगा, और मैं पूरी रीति से विश्वास कर चुका हूँ कि तू योग्य है कि उसे मरुभूमि में से जिलाए। यदि मैं उसे मारता हूँ तू उसे फिर से जिला सकता है, प्रभु मैं तेरा वचन लूंगा। चाकू खेचा, कहा अलविदा इसहाक, उसे चूमा, पीछे खेचा, और तब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम एक मिनट रुक, मैं जानता हूँ कि तू मुझ पर विश्वास करता है, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है, अपने हाथ को रोक। उस समय लगभग उसने अपने पीछे किसी को सुना, देखा, और एक मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ था। वो मेमना कहाँ से आया? वो बस्ती से 100 मील दूर पीछे जंगल में था, जहाँ सिंह, भेड़िए, गीदड़ और वे सारी चीजें इस प्रकार की जो भेड़ को मार डालें, और वो वहाँ पहाड़ की चोटी पर था, जहाँ पर न पानी, वहाँ कुछ भी नहीं था कि भेड़ जीवित रह सके, और वो एक मिनट पहले वहाँ नहीं था, पीछे देखा और वो वहाँ पर था, अगले मिनट वहाँ यहोवा येरे, परमेश्वर ने कहा। अब्राहम ने ऊपर देखा, कहा, तू यहोवा येरे है, यहोवा येरे का अर्थ है आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप कहते हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं वो हो जाता है, आप ये बनाने के योग्य हैं। उसने क्या किया? उसने भी वही आवाज सुनी जो मूसा ने सुनी थी, जब वहाँ आकाश से पानी कैसे लेगा मैं नहीं जानता, परंतु वो यहोवा येरे है, वो ऊपर भी पानी को ला सकता है। वो कैसे एक मनुष्य को पृथ्वी पर से उठाकर और उसे महिमा में ले जा सकता है मैं आपको नहीं बता सकता। हम भारी हैं, मेरा वजन 150 पाउंड का है, मेरा वजन 200 पाउंड का है, मैं चिंता नहीं करता तुम्हारा कितना वजन है, वो यहोवा येरे है। वाहन कैसे आ रहा है मैं नहीं बता सकता, परंतु वो समय आएगा तो उसके पास वाहन होगा। ये मेरा अश्वेत मित्र जो वहाँ पर बैठा इस प्रातः उसके ऊपर कह रहा हूँ। नीचे दक्षिण में एक अश्वेत व्यक्ति ने बगल में बाइबल दबा रखी थी, उसने कहा, और उसका साहब उसका उपहास उड़ा रहा था क्योंकि उसने कहा कि उसका धर्म हृदय को छूने वाला है। उसने कहा, हृदय को छूने वाला जैसा कोई धर्म नहीं है। उसने कहा, साहब आप में एक घटी है, आपके पास हृदय छूने वाला धर्म जैसी कोई चीज नहीं है जहाँ तक आप जानते हैं, समझे। परंतु उसे भिन्न मालूम था। कहा, तुम इस बाइबल का क्या करते हो, तुम पढ़ नहीं सकते? कहा, मैं इसका विश्वास करता हूँ, मैं इसके बिंदु से बिंदु तक का विश्वास करता हूँ और बिंदु का भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि उसने कहा कि इस पर पवित्र बाइबल लिखा हुआ है। कहा, मैं समझता हूँ आप इन सारी कहानियों का विश्वास करते हैं। कहा, हाँ श्रीमान। कहा, मैं परमेश्वर ने कहा उसका विश्वास करता हूँ और हर बात जो परमेश्वर मुझे बताता है मैं विश्वास करता हूँ। उसने कहा, अब सुनिए सांबो, आप ये नहीं कर सकते। कहा, अब क्या हो यदि परमेश्वर आपसे कहे इस पत्थर की दीवार के पार कूद जाओ, क्या आप ऐसा करेंगे? उसने कहा, हाँ श्रीमान, उस पत्थर की दीवार के पार छलांग लगा दूंगा। उसने कहा, तुम पत्थर की दीवार के पार कैसे चले जाओगे जिसमें छेद भी ना हो? कहा, यदि परमेश्वर मुझे कूदने को कहे तो जब मैं वहाँ पहुँचूंगा वो छेद कर देगा, इसलिए ये ठीक है, ये ठीक बात है। परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखता है, इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। जब परमेश्वर की तुरही की आवाज़ आपके कानों में आती है, सुसमाचार की तुरही जो निश्चित है, आमीन, उसी के साथ बने रहें। ओह, ये निश्चित है। क्यों ये सारे लोग अब हमारा समय बीत रहा है, बस एक और टिप्पणी या दो वचन यहाँ मैं सोचता हूँ मैंने लिख रखे हैं। क्यों सब लोगों ने ये किया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का शब्द सुना। अब समाप्त करने के लिए जल्दी जल्दी बस 3 या 4 मिनटों में, यीशु जब वो इस पृथ्वी पर था उसने कहा, मुझे अधिकार है कि अपना जीवन दे दूं, मुझे अधिकार है कि उसे फिर वापस ले लूं। अब इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, मेरे पास है, ना कि मेरे पास होगा, परंतु मेरे पास है। अब मेरे पास अधिकार है कि अपना जीवन दे दूं, मेरे पास अधिकार है कि उसे फिर वापस ले लूं, ठीक है। मार्था, जब उसका भाई लाजर मर गया, उसने उसे कहते सुना, मैं जाकर उसे जगाऊंगा। कहा, तुमने उसे कहाँ गाड़ा? अब वो उसने भेजा, कहा, यीशु आकर मेरे भाई को चंगा कर दे, वो बीमार है। यीशु ने इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया और बढ़ गया। उसने फिर भेजा और मरियम ने और वे आगे बढ़ गए। उसने इस प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया। तब कुछ समय पश्चात लाजर मर गया, उसे कब्र में रख दिया। वो वहाँ 4 दिनों से पड़ा हुआ सड़ रहा था, नाक गल कर गिर गई, उसमें कीड़े थे, हर चीज इन कपड़ों में लिपटी हुई थी और आदि आदि। कब्र पर पत्थर रखा हुआ था जैसे कि वे पहले समय में गाड़ा करते थे, एक गड्ढा होता था तब उसके ऊपर पत्थर रख दिया करते थे, यही कब्र थी। इसलिए उन्होंने कहा, और पहली बात आप जानते हैं, कहा, यीशु आ। और इस प्रकार से मार्था ने शॉल ओढ़ी और नीचे गली में वो गई। ये सुंदर युवा लड़की वो वहाँ दौड़ गई। उसने कहा, प्रभु इस प्रस्ताव को देखिए। उसने एक दिन इस स्वर को सुना था और वो निश्चित था, वो जानती थी कि उसके विषय में कुछ है। उसने कहा, अब यदि वो जाकर और कहती, हम अपने नामधारी कलीसिया से बाहर आ गए क्योंकि तूने उनके विरोध में प्रचार किया, और हमने सब कुछ किया क्योंकि तूने ऐसा ऐसा किया और हमारा विश्वास तुझ में था, अब हम नगर में बातों का विषय है, हर कोई कह रहा है अब तुम्हारा पवित्र शोर करने वाला पास्टर कहाँ है, समझे, किसी की आवश्यकता है? वो कहाँ है? वो भाग गया, वो कहाँ है? फिर दिव्य चंगाईकर्ता कहाँ है? इसमें रखिए भाई राइट्स, ये आपके द्वारा कहा गया, वहाँ आपके चर्च ऑफ क्राइस्ट के प्रचारकों के द्वारा, और वे, जी हाँ श्रीमान, वे कहाँ हैं? कहाँ? इस बारे में क्या है? इस बारे में क्या है, समझे? इसलिए कुछ समय पश्चात ऐसा लगता है उसके पास उसे उलाहना देने का अधिकार था, उसे कहने के लिए कुछ था, कहिए तू तब क्यों नहीं आया जब मैंने बुलाया। परंतु देखिए, परमेश्वर से पहुंच करने का ये तरीका नहीं है। प्रश्न मत करिए, जानिए कि आवाज निश्चित है, सीधे जाकर कहिए, हाँ प्रभु, प्रभु यदि वो मुझ पर हाथ रख दे मैं कैसे जानूं कि मैं चंगा होने वाला हूँ? ये आपका काम नहीं है, समझे। आपके करने को एक बात है कि ये जाने शब्द निश्चित है कि परमेश्वर ने कहा है, विश्वास करें और आगे बढ़ें। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, समझे, हाँ श्रीमान, ये परमेश्वर का वचन है। अब तब पहली बात आप जानते हैं कि वो बेचारी मार्था वहाँ दौड़ती हुई आई और उसने कहा, प्रभु, ओ मुझे ये अच्छा लगता है। उसने उसे वही उपनाम दिया जो वो था, वो उसका प्रभु था। यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, समझे? कहा, अब भी तू जो परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर वो तुझे देगा, इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, नहीं। जब ये दो आशावादी मिलते हैं, समझे, जब दो सर्व सामर्थी मिलते हैं, समझे, जब एक सर्वशक्तिमान उसके पास था, उसका मसीह में सिद्ध सर्व सामर्थी विश्वास था, और मसीह सर्वशक्तिमान था, समझे, उसका मसीह में सिद्ध अनंत विश्वास था कि वो प्रभु था, और जान गई कि वो जो भी परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर उसे देगा। दूसरे शब्दों में उसने कहा, तू बस वचन कह दे, बस तुझे यही करना है, तू जो भी परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा, यही सर्वशक्तिमान सारी सामर्थ, क्योंकि उसने ऐसा कहा, समझे, ठीक है। वो सामर्थी था, जो सामर्थ दो सर्वशक्तिमान सामर्थों आपस में मिलती हैं, तब ये संबंध है। जब यहाँ इस तार में 150 वोल्ट है और इसमें भी 150 वोल्ट है, जब ये पास पास आते हैं दोनों ओर से आपके पास 150 वोल्ट है, समझे, और जब आपके पास सर्वोच्च सामर्थ है, जब यीशु ने कहा बीमारों पर हाथ रखो तो वो चंगे हो जाएंगे, और ये बात सत्य है, इसमें आपका सर्वोच्च विश्वास है, सर्वोच्च परमेश्वर की आवश्यकता है जिसने सर्वोच्च प्रतिज्ञा की है, और एक सर्वोच्च नतीजा आएगा, आमीन, यही है, समझे। अब उस पर ध्यान करें, उसने आकर कहा, प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, परंतु अब भी तू जो भी परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर वो तुझे देगा। उसने कहा, तेरा भाई फिर जीवित हो जाएगा। उसने कहा, प्रभु सत्य है, वो अंतिम दिनों में जी उठेगा। क्यों? उसने ये वचन सुना, वो जान गई कि ये निश्चित स्वर है, निश्चय ही प्रभु वो अंतिम दिनों में जी उठेगा। वो अच्छा लड़का था, वो सामान्य पुनरुत्थान में आएगा अंतिम दिन में। यीशु ने कहा, मैं हूँ, इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, मैं पुनरुत्थान और जीवन दोनों हूँ। ओ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो जो मुझ में विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए वो फिर भी जिएगा। जो भी जीता और मुझ पर विश्वास करता वो कभी ना मरेगा। इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, तू इसका विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। तू बिल्कुल वही है जो तूने कहा था, तू परमेश्वर का पुत्र है जो संसार में आया है कि हमें बचा ले, और मैं विश्वास करती हूँ कि तू जो भी करता है या कहता है वो सिद्ध है। तेरे विषय में बिल्कुल कोई संदेह नहीं। तुमने उसे कहाँ रखा है? मैं जाऊँगा और उसे जगाऊंगा अब। नहीं नहीं, मैं जाऊँगा और देखूंगा, यदि मैं कर सका मैं जाकर यत्न करूंगा। मैं जाऊँगा और देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ इस विषय में। नहीं, कुछ भी अनिश्चित नहीं, मैं जाऊँगा और उसे जगाऊंगा। क्यों? पिता ने उसे बता दिया है, उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो कि सत्य थी। उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी क्योंकि उसने कहा यूहन्ना 5:19 कि पुत्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकता परंतु जो पिता को करते हुए देखता है। उसके पास पहले ही दर्शन था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, इसलिए ये पक्का था, मैं कोशिश करने नहीं जाऊंगा। आमीन आमीन। ओ, मेरी इच्छा है मैं इसे ले सकता, जैसे एक कॉर्क निकालने का यंत्र हर व्यक्ति में घुमाकर अंदर बैठा देता। देखिए, मैं जाकर कोशिश करूंगा, मैं जाकर देखूंगा, यदि मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा, मैं जाऊंगा उसे जगाऊंगा। मैं जाकर कोशिश नहीं करूंगा, मैं जाकर ये करूंगा, मैं जाऊंगा और उसे जगाऊंगा। और उसने किया। ओ, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। नहीं नहीं, मैं कोशिश नहीं करूंगा, मेरे पास प्रतिज्ञा है। और अब जब वो चला गया, उसने हमें नहीं छोड़ा और कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या तुम सब सारे जगत में जाओ और महान संस्था बनाओ और तुम उनमें तुम सैकड़ों को मिलाने जा रहे हो, परंतु वे ठीक होंगे। अब ये अनिश्चित होगा, मनुष्य ने यही किया, परंतु उसके पहले वो छोड़े यहाँ पर उसने यही कहा, इस बात की निश्चितता के लिए कि हम धोखे में नहीं आएंगे। उसने कहा, थोड़ी देर बाद संसार मुझे और ना देखेगा। ये अविश्वासी लोग हैं, वे लोग अविश्वास के साथ रुक गए, वे मुझे और ना देखेंगे, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग होऊंगा और तुम में होऊंगा। यूहन्ना 14:12 उसने कहा, और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे और इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, इससे भी अधिक। वो वचन पूरी रीति से यूनानी में देखें, ये कहता है तुम अधिक करोगे, क्योंकि क्यों? वो परमेश्वर वो केवल एक मनुष्य में था, अब परमेश्वर अपनी समस्त कलीसिया में है। देखा, तब परमेश्वर एक मनुष्य में था, सारे मनुष्य अब जो उस पर विश्वास करेगा, इससे भी अधिक तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, मैं ज्योति में वापस आऊंगा जो मैं था, जिसने इसराइल के बालकों को जंगल में अगुवाई की, मैं उसी में वापस आऊंगा और तब थोड़ी देर पश्चात मैं फिर आऊंगा। समझे यूहन्ना 14:12, जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे। और अब उसने कहा, और इससे भी अधिक, मरकुस 16, जब वो जा रहा था उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो, वो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उद्धार पाएगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और ये चिन्ह संभव है? नहीं, होंगे, वे निश्चित हैं। ठीक है, आप जानते हैं हम विश्वास करते हैं, परंतु समय के चलते हम दूसरे दिनों में रह रहे हैं, नामधारी कहते हैं, ये अनिश्चित है। परंतु यीशु ने कहा वे करेंगे, वे निश्चय ही करेंगे, वे जो विश्वास करेंगे। वे क्या करेंगे? वे प्रेत आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ओ भाई, ये नहीं कि संभव है वे ये करेंगे, वे इसे बदल सकते हैं और इससे संस्था बना सकते हैं। नहीं नहीं, ये चिन्ह वे अब भी विश्वासी होंगे। ओ नहीं नहीं, ये चिन्ह निश्चय ही वे होंगे। वो अब भी वही परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है। मसीह आचार संहिता ये कैसे कह सकती है कि वो मरुभूमि में से जी उठा और फिर उसे कल आज और सर्वदा एक सा होने के लिए कैसे इनकार कर सकता है? मत्ती 17 में, आप सब इसे लिखना चाहते हैं, मत्ती 17:2, आप इसे वहाँ रूपांतरण पर पा सकते हैं। अब यदि आपको मिलता है, यदि आपके पास ग्रीक लेक्सिकन है, तो आप वहाँ देखें उस रूपांतरण पर कहा, और वो रूपांतरित हो गया था। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं देखूँ, यदि अभी ये मेरे पास है इस समय, मत्ती 17, मेरे पास ये सब है। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। अब आप जानते हैं वास्तविक यूनानी क्या कहती है, उसने किया रूपांतर में, उनके सामने उसने अपना ढंग बदला। ओ, हमारे पास कितना समय है, थोड़ा थोड़ा करके लें, मुझे इसमें जाना है, किसी ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया, जिसे मुझे कहना है, मुझे क्षमा करें। अब दोपहर का भोजन सेम नहीं सूखेगी और इसे जाने दें, ठीक है। वो अब भी वैसा ही है, वो कभी नहीं बदला, वो अब भी वैसा ही है। इब्रानी 13:12 और 13 कहा, यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। अब देखिए, यदि हम इसका विश्वास करते हैं कि वो जीवित हो उठा, तो फिर वो मरा हुआ नहीं है, वो किसी कब्र में नहीं है, वो जीवित है, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास नहीं करते? अच्छा, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? जब वो रूपांतरित हुआ, यूनानी कहता है उसने अपना ढंग बदला। वो देखिए उसके जी उठने के क्रम को देखें, तब यही है जिसने मुझे प्रभावित किया। ध्यान दे, पहले क्या प्रकट हुआ, वो यहाँ पीछे अगले वाले अध्याय में, 16 अध्याय में उसने उन्हें बताया, कुछ यहाँ पर खड़े हैं जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य में आते हुए ना देख लें। दूसरे शब्दों में वे क्या करेंगे? वे परमेश्वर के राज्य का स्वाद पहले चखेंगे, वे पुनरुत्थान का क्रम जान जाएंगे और परमेश्वर का आना, 16 अध्याय में देखें। अब यहाँ वो ऊपर जाता है और यहाँ क्या घटित हुआ? उसका ढंग बदल गया, दूसरे शब्दों में वो दूसरे ढंग से प्रकट हुआ। क्या आप मेरी बात समझे? हम क्या पाते हैं? प्रकाशन क्या था उस रात्रि? अंतर्भास। अंतर्भास का अर्थ है एक मूरत, वो यहाँ खोदी गई, कुछ बना रहे हैं। और तब वो क्या करता है? वो हटाकर कहता है ये है। वो यहाँ क्या दोहरा रहा है? वो स्वयं को दूसरे ढंग में प्रकट कर रहा है। वो किस में था? एक महिमा से भरा हुआ बदली हुई अवस्था, उसका आगमन जिस प्रकार से वो आ रहा है, एक महिमा से भरा हुआ बदला हुआ मसीह, उसके कपड़े सूर्य की नई चमके। ओ, वो बादल में खड़ा हुआ और वो महिमा के बादल में आ रहा है, बादल से ढका हुआ, ना कि छोटा सिर पर बादल, परंतु वो बादल जिसमें वो आता है, महिमा का बादल, उसके सारे सरदूत उसके साथ हैं। हालेलुया, प्रभु, वो इस प्रकार से आ रहा है, महिमा के बादल में आ रहा है। अब ध्यान दें, जब उन्होंने उसे वहाँ खड़े देखा और उसके सम्मुख मूसा और एलिया प्रकट हुए, वो मूसा का क्या अर्थ था? मूसा उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था जो मर गए थे और कब्र में सो रहे थे, क्योंकि मूसा मरा और गाड़ा गया था, कोई नहीं जानता वो कहाँ गाड़ा गया, परंतु वो उनका प्रतिनिधित्व करता है जो सो गए थे जब वो आता है। और एलिया ने उनका प्रतिनिधित्व किया जो बदल गए, जिनको मरना नहीं है, समझे? आप वहीं पर हैं, देखा। और पतरस, याकूब और यूहन्ना बचे हुए इसराइलियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ खड़े हुए कह रहे हैं, देखो ये हमारा परमेश्वर है जिस पर हमने विश्वास किया, यहाँ आपके 144,000 हैं। आप कहाँ पर हैं भाई वुड्स? यहीं हैं, समझे? आप वहीं हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना। 3 एक गवाह जब वो वापस आता है, पहली बात क्या है? पुनरुत्थान, मूसा और समुचक बोधक एलिया उस पर प्रकट हुआ, मरे हुओं का पुनरुत्थान और वे जिन्हें मरना नहीं है बदल गए थे और उसकी उपस्थिति में खड़े थे, ओह प्रभु, और वो वहाँ खड़ा है महिमा से भरा, और वहाँ पतरस, याकूब और यहुन्ना यहूदियों के बचे हुए देख रहे हैं, कह रहे हैं यही है वो यही है, प्रभु के आने का यही क्रम है, समझिए, यही है पुनरुत्थान, वहाँ वे थे, ओ क्या ये अद्भुत नहीं। अब ध्यान दें, उसने केवल यही किया, उसने मानवता का मुखौटा हटा दिया और महिमा युक्त वाली अवस्था में आ गया, समझे, उसने अपना ढंग बदल दिया। अब 3 लोग नहीं जैसे कि वे आज कहने का यत्न करते हैं, नामधारी, ओ भाई, 3 लोग नहीं, 3 नहीं बदल गए, 3 जने नहीं, एक ही व्यक्ति के 3 बदलाव, ओ प्रभु भला हो। एक समय पिता के समान प्रकट हुआ, उसने मुखौटा उतारा, वो एक पुत्र था, अब वो देह का मुखौटा उतारता है और वो पवित्र आत्मा है, 3 ईश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर के 3 बदलाव, ओ प्रभु का नाम धन्य हो, एक ही व्यक्ति के 3 बदलाव, समझे। अब जब वो पृथ्वी पर था, वो आग का खंभा था, इज़राइल के बालकों का मार्गदर्शन किया, ये ठीक बात है, तब वो शरीर बना परमेश्वर के पुत्र में, ताकि समस्त मानव जाति के लिए शरीर में मृत्यु को चखे, एक प्रायश्चित बना, आप इसका विश्वास करते हैं। अब आज वो क्या है? वही यीशु, वही क्या कल पितृत्व में, वही पुत्रवाद में, वही यहाँ पवित्र आत्मा के रूप में, वही ज्योति। पौलुस दमिश्क के मार्ग पर एक ज्योति के द्वारा नीचे गिराया गया और कहा, प्रभु तू कौन है? कहा, मैं यीशु हूँ। ओ ये ठीक बात है, आग के खंभे से अपना मुखौटा उतारा और बन गया क्या? एक मनुष्य कि पापों को ले जाए, फिर अपना मुखौटा उतारा एक मनुष्य के समान और फिर वापस आत्मा हो गया, पवित्र आत्मा कहलाया, मनुष्य का आत्मा कि वापस आए और आप पर रहे और आप में और वे कार्य। हाँ कलीसिया, क्या आप देखते हैं? इस विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा, तुम्हारे अंदर, समाप्ति के अंत तक, दूसरे शब्दों में संसार के अंत तक, समय के अंत तक, सब वस्तुओं के अंत तक, मैं ठीक तुम्हारे साथ होऊंगा उन कार्यों को करते हुए। अब इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, परंतु आप सुनते हैं कि कुछ कहते हैं, आपको प्रेस्बिटेरियन होना चाहिए, आपको एक मेथोडिस्ट होना चाहिए, आप हम बैप्टिस्टों के पास है, वे सब गलत हैं, ये झूठे हैं, ये निश्चित नहीं है। पेंटिकॉस्टल के पास कैसे हो सकता है? पेंटिकॉस्टल नामधारी, जबकि उनमें लगभग 30 विभिन्न संस्थाएं हैं, कौन सी वाली है वो? मेथोडिस्ट के पास कैसे हो सकता है? और मेथोडिस्ट समय और 60 कुछ, मैं सोचता हूँ बैप्टिस्ट के विभिन्न संस्थान और कैथोलिक के विभिन्न संस्थान और आदि आदि, वे सब कहाँ हैं? ये कौन सा वाला है? ये अनिश्चित स्वर है, परंतु जब आप उसे सुने, मैं कल, आज और सर्वदा एक सा हूँ, ये एक निश्चित स्वर है। इसलिए कौन जानेगा कि स्वयं को कैसे तैयार करे यदि तुरई अनिश्चित स्वर दे? ये क्या है? कहाँ हो सकता है? वे कैसे हो सकते हैं? और ये कैसे कर सकता है जबकि 900 विभिन्न संस्थाएं हैं? ठीक है, वे इसे नहीं कर सकते। जब उसने प्रेरित 2:38 में कहा, तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ना कि हो सकता है, आप पाओगे, संभव है, आपको होना चाहिए, परंतु आप पाओगे कब? जब आपने प्रायश्चित किया। अब आप वहाँ बिना प्रायश्चित के जा सकते हैं और आप ये नहीं पाएंगे, परंतु जब आपने पूर्णतः प्रायश्चित किया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपको मिलने वाला है, कोई भी अनिश्चितता नहीं है, आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे, ये ठीक बात है। जब उसने कहा, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे, तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं वो करूँगा, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, ये निश्चित है, ये चिन्ह में तुम्हारे संग होऊंगा। अब आप कहते हैं हमारी कलीसिया इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करती, भाई ये अनिश्चित स्वर है। बाइबल ने कहा, उसने स्वयं कहा, मैं तुम्हारे संग होऊंगा और वे कार्य जो मैंने एक बार किए मैं सदा तुम्हारे में करूंगा, और मैं तुम्हारे संग होऊंगा संसार के अंत तक, और वे जो मुझ पर विश्वास करते हैं जब उनके हाथ उन पर रखे जाते हैं, यदि वे बीमार हैं वे चंगे हो जाएंगे, वे हो जाएंगे, ना कि हो सकता है, वे हो जाएंगे। जोन्स ने किया परंतु जॉनसन ने नहीं किया, इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, यदि जॉनसन जोन्स के समान विश्वास करता है तो वो भी चंगा हो जाता है, ये ठीक बात है। कुछ भी अनिश्चित नहीं है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। वो जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी भी बाहर ना निकालूंगा, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। अच्छा, हो सकता है वो मुझे स्वीकार ना करे। वो तुम बेचारे बहकाए गए, सुनिए, उसके दास के समान। मैं आपको बता दूं, उसके पास कोई नहीं आ सकता परंतु जिसे वो स्वीकार करेगा। यदि भी तुम्हारे पाप अग्रवाणी हो, वे बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे। कुछ भी अनिश्चित नहीं, मैं उसका भाग क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे विरुद्ध रोक लूंगा, तुम बर्फ के समान सफेद होगे। भाई, वो मुझे जो मैंने अपने पति के विरुद्ध किया है वो क्षमा नहीं करेगा, जो मैंने अपनी पत्नी के विरुद्ध किया है और अपनी बहन से किया है, जो मैंने अपने भाई से किया है, जो मैंने किया, मैं चिंता नहीं करता कि आपने क्या किया। कुछ भी अनिश्चित नहीं है, वो सारी बातें क्षमा कर देगा। यद्यपि वे अग्रवाणी लाल रंग के भी हों, वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। कुछ भी अनिश्चित नहीं है। प्रायश्चित करें और पापों के मोचन के लिए तुम में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों से और उन दूर दूर के लोगों से है। अब इस पर ध्यान दें। अब आप त्रियकता वाले ध्यान दें। जितनों को हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा, वही नुस्खा ये सारी पीढ़ियों में कार्य करेगा। ना कि संभव है, ये बदल डालेगा। कुछ देर पश्चात पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में तुम बेचारे भ्रमित शिक्षकों, परमेश्वर बदल नहीं सकता, वो अनंत है। नुस्खा हर बार कार्य करता है, जिसे कि आप सही विधि से देते हैं। जी हाँ श्रीमान। आप प्रायश्चित करें, पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये क्या, ये नुस्खा, ये बपतिस्मा, इस प्रकार का बपतिस्मा, ये पवित्र आत्मा, ये वही सामर्थ्य, ना कि बस हाथ मिलाकर कहें मैं एक नया पन्ना पलटता हूँ और अच्छा करूँगा। नहीं श्रीमान, तुम पवित्र आत्मा पाओगे और परमेश्वर की सामर्थ आप पर आएगी। अपने मार्गों को बदलें, अन्य भाषाओं में बोलें, बीमारों पर हाथ रखें, प्रेत आत्माओं को निकालें, वैसे ही करें जैसे उन्होंने किया। कितनों के लिए, कब तक, शिष्यों के अंत तक? यदि आप ये कहते हैं तो आप झूठे भविष्य रखता है, यदि आप ये कहते हैं झूठे शिक्षक हैं। क्योंकि यीशु मसीह बाइबल में हमें ये सिखाते हैं, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। और चेलों ने यहाँ कहा कि ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों से और जो दूर दूर है उनसे, यहाँ तक कि इसे मेरे साथ कहें, जितनों को हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा। कितने, हर युग में, हर पीढ़ी में, हर रंग, हर मतसार, हर को वो चाहे जो हो, जितनों को परमेश्वर बुलाएगा। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया, वो आपको बपतिस्मा लेने की आज्ञा देता है यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा पाओ, तब मसीह स्वयं आप में वास करता है। और कोई अनिश्चित स्वर नहीं है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। आपके पास बाइबल है, ओ आप इस पर स्थिर हैं, आप इस पर जीवित रह सकते हैं, आप इस पर मर सकते हैं, आप इस पर उठेंगे, महिमा हो। ये परमेश्वर का वचन है। ओ प्रभु, जैसे रिबका ने ऊंट को पानी पिलाया, वही ऊंट जिसे पानी पिलाया वो उसी पर सवार हुई ताकि उसे मिलाए दुल्हन से। वही परमेश्वर जिसके विषय में हम प्रचार करते हैं, वही वचन जो परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो वचन में है, हमें किसी दिन उठाएगा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, और हमारे आलोचक उसी सामर्थ्य के द्वारा मारे जाएंगे जो आपको महिमा में उठाती है। ओ प्रभु, उठें और इस पर सवार हो जाएं। आप लोग जो बीमार हैं, आप परमेश्वर का अविश्वास ना करें। क्या लियो और वे, मैं नहीं जानता कि क्या आपने कोई प्रार्थना पत्र दिए, क्या कोई प्रार्थना पत्र बांटे गए। बिल्ली आज प्रातः नहीं आया, उसे जुकाम है, और वो ठीक है। अब क्या हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी? सुनिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। क्या विश्वास करते हैं कि जो मैंने प्रचार किया सत्य है? आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? क्या ये स्वर आपके लिए निश्चित है? ये स्वर कैसा है? पहला अधिकार यीशु ने दिया मत्ती 10 में अपनी कलीसिया को, तुम जाओ और ये, और मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बस इसका उल्लेख दे रहा हूँ। मत्ती 10, मैं इसे यहाँ पर पा सकता हूँ। उसने अपने 12 चेलों को एक साथ बुलाया और अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि प्रेत आत्माओं को बाहर निकालें, बीमारों को चंगा करें, और मृतकों को जिलाएं, और प्रेत आत्माओं को बाहर निकालें, बुढ़ियों को चंगा करें। क्या ये ठीक बात है? लोगों को विश्वास करवा लेने के द्वारा, तब उन पर हाथ रखें, लोगों से इसका विश्वास करवा लें, तब उन पर हाथ रखें, लोगों से इसका विश्वास करवा लें, उन पर हाथ रखें। ये उसने पहला अधिकार दिया, तब उसने उन अपने सत्रों को भेजा। उसने अंतिम अधिकार क्या दिया था? मरकुस 16, हमारे प्रभु के होंठों से अंतिम शब्द जो निकले, तब उसने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया, सारे जगत में जाओ, हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास न करे दोषी ठहराया जाएगा। अब स्मरण रखें, वो दंडित हो सकता है, उसको अवसर मिल सकता है, उसे पृथ्वी पर एक भी अवसर नहीं मिलेगा। इस विषय में कोई अनिश्चित स्वर नहीं है। यदि वो विश्वास नहीं करता, वो दंडित होगा। अब उनके द्वारा किस प्रकार के चिन्ह होंगे? ये चिन्ह, अच्छा, उनमें से कुछ के द्वारा ये होंगे, संभव है ये होगा, हो सकता है होगा, ये उनके चिन्ह होंगे। वे चंगाई में विश्वास करेंगे, वे प्रेत आत्माओं के निकालने में विश्वास करेंगे, वे अन्य भाषाएं बोलने में विश्वास करेंगे, ओ, वे परमेश्वर के सारे अलौकिक कार्यों का विश्वास करेंगे। जीवित हो उठा यीशु उनके साथ कार्य कर रहा है। क्या ये सत्य है? क्या ये परमेश्वर के अंतिम शब्द हैं? जो जोड़ने का यत्न करे श्रापित हो या इसमें से निकाले, ये उसी प्रकार से है जैसा है। क्या पेंटिकॉस्टल कलीसिया शोर करने वाली कलीसिया नहीं थी? आरंभ में जब पहले पहल पवित्र आत्मा उतरा था, कुंवारी मरियम जैसे कि वो नशे में थी, परमेश्वर के सामर्थ्य में लड़खड़ा रही थी, और वे सारे इसी प्रकार से, और लोगों ने कहा कि ये नई मदिरा के नशे में है। इस प्रकार से कलीसिया का अभिषेक किया गया था, इसी विधि से हर कलीसिया का अभिषेक किया गया। ये उसी प्रकार की कलीसिया होगी, क्योंकि इसके पास अनिश्चित स्वर नहीं है। अच्छा भाई, हमारे बिशप ने कहा, मैं चिंता नहीं करता बिशप क्या कहता है, वचन ने क्या कहा, मुझे ये है, बिशप का स्वर अनिश्चित है। यदि उसका स्वर वही स्वर दे रहा है जो ये है, तो वो ठीक है, और तब यदि वैसा व्यवहार नहीं कर रही है जैसा ये, तो वो गलत है। यदि आप कहते हैं आपके पास है और इसने वैसा व्यवहार नहीं किया, तो फिर कोई गड़बड़ है आपके साथ। इसने ठीक यही कहा है। अब हर कोई तैयार है। घर पहुंचने के बाद फिलिपस गया, सामरियों को प्रचार किया, उन पर हाथ रखा। पौलुस आया, यानी पतरस आया, उन पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, वही कार्य किया जो उन्होंने आरंभ में किया। कुरनेलियस के घर पहुंचा और सारे अन्य जाति वहां पर थे, यूनानी आदि, उन पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया जैसा उन्होंने आरंभ में किया था। मैं आपको कुछ बताऊं, आप जानते हैं मैं मिशनरी हूं। अब मैं विश्वास करता हूं, मिशनरी वो व्यक्ति होता है जो जाता और आता है, वो एक मिशनरी है। यदि आप वहां ठहरने को जाते हैं, वे उसे मिशनरी कहते हैं, परंतु वो एक भूमि बसाने वाला है। आप बस अपना वास स्थान बदलते हैं, समझे, ये मिशनरी नहीं है। एक मिशनरी पौलुस मिशनरी था, वो टिका नहीं, वो बढ़ता बढ़ता रहा। एक मिशनरी निवास नहीं बदला, बस आगे बढ़ता रहा एक मिशनरी। अब मिशनरी क्षेत्र में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ अफ्रीका में नीचे के क्षेत्र में, वहाँ छोटे जंगल में रहने वाले, उनको लंबे समय से ये भी मालूम नहीं कि वे मनुष्य हैं या नहीं। अंग्रेजी सरकार ने जब दक्षिण अफ्रीका को ले लिया, आप छोटे से जंगल में जाएं और वहाँ आप जंगल का आदमी देखेंगे, ब्र बंदरों के झुंड के समान हिलता है और चारों ओर देखता है, वहाँ कुछ नहीं है। अचानक देखा, मिट्टी में से बाहर आए, देखिए एक काली खोपड़ी चारों ओर देख रही है, समझे। उसने स्वयं को रेत में गाड़ लिया था और दौड़कर और जल्दी से मिट्टी खुरच कर अपने ऊपर डाली। उन्होंने सोचा कि वे जानवर थे लंबे समय से, परंतु आप देखिए कि उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि वे मनुष्य हैं। उनके पास कुत्ते थे और कुत्ता मनुष्य को छोड़ और किसी के साथ नहीं रहता। देखा, उन्हें मालूम पड़ा कि वे मनुष्य थे। और उनमें से एक व्यक्ति को लें और उनमें से एक बसुटॉस, चंगान, फजरास, किसी भी एक जाति को लें, ये भी नहीं जानते कौन सा उल्टा और सीधा हाथ है। सदा कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, देखिए इस प्रकार से बातें करते हैं, और नंगी स्त्रियां, पुरुष और सारे। मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें, आप उन पर पवित्र आत्मा को आने दें और वो वही चीज करेगा। आप यहाँ लिख लीजिए, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, इस विषय में कोई अनिश्चितता स्वर नहीं है। उसने अन्य भाषा में बोलना ऐसे अपने जीवन में कभी नहीं सुना, और देखिए, और यहाँ आपके लिए अन्य भाषा में बात करता है, परंतु यहाँ अनुवाद करने वाला खड़ा है। ये व्यक्ति वहाँ खड़ा है और ब्ला कहता है, आप बचना चाहते हैं, ब्ला ब्ला, हाँ ये कोई यहाँ है, हाँ ब्ला ब्ला, अपने हाथ उठाएं और इसे प्राप्त करें, हाँ ब्ला, अच्छा अच्छा हो प्रभु। यहाँ वो जाता है और भाषाओं में बोलता है जो कभी नहीं सुनी, इस विषय में कुछ नहीं जानता, इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। ये यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। उस पर ध्यान दे, वो सीधा गोत्रों में जाएगा और बीमारों के लिए प्रार्थना करने को जाएगा, आपको उसे नहीं बताना है। और हम अमरीकन स्त्रियां, आप कलीसिया के सदस्यों में, मैं आपसे यहां अधिक बातें नहीं कर रहा हूं, आप जानते हैं कि ये टेप हो गया। आप कलीसिया के सदस्यों जो छोटे छोटे कपड़े पहने और जिस प्रकार से आप लोग चल रहे हैं, हर वर्ष तुम थोड़ा उतार देते हो जो आपके छोटे कपड़े थे, तब छोटे में छोटा और फिर छोटे में छोटा, छोटे से छोटा, और इस प्रकार से तुम बेचारे भ्रमित कलीसिया के सदस्यों, तुम उनसे जो अफ्रीका में हो बेकार हो। जब उस दिन वे स्त्रियां जब वहां खड़ी थी, जब एक ही बार में 30,000 ने मसीह को अपना व्यक्तिगत बचाने वाला स्वीकार किया, और आपने गायन मंडली में गाया और बाहर अपने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे कि वहां नीचे घास काटें, तो आप उनसे बेकार थे। आप वे न्याय के दिन उठ खड़े होंगे और आपको लज्जित करेंगे। मैंने वहां स्त्रियों को खड़े हुए देखा, नंगी थी, कुछ नहीं था, उनके सामने की ओर एक चिथड़ा इस प्रकार से, और ऊपर उनके यहाँ उनका छाती का भाग, उस पर कुछ नहीं था, और केवल एक छोटा घंटा लगभग 4 या 6 इंच का उनकी कमर के चारों ओर इस प्रकार से और उनके सामने के भाग में लटक रहा था और पुरुष भी वहाँ पूरे नंगे खड़े थे और उल्टा और सीधा हाथ भी नहीं मालूम। और जैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ आई उन स्त्रियों ने अपने हाथ मोड़कर समेट लिए और उनके वक्ष को ढकने के लिए कुछ नहीं था। लज्जा में अपने हाथ समेट लिए और चली गई और अगले दिन उन्होंने कपड़े पहने। हालेलुया। वहाँ इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं थी। पवित्र आत्मा आपको कपड़े पहनवाता है, आप सभ्य व्यवहार करते हैं, इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। क्या आप उसे नहीं चाहते? क्या आप किसी ऐसे की सेवा नहीं करना चाहते? प्रभु यीशु, इन अनिश्चित स्वरों से अलग हो जाएं। वो आप छोटी लोकप्रिय चीजें हैं, हाँ तब पक्का हो गया और सब कुछ आप सोचते हैं कि आप लोकप्रिय हैं, परंतु प्रिय आप मर रहे हैं। आप सोचते हैं आप जी रहे हैं और आप मर रहे हैं। बाइबल ने कहा जो स्त्री सुखविलास में जीती है वो जीते जी मरी हुई है। ये बाइबल ने कहा, ये अनिश्चित स्वर नहीं है, कहा है वो मरी हुई है। ये ठीक बात है, इसके लिए ये कोई अनिश्चित स्वर नहीं है, ये निश्चित है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और जब मनुष्य पवित्र आत्मा से उत्पन्न होता है तो वो एक उम्मीदवार है। वो केवल वही नहीं परंतु वो एक राजा है, वो एक राजकुमार है, वो दूसरे राष्ट्र से है, उसका राज्य ऊपर है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति। जो स्त्री वो करती है, कपड़े पहनती है, पुरुष भली प्रकार से जीता और अपनी पत्नी के लिए सच्चा है, पत्नी सच्ची रीति से जीती और अपने पति के लिए भली है। वे संसार का कुछ नहीं चाहते, उनका प्रेम वहाँ ऊपर की चीज पर है। वे संसार की चीजों के लिए मर गए, वे मसीह में नई सृष्टि हैं और वे पवित्र जीवन जीते हैं। ना कि वे पवित्र, परंतु पवित्र आत्मा उनको चलाता है। उनके अपने विचार नहीं है, पवित्र आत्मा उनमें कार्य करता है। यही कारण है वे उन्मादियों के समान संसार के लोगों से व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे दूसरे राज्य के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। ओह, मैं ये जानता हूँ मित्र, एक समय मैं खोया हुआ था परंतु अब मैं ढूंढा गया हूँ। मैं उन चीजों के लिए अंधा था परंतु अब मैं देखता हूँ। मेरे हृदय को भय मानना सिखाया गया है। यह अनुग्रह था कि मेरा भय निकाला गया। उस अनुग्रह ने मेरे लिए कितना कीमती कार्य हुआ। जिस घड़ी वो प्रकट हुआ, मैंने पहले पहल विश्वास किया जब मैं मसीह के पास आया। अब बंद करते हुए उद्धार और चंगाई दोनों के लिए मैं इन वचनों को कहता हूँ। एक मिनट के लिए, पॉल रेडर मेरा मित्र था, मैंने उसे थोड़ा सा जाना, मैं बस लड़का ही था, उसके पैरों के पास बैठा, एक महान सेवक जो यहाँ अधिक समय नहीं हुआ, कैलिफोर्निया में मर गया। और जब वो मर रहा था उसे कैंसर हुआ था और वहाँ कैलिफोर्निया में मर रहा था। अब वहाँ आराधनालय में ओएल जैगर्स हैं, वो वहाँ पर था, वो बूढ़ा, बस मैं भूल गया उसका क्या नाम कहलाता था, परंतु अब ये वर्ल्ड चर्च है, पॉल रेडर्स का पुराना आराधनालय। और जैसे कि आप ऊपर की ओर जाते हैं, ये एल्डोराडो गली से हटकर है, मैकफर्सन के आराधनालय को पार करके सड़क पार पार्क में। और जब पॉल रेडर उसकी सेवकाई कर रहे थे, वे वहाँ गए और जब वो था, मरने से पहले उसने अपना हाथ एक भाई के कंधे पर रखा जिसे मैं वास्तव में भली प्रकार जानता हूँ, अर्न बैक्स्टर का भाई, और कहा, यदि मैंने अपने अनुग्रह का संदेश लेकर उसे जोश से भरे 35 कौशलों को बेचता और बजाय इसके कि तुम बैप्टिस्टों के झुंड के साथ यत्न करते हुए मूर्ख बनता, तो मैं आज जीवित रहता। परंतु कहा, तुमने मुझे चिंतित कर दिया, मैं इतना टूट गया और ऐसे असमंजस में हूँ कि मैं अब तक मर रहा हूँ। इसलिए जब वो वहाँ कमरे में लेटा हुआ था, उन्होंने वे पर्दे और चीजें गिरा दी और वे वहाँ खड़े हुए गा रहे थे, मेरे परमेश्वर के समीप तेरे पास, और वो हास्य प्रवृत्ति का था। उसने कहा, कौन मर रहा है, मैं या तुम? तुम्हारे स्वर ऐसे हैं कि तुम मुझसे अधिक मर रहे हो। उसने कहा ये मत करो, मेरे लिए कोई वास्तव में तेज गाना गाओ। एक छोटी गायन मंडली, पूरी मंडली संस्था से, उन्होंने गाना आरंभ किया, क्रूसी के पास जहाँ मेरा बचाने वाला मरा। उसने कहा, ये सुनने में अच्छा लगता है, परमेश्वर की स्तुति हो। कहा, लूक कहाँ है? लूक और पॉल एक साथ रहा करते थे, जैसे मैं और बिली, मेरा बेटा, वे भाई थे और वे एक संग हुआ करते थे। कहा, लूक कहाँ है? और लूक अपने भाई को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था और वो अस्पताल में अगले कमरे में था। कहा, जाकर उसे ले आओ और उसे यहाँ आने के लिए कहो। और जब वो वहाँ आया जहाँ पॉल था, पॉल ने बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और लूक ने अपना मुंह घुमाना चाहा। उसने कहा, लूक, हम दोनों बहुत सी कठिन लड़ाइयों में एक साथ रहे हैं, क्या भाई हम नहीं रहे? कहा, हाँ हम रहे हैं इन वर्षों में भाई, हमने परिश्रम किया, ये ठीक बात है, बहुत सी कठिन लड़ाइयाँ। परंतु कहा, लूक, इस पर सोचो, अब से 5 मिनट के अंदर मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में खड़ा होऊंगा। उसकी धार्मिकता को पहने हुए अपने भाई का हाथ दबाया, फिर मर गया। इस विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, वो जिस मार्ग पर जा रहा था उसे जानता था, वो जानता था उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था, उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य थी। वो लकड़हारा हुआ करता था और उसने पेड़ आदि काटे थे और कहा, वो मिशनरी भी था जैसे मैं समुंदर पार जाता हूँ। और वो और लूक वे एक टापू पर थे, उन्हें काले पानी का बुखार हो गया था। कोई जानता है ये क्या है? ये तुरंत मृत्यु है और ये वास्तव में बुरा है। इस प्रकार से उसे काले पानी का बुखार हो गया। वो पीछे जंगल में था जहाँ कुछ भी नहीं था। वो और उसकी प्रिय छोटी पत्नी वहाँ थी। आप जानते हैं उसने कैसे कहा, मैंने आपको कहानी सुनाई है, उसने कैसे कहा, अंतिम बार इसकी अनुभूति हुई जब पत्नी ने उसे चुंबन किया, अलविदा। इस प्रकार से वे वहाँ वापस आ गए और ये अंधकार और अंधकार कमरे में होता जा रहा था। उसने कहा वो जानता था कि वो जा रहा था, या उसने सोचा। उसने अपनी पत्नी को बताया, कहा, प्रिय, यहाँ पर इतना अंधेरा हो रहा है। कहा, मैं मरने जा रहा हूँ। और उसने कहा, पॉल, पॉल, और वो उसके मुंह पर गिर पड़ी और दुहाई देने लगी। कहा, प्रिय, दुहाई देती रहो, मुझे परमेश्वर की दुहाई देती रहो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनने दो, कोई और प्रार्थना करे, मैं और प्रार्थना नहीं कर सकता। कहा, जबकि मैं मर रहा हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ। और वो परमेश्वर की दुहाई देती रही, ओ परमेश्वर इसे ना मरने दे, इसका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, चिल्लाती रही, ओ परमेश्वर पॉल को ना मरने दे। वो उसके ऊपर गिर पड़ी थी। इस प्रकार से अंधेरा और अंधेरा होता गया। कहा, प्रिय, अंधेरा और अंधेरा हो रहा है और अंधेरा अंधेरा। अंत में वो चला गया। उसने कहा, जब मैं मर गया मैंने स्वप्न देखा कि मैं फिर से युवा पुरुष हो गया हूँ। कहा, मैं जंगल में था, वहाँ ओरेगॉन में, जहाँ से वो आया था। कहा, मैंने एक पेड़ गिराया। स्वामी ने कहा, मुझे बताया, पॉल, वहाँ पहाड़ की चोटी पर जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम विशेष पेड़ काटो और इतना, और तब हमें कुछ लट्ठे बनाने हैं। और कहा, उसने कहा, ठीक है स्वामी। और कहा, वो उनकी गंध ले सकता है, ये कितना ताजा था और कितना अच्छा लगा। कहा, वो जंगल में इस प्रकार से भाग रहा था और उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और कहा, यह अनुभव कर सकता था कि वो पुरानी कुल्हाड़ी कैसे कोमल देवदार को काट रही है। आप ओरेगॉन के देवदार जानते हैं। और कहा, जब वो वहाँ पहुँचा, आप जानते हैं नीचे दक्षिण में उनके यहाँ वही पेड़, ये बहुत कठोर होते हैं। आप ऊपर ऊपर उत्तर में जाएं और जितने अधिक ठंड होती जाती है लकड़ी उतनी ही कोमल होती जाती है। कहा, वो ढूंढ सकता था। कहा, उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और उस बड़ी दोहरी कुल्हाड़ी से और उसकी सारी डालियां छाड़ दी और उसने कुल्हाड़ी उस पर चलाई। कहा, अच्छा, मैं इसके साथ नीचे पहाड़ से उतरूंगा। उसने इसे पकड़ लिया और कहा, वो इसे नहीं उठा सकता, वो इसे नहीं उठा सकता। उसने कहा, उसने यत्न और यत्न किया। उसने कहा, उसे स्मरण आया उस व्यक्ति की जो पीछे था, सबसे अच्छी मांसपेशियां थी, इसलिए उसने कहा, उसने अपने दोनों घुटने एक साथ जोड़े ताकि वे चीर ना जाएं, और वो उस पर झुका और उसे पकड़ लिया और घुटने, पैरों के पीछे की मांसपेशियां, यहाँ से पैरों की पिंडली, अपने हाथ, अपनी पीठ की, अपनी सारी मांसपेशियां इसके लिए लगा दी। और कहा, उसने खींचा और खींचा, बस यहीं रुक, बस वो नहीं कर सका। कहा, वो बस थक गया जब तक वो यत्न और यत्न करता रहा। कहा कि ये लट्ठा वहाँ नीचे ले जाना था, मुझे बस करना था, स्वामी ने नीचे लाने की आज्ञा दी थी, मुझे नीचे लेकर ही जाना था। क्यों? कहा, अक्सर मैं नहीं जानता मेरी शक्ति कहाँ चली गई थी जिससे मैं इसे अपने कंधे पर रख सकता था और इसके साथ चला जाता। कहा, परंतु मैं इसे ऊपर नहीं उठा सका। उसने यत्न किया, यत्न किया, यत्न किया। उसने कहा, वो ये नहीं कर सका, उसने स्वयं को थका लिया। कहा, वो पेड़ के सामने गिर पड़ा और कहा, हाँपने लगा, मैं बस थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, थक चुका हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता और मुझे ये लट्ठा नीचे ही ले जाना है, परंतु मैं नहीं जानता इसे कैसे ये कर सकता हूँ, मैं इसे नहीं उठा सकता। कहा, वहाँ बैठे हुए, इसलिए उसने कहा, मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। और कहा, उसने उसकी आवाज सुनी कि उसका महास्वामी कहता है, पॉल। और उसने कहा, ये इतना मीठा स्वर था जो उसने कभी नहीं सुना। और कहा, जब मैं देखने के लिए घूमा, कहा, तो ये मेरा स्वामी नहीं था, परंतु वो मेरा वास्तविक स्वामी था। कहा, ये यीशु था। कहा, पॉल, तू इससे किस लिए थक रहा है? कहा, तू देख, वो पानी की धार नीचे जा रही है। कहा, वो धार ठीक शिविर के साथ से जाती है। कहा, तू क्यों नहीं इसे पानी में धकेल देता और इस पर सवार हो जा, नीचे चला जा। इसलिए उसने कहा, उसने लट्ठे को लेकर पानी में लुढ़काया और उस पर कूद कर बैठ गया और चिल्लाता हुआ उन लहरों पर चला गया। और एक चिल्लाहट ने कहा, मैं इस पर सवार हूँ, मैं इस पर सवार हूँ। और कहा, जब वो कमरे में आया तो उसकी पत्नी उस पर पड़ी हुई प्रार्थना कर रही थी। वो फर्श के मध्य में चिल्लाता हुआ कूदा, मैं इस पर सवार हूँ, मैं इस पर सवार हूँ। भाई, इस प्रातः में आपको कुछ बता दूं, इस पर परिश्रम ना करें, मैं परिश्रम करने का यत्न नहीं कर रहा हूँ, ये आपको आगे थका देगा। क्या मैं एक मेथोडिस्ट हूँ? क्या मैं एक बैप्टिस्ट हूँ? क्या मैं ये हूँ? मैंने अभी यीशु को ग्रहण किया है, अनुग्रह से मैंने उसकी प्रतिज्ञा को लिया है, वो मेरे पास आया और मैं उस पर सवार हूँ। मैं चिंता नहीं करता कि क्या हुआ, क्या होता है, हम कितनी बार पागल या कट्टर कहलाए। इस प्रातः आपकी चंगाई जब हम पर प्रार्थना की गई, अब हमारे पास और समय नहीं होगा, एक बजने वाला है विचारों को परखने की पंक्ति के लिए। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, और प्रत्येक के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, क्या ये ठीक है? यदि वे अपना हाथ बीमारों पर रख देंगे वे चंगे हो जाएंगे, क्या ये ठीक बात है? मैं इस पर सवार हूँ, क्या आप इस पर सवार होने के लिए तैयार हैं? आइए एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, ओ ये अंतिम दिन जबकि समय अंधकारमय होता जा रहा है, कलीसिया वचन के चारों ओर लिपटी है, वे नामधारियों के द्वारा झटका दिए गए, प्रभु वे जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, होने पाए वे इसे तोड़ना मरोड़ना बंद करें। संभवतः यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं इस प्रात है जो एक से दूसरी कलीसिया में गए, एक समय वे मेथोडिस्ट में थे, तब बैप्टिस्ट में थे, फिर पेंटिकॉस्टल में, फिर चर्च ऑफ गॉड में, फिर नाजरीन में। ओ परमेश्वर, होने पाए वे ऐसा करना बंद कर दें, प्रभु होने पाए वे आकर इस प्रात है इस प्रतिज्ञा पर सवार हो जाएं और विश्राम परमेश्वर की को उसकी प्रतिज्ञा पर लें। जब उसने कहा यदि तुम प्रायश्चित करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो अपने पापों के मोचन के लिए तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर प्रदान करें कि ये इस प्रातः इस प्रतिज्ञा पर लंगर डालें, उसकी भलाई के समुद्र में गिर जाएं, हमेशा के जीवन की फुहार आत्मा का जल इसे प्रदान करें। प्रभु होने पाए पवित्र आत्मा जो कि दौड़ और बह रहा है इनके द्वारों में अब ताजगी से ये इस धारा में परमेश्वर की प्रतिज्ञा में उतर जाएं और कहें प्रभु मैं इस पर सवार हूँ, यहाँ मैं आता हूँ, मैं इस पर सवार हूँ। उन्हें पाए बीमार और अपाहिज जो बीमार हैं और नहीं जानते कि क्या करना है, डॉक्टरों ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्होंने एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, जगह जगह संघर्ष किया है, वे नहीं जानते कि क्या करना है प्रभु, परंतु जीवन की धारा इस प्रातः उनके पास से बह रही है। वे मरकुस 16 का वचन ले लें, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे, विश्वासी चंगे हो जाएंगे जब उन पर हाथ रखे जाएंगे। प्रभु इस प्रातः वे इस पर विचार करें, उस पर चढ़कर और कहें प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मैं नहीं जानता मैं इसे कैसे जा रहा हूँ, परंतु मैं इस पर सवार हूँ, मैं धाराओं में होता हुआ नीचे जा रहा हूँ, आनंद करते हुए जीवन के जल में हाथ मारते हुए अपने प्राणों में फेंक रहा हूँ और मेरे सर के ऊपर की ओर और आपकी भलाई में नहाते हुए और आनंद करते हुए जैसे कि मैं जाता हूँ, जो प्रतिज्ञा आपने कही उस पर सवार वे चंगे हो जाएंगे। पिता इसे प्रदान करें। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ, मुझे अचरज है यदि आज प्रातः इस भवन में कोई व्यक्ति है, इस भवन में आज प्रातः कितने हैं जो नहीं जानते कि मसीह आपका बचाने वाला है और आप विश्वास करते हैं कि जीवन की धारा आपके पास लाई गई है, आपके पास सब प्रकार की अनिश्चितताएं का स्वर है, आपने अपना घर धंसने वाली रेत की चीजों पर बनाया हुआ है, आप अनुभव करते हैं कि किसी भी दिन आप मरने जा रहे हैं, आप संसार को छोड़कर जा रहे हैं और आप चाहते हैं वास्तव में निश्चित स्वर सुनना चाहते हैं और आप विश्वास करते हैं कि इस प्रातः आपने इसे सुना है कि मसीह अब भी आपसे प्रेम करता है, मैं चिंता नहीं करता आप कितने पापी हैं, वो अब भी आपसे प्रेम करता है और आप चाहेंगे कि मैं आपको अपनी प्रार्थना में स्मरण करूं, ठीक वहीं जहां आप खड़े हैं, हम आपको यहां वेदी पर नहीं बुला सकते, कोई वेदी नहीं है क्योंकि बालकों से भरा पड़ा है और आदि आदि, परंतु क्या आप चाहेंगे, आप विश्वास करते हैं कि आप मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं अभी अपने व्यक्तिगत बचाने वाले के समान और आप चाहते हैं कि आपको प्रार्थना में याद किया जाए, क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? आप कहते हैं मैं अब परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, वहाँ पीछे पीछे यहाँ इधर बीच में परमेश्वर आपको आशीष दे, इधर इस ओर परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं अब मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्रति भला रहे, वहाँ पीछे पीछे परमेश्वर आपको आशीष दे, वहाँ पीछे गलियारे में देखिए आप पीछे परमेश्वर आपको आशीष दे, क्या कोई और है? अपने हाथ उठाएं, कोई मतलब नहीं आप कहाँ पर हैं, सिर झुके हैं, युवा महिला परमेश्वर आपको आशीष दे, वहाँ पीछे बहन परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, पीछे वहाँ बहन, मैं नहीं, आपने अपना हाथ नहीं उठाया, परंतु गत रात्रि मैं आपके पति से मिलना चाहता था, अस्पताल में बुरा हाल था, वहाँ भाई की कलीसिया से, चिंता ना करें वो ठीक हो जाएगा, प्रभु ने पिछली रात्रि उसे वहाँ छुआ, मैंने देखा कि उसके साथ क्या गड़बड़ी थी, डॉक्टरों ने चार दिन यत्न किया कि इसे ढूंढे, परंतु उन्हें एक्सरे से कुछ भी नहीं मिला, परंतु पवित्र आत्मा एक्सरे से भी अधिक गहराई में जाता है, इसलिए वो ये ठीक है, अब वो घर में होगा, संभव है वो आज घर आएगा। ठीक है, कोई और वहाँ पीछे पीछे? परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं मसीह को व्यक्तिगत बचाने वाला स्वीकार करना चाहता हूँ, तो फिर मैं तैयार होना चाहता हूँ। मैं अपने घर की अनिश्चितता को जानता हूँ, मैं अपनी नौकरी की अनिश्चितता को जानता हूँ, मैं अपने जीवन की अनिश्चितता को जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं किस समय मरने जा रहा हूँ, मैं आज मर सकता हूँ, मैं नहीं जानता, यह अनिश्चित है। परंतु मैं एक निश्चित स्वर चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज मैंने इसे सुसमाचार के द्वारा सुन लिया कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है और मैं उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। कोई जिसने अपने हाथ नहीं उठाए और करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, कोई और अपना हाथ उठाता है? जिसने इसके पहले कभी नहीं उठाया, अपना हाथ उठाएं। मुझे भाई बहनम अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, स्वर्गीय पिता, एक निश्चित स्वर है जो इन लोगों ने सुना है, बहुत से यहाँ पर हैं, व्यवहारिक रूप में से जिन्होंने इस प्रातः आपको अपना व्यक्तिगत बचाने वाला स्वीकार किया है। अब पिता, मैं जानता हूँ कि ये एक रीति है कि लोगों को सामने वेदी पर लाएं प्रार्थना के लिए, परंतु ये वचनानुसार नहीं है, क्योंकि पवित्र वचन ने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। इसलिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ ये जिन्होंने आप पर विश्वास किया कि आपने स्वयं को उन पर प्रकट किया, उस निश्चित स्वर की आवाज जो वे जानते हैं कि ये आप हैं और वे आपको अपना बचाने वाला चाहते हैं, उन्होंने अपने हाथ उठाए मेरे लिए कि मैं उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखूं। वो परमेश्वर, ये जानते हुए कि समय समीप आ रहा है, ज्योतियाँ अब बुझ रही हैं, सभ्यता की ज्योति जा रही है, अमेरिका की ज्योति जा रही है, राष्ट्र की ज्योति बाहर निकल रही है, क्योंकि संसार की ज्योति भीतर आ रही है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें ये महान ज्योति स्वीकारने देंगे। हम अनुभव करते हैं कि ज्योति की उपस्थिति में कोई अंधकार नहीं टिक सकता, ज्योति अंधकार से बहुत ही अधिक सामर्थी होती है। और उन्हें मालूम पड़े कि लगभग 10 घंटों पहले ये भवन ऐसा अंधकार में था जितना हो सकता है, आप एक कुर्सी भी नहीं देख सकते थे इस भवन में, आधी रात जैसा अंधकार था 10 घंटे पहले, परंतु सूर्य उगा, वो अंधकार कहाँ जाएगा? मेरे लिए ढूंढो, वे इसे नहीं पा सकते। इसका रसायन कहाँ है? इसको क्या हुआ? ये ढूंढा नहीं जा सकता, ये चला गया। इसी प्रकार से इनके पाप अब 20 मिनट पहले अंधकार उनके प्राण में था, परंतु उन्होंने आपको अपना बचाने वाला स्वीकार कर लिया है और सारा अंधकार निकल गया। आपके पाप जो बहुत से थे शुद्ध हो गए और अब वे बर्फ के समान सफेद हैं। अब आप उन्हें और नहीं ढूंढ सकते, वे पुस्तक से कट गए, वे अभिलेख से हट गए। यीशु मसीह के लहू ने उनको उनके पापों से क्षमा कर दिया। उन्हें पाए वे बदले में उठें और आज रात्रि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें, प्रभु के नाम को ले लें और पवित्र आत्मा पाएं। इसे प्रदान करें पिता, इन्हें मैं आपको आज प्रातः के संदेश के परितोषक के रूप में समर्पित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, तेरे पुत्र। आप में से प्रत्येक जिसने अपना हाथ उठाया, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है, कलीसिया करेगी। आज रात्रि सेवाएं प्राप्त करें और अब तैयारी करें। आपका पास्टर इस प्रातः आपका नाम लिख ले। आपका बपतिस्मा जो कि आज प्रातः नहीं है, क्या है भाई? हाँ, आज प्रातः भी इस सभा के तुरंत पश्चात बपतिस्मे हैं। आ जाएं, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे के लिए हमारे पास आपके लिए कपड़े तैयार हैं। अब आप मसीही हैं, परमेश्वर की ज्योति आपके हृदय में आई है, स्मरण रखिए, ये कितनी अच्छी है। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता ही ना खींच ले। आपने क्यों अपना हाथ उठाया है? क्योंकि किसी चीज ने आपको कहा, उसी ने आपसे प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। वो जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। इस विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, अब आपके पास अनंत जीवन है। यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं, तो आप मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर गए हैं, आप सदा तक जीवित हैं। अब उसका पवित्र आत्मा ग्रहण करें, परमेश्वर की सामर्थ की आपके जीवन में कार्य करें और आप उसके लिए कार्य करें। आप इसे आज प्रातः प्राप्त करें, जैसे कि आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। वे जो बीमार हैं और चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, मैं गिनती देखना चाहता हूं ताकि मैं देख सकूं कि हम अपने हाथ उठाएं, देखिए कितने विचारों को परखने के लिए पंक्ति लगवाई जाए या नहीं। यहाँ बहुत सारे हैं, हमें इनके लिए प्रार्थना करनी होगी। बहुत सारे हैं, 150-200 लोग प्रार्थना के लिए हैं। ठीक है, कितनों ने कभी विचारों को परखना देखा है? अपने हाथ उठाएं। ठीक है, आप सब, ये ठीक बात है, ताकि आप जाने ये क्या है। अब इस प्रातः क्या आप विश्वास करते हैं कि आपने परमेश्वर की आवाज सुनी है? अब मैं भाई वुड, भाई फ्रेड सॉथमैन और इन कुछ ट्रस्टियों से कहने जा रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएं। आप में से कुछ ट्रस्टी भाई लोग या डीकन या जो भी, थोड़ी देर के लिए यहाँ आएं, बल्कि यहाँ थोड़ी भीड़ हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आप सहायता करें। अब आप लोग जो इधर हैं मेरे सीधे हाथ की ओर, जिनके लिए प्रार्थना होने वाली है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इधर इधर की ओर आ जाएं और भाई कॉलिंस यहां नीचे खड़े हों यदि आप चाहें तो। ठीक है, यहां आ जाएं यदि वह एक एक करके और प्रार्थना की जाए। वेदी के इस ओर तुम छोटे बालको, मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यदि आप लोग थोड़ी मिनटों के लिए इस ओर आ जाएंगे, भाई बर्नम के लिए, मेरे लिए नहीं परंतु प्रभु यीशु के लिए। अब आप भाई लोग यहाँ खड़े हों ताकि लोग इधर से होते हुए आ सकें और फिर तब हम इधर की ओर से सब लेंगे। अब यहाँ पहली पंक्ति से भाई चार्ली, मुझे आश्चर्य यदि आप भाई लोग डेविड और आप यदि आप यहाँ आना चाहें या थोड़ा सा पीछे की ओर। ठीक है, अब इस पंक्ति में पहला वाला इस प्रकार से उठे और उस ओर से आरंभ करें वहाँ और दीवार के साथ, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं। अब जब हम आरंभ करने के लिए तैयार हैं, अब अभी नहीं, तब जब यहाँ इस ओर से हम आपको इस ओर पीछे ले जाएंगे और फिर उस ओर से बाहर आ जाएं और फिर नीचे आ जाएं। अब ट्रस्टी और वे आपको सही स्थान पर ले जाएंगे। अब यदि वो महिला अपाहिज है, उठ नहीं सकती, और जैसे ये छोटी लड़की यहाँ कुर्सी में है, अब आप वहीं बैठें जहाँ आप हैं, मैं ही आपके पास आऊँगा, समझे? मैं छोटी एडिथ को जानता हूँ, वो यहाँ पीछे है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब यहाँ खड़े होकर बोलने में हमारी क्या भलाई होगी? परमेश्वर के इस वचन को प्रचार करने में हमारी क्या भलाई होगी यदि आप इसे नहीं सुनते, समझे? वो जो सुनता और विश्वास करता है, वो जो सुनता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप में से प्रत्येक स्वयं को परमेश्वर को सौंपता और कहता है, ये परमेश्वर का वचन है, मैं चिंता नहीं करता मेरी क्या दशा है, जो भी है, प्रार्थना होने के पश्चात मैं चंगा हो गया। क्या आप इसका विश्वास करेंगे? अब बहुत से लोग किसी चीज की राह देख रहे हैं, आप जानते हैं, जैसे कि क्या हो यदि वो महिला, जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की वहाँ पीछे सीढ़ियों में, मैंने उस महिला को देखा और फिर वो घटित हो गया। क्या यदि उसने कहा, पहला महीना निकल गया, मैं तो सारे समय बढ़ती जा रही हूँ, समझे? नहीं नहीं, वो नहीं, उसने एक आवाज सुनी और उस आवाज ने उसे बताया और उसने इसका पूरे हृदय से विश्वास किया और थोड़ी देर के बाद थोड़ा नीचे चला गया और अब वो स्वस्थ और अच्छी है। लियो, तुम कहाँ हो? क्या वो यहीं कहीं है? मैं भूल गया उस महिला का क्या नाम है, संभवतः कोई जानता होगा, मेरे पास उसका पता है, मैं वो कलीसिया में लाऊंगा। लियो, क्या तुम्हें उसका नाम याद है? क्या ये रेडफोर्ड या रेडफोर्ट? हमारे पास उसका पता है, यदि आप लिखना चाहें। वो ठीक यहीं कोड़ों से चंगी हुई, 30 पाउंड से अधिक था, चाकू का एक निशान भी नहीं। यहाँ उसका चित्र है जब उसे फोड़ा था, अब वो यहाँ कहीं भी एक निशान नहीं। परमेश्वर ने उसे चंगा किया, उससे अलग कर दिया। वहाँ डॉक्टर का बयान है जहाँ उसने उसे छोड़ दिया कि कैंसर उसके वृक्क को खाए और वो मर जाए, और अब वो स्वस्थ है और भली है, बिना किडनी की समस्या के साथ। ये 10,000 में से एक है। ये क्या है? अनिश्चित स्वर नहीं मित्र, इसकी ये बात है, क्या आप सुन सकते हैं? अब यदि तुरही अनिश्चित स्वर दे, कहते हैं ठीक है भाई, कुछ चंगे होते हैं कुछ नहीं, ये अनिश्चित स्वर है, समझे? इसका विश्वास ना करें। यीशु ने कहा, जो कोई भी, ये निश्चित है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, उन्होंने उन पर अपने हाथ रखे, वे चंगे हो जाएंगे। अब क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अपने संपूर्ण हृदय से आप इसका विश्वास करते हैं? और अब मैं पास्टर से पूछने जा रहा हूँ, अब इसके बाद हमारी बपतिस्मे की सेवा है, इसलिए देखिए, तब हमारे पास अधिक समय नहीं होगा, परंतु मैं भक्त मंडली के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, हर बीमार के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है, और जब वे यहाँ एक एक करके आते हैं, तो मैं क्या मैं उसका दास हूँ? आप विश्वास करते हैं? यदि आप ये विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक सीधा आपके अंदर आएगा, समझे मित्र? ये होना ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये मैं कुछ नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मैं आप लोगों में छोटा हूँ, परंतु मुझे यही होना है, वो जो तुम सब में छोटा हो, मुझे आप सबका दास होने दें, समझे? यही जो मैं होना चाहता हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप परमेश्वर के बालक हैं, मैं बस उसका दास हूँ। देखिए, मैं आपकी सेवा करने का यत्न कर रहा हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे विषय में कुछ नहीं, परंतु देखिए, किसी को तो आप पर हाथ रखने हैं, और तब यदि वो मुझे वचन लाने देता है और आप मेरे पास आए हुए वचन का विश्वास करते हैं, आप में से बहुत से मुझे विश्वासी कहते हैं और फिर वचन मेरे पास आता है, आप स्वयं निर्णय लें कि ये सही है या नहीं, समझे? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जांचे। अच्छा, यदि ऐसा है तो हर प्रतिज्ञा ऐसी ही है, ये होना ही है, समझे? नू, वो केवल नाव बनाता रहा। उन्होंने कहा ये हठधर्मी है, वहाँ पर कुछ नहीं है, आप वो कैसे पाने जा रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, परमेश्वर इसे वहाँ रख सकता है, और लगातार धमा चौकड़ी मचाता रहा। कैसे है, वो कौन था, कोई जिसके लिए मैं बोला, मूसा कैसे, मूसा वहाँ जाकर उस सेना को जीतता है, वो कैसे मिस्र को जीतने जा रहा है, वो इसे कैसे कर सकता है, एक बूढ़ा पुरुष 80 वर्ष का, उसकी पत्नी और बालक, वो इसे कैसे करने जा रहा है, ये मेरा कार्य नहीं है। परमेश्वर ने कहा जाओ और जाकर इसे ले लो, मैं जा रहा हूँ। तुम कैसे उन्हें फिरौन के हाथों से छुड़ाने जा रहे हो, मैं निश्चय ही मैं तेरे साथ होऊंगा, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। यदि आपने इसका विश्वास किया है जो हाथ आपके ऊपर रखे हैं, आपको चंगा होना ही है, आप इसका संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो यहां जो प्रार्थना कर सकता है, मैं चाहता हूं आप अपना सर झुकाएं, मैं चाहता हूं आप शांति के साथ प्रार्थना करें। मैं इन कपड़ों के लिए जो यहां रखे हैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करता हूं। स्वर्गीय पिता, हम एक सेवा समाप्त करके दूसरी में प्रवेश करते हैं। प्रभु, आज प्रातः बहुतों ने आपको स्वीकार किया है, बहुतों से हाथ उठे हैं, वे मृत्यु से जीवन में आ गए हैं। छोटी सी गर्द जो निकल गई, उनके पास से एक छोटी ज्योति निकली है, उनके विवेक पर एक छोटी मधुरता है। वो क्या था, वे मर रहे थे और वे मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए। जैसे एक बीज जमीन पर गिरता है, पहली बात वो गर्द को हटाता है, मरता है, सड़कर बाहर हो जाता है, तब एक छोटा जीवन का सोता उसमें से आता है और ये दूसरा बीज उत्पन्न करता है। अब प्रभु, इस प्रातः मृत्यु की एक छोटी सी धुंध उनके ऊपर से हट गई, और जब ये हटी तो वे जागे, और कुछ ही क्षणों में जब उन्होंने अपने हाथ उठाए, स्वयं में अनुभव किया परमेश्वर के वचन के द्वारा घुटन खत्म हो गई, कुछ कह रहा है तुम दंडित हो, तुम पापी हो, तुम मरकर नरक में चले जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम फिर कभी नहीं उठोगे, कि मृत्यु उन पर आ रही है। अंततः वो स्थिति के लिए मर गए, जब तक उन्होंने वो स्वर सुना जो कहता है, परंतु मैं तुम्हारा बचाने वाला हूँ, मेरे पास आओ तुम जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हुए हो, और उन्होंने अपने हाथ उठाए, मैं उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, और तब जीवन का सोता उनके प्राणों में आया, वे फिर उठे, एक नया मसीही आ गया। परमेश्वर, जब ये पानी में इस भक्त मंडली के सामने जाएं, अपने पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें, ताकि वे लोगों को खुलकर दिखा सकें कि इन्होंने संसार को बेच दिया है और अब से मसीह की सेवा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मर गए और बपतिस्मे में उसके साथ गाड़े गए कि एक नए जीवन में उठें, एक नए जीवन में चलें। यहाँ बहुत सुरमाल हैं, मैंने इन्हें अपने हाथों में पकड़ा हुआ है प्रभु, ये बीमारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब एक बार बाइबल में मैंने अक्सर इसका उल्लेख किया, जब इज़राइल अपने कर्तव्य के मार्ग पर था, प्रतिज्ञा के देश को जा रहा था, लाल सागर उनके मार्ग में आ गया, परमेश्वर ने उन बादलों में से होकर देखा, क्रोधित दृष्टि से उस अग्नि स्तंभ में से होते हुए, और वो लाल सागर डर गया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, कोई अनिश्चित स्वर नहीं। सागर जान गया कि परमेश्वर का वचन कच्चा नहीं था, वे जानते थे कि यह निश्चित था। इसराइल प्रतिज्ञा के देश के लिए बंधा हुआ था, उनके मार्ग में कोई नहीं खड़ा हो सका, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा, इसलिए सागर डर गया और पीछे हटकर एक सूखा मार्ग अपने मध्य में से बनाया, और वे सूखी भूमि पर से होते हुए पार हो गए। अब बहुत से मसीही हैं जो बीमार हैं, प्रभु यहाँ उनके रुमाल हैं। वे बाइबल में ये कहते हैं कि उन्होंने पौलुस की देह से छूकर रुमाल या कपड़े लिए। हम जानते हैं कि हम संत पौलुस नहीं हैं, परंतु हम जानते हैं कि आप अब भी वही परमेश्वर हैं, उसी वचन के साथ, उसी प्रतिज्ञा के साथ। जब मैं इन रुमालों को उन बीमारों और अपाहिजों के पास भेजता हूँ, वो शैतानी आत्माएं डर जाएं जिन्होंने उन्हें बांध रखा है, और वे भयभीत होकर चली जाएं, और परमेश्वर के बालक अच्छे स्वस्थ की प्रतिज्ञा की ओर चले जाएं, प्रभु से प्रदान करें। अब बहुत से इस भवन में यहाँ आपका पास्टर है इस प्रातः, मेरा भाई नेविल, यहाँ आपके डीकन और ट्रस्टी खड़े हैं, इस कलीसिया के अभिषिक्त लोग, आप इतने अनुग्रहकारी होकर आशीषित कर रहे हैं। यद्यपि प्रभु हम अयोग्य हैं, परंतु हम देखते हैं आपका आत्मा हमारे मध्य में घूम रहा है, और हम बहुत आनंदित हैं इसके लिए। ऐसा प्रतीत होता है बेदारी अंतिम बार हो रही है। ओ परमेश्वर, हम मिस्र को बेचे गए, अब हम अपने प्रतिज्ञा के देश के मार्ग पर हैं। अब कुछ ही दिनों की यात्रा है और हम यर्दन के पार हो जाएंगे। और अब परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मार्ग की हर रुकावट को आप हटा देंगे। बहुत से लोग इस दशा में कदम नहीं चला रहे हैं क्योंकि वे यहाँ बीमार और अपाहिज हैं। ये बीमारी उन्हें कैसे पकड़ सकती है? कैसे ये लोग उन्हें अपाहिज बनाए रख सकते हैं और पहिए की कुर्सियों में, जबकि वे प्रतिज्ञा के देश की ओर बढ़ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर, जब हम अपने हाथ उनकी देहों पर रखते हैं, शैतान डर जाए और हट जाए, उन्हें पाए वे चलने की स्थिति में हों। मैं उस महिला के लिए धन्यवादित हूँ जिसके विषय में मैंने सारी प्रातः बातें करता रहा। मैं उसे मस्तिष्क से नहीं हटा सकता। उस महिला को देखते हुए जो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, उस बड़े फोड़े के साथ डॉक्टर उसका उपहास उड़ा रहे थे, परंतु उसने एक आवाज सुनी थी। ये अनिश्चित स्वर नहीं था, ये निश्चित स्वर था, और उसने इसका विश्वास किया। अब प्रभु, हर बीमार व्यक्ति जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इस प्रातः वही आवाज सुने और आगे बढ़े, बढ़ने की स्थिति में हो कि छोड़े इस यात्रा के लिए। प्रभु इसे स्वीकार करें। हमने अब सारी चीजें बांध ली हैं, ओ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु, हम जंगल के लिए तैयार हैं कि सामने की यर्दन को पार करें। बस कुछ दिनों की यात्रा और हम वहाँ होंगे। परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ में होकर आगे बढ़े। हम वहीं कभी उपस्थित हों जब हम उस चमकती ज्योति को जो सामने है देखें। प्रभु, मार्गदर्शन करें कि जीवित हो उठा मसीह उस सिद्ध दिन में चमके। पिता, इसे ग्रहण करें। अब जैसा कि हम देखते हैं, हमारे हाथों का अभिषेक करें, हमारा अभिषेक करें कि पवित्र आत्मा जो अब हम में है चमके। अंतरिक्षीय ज्योति, उससे परे परमेश्वर की ज्योति उन बीमारों में चमके, निर्बल देहों में, और उनमें से प्रत्येक चंगा हो जाए। प्रभु, हम शैतान से मिलने के लिए आगे आते हैं। हम लाल सागर से मिलने के लिए आगे आते हैं, जो कि एक लाल सागर के समान था, बीमारी का ये सागर जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। हम पवित्र आत्मा की चमक में आगे आते हैं जो हमारे सामने है, कि शैतान से मिले यीशु मसीह के नाम में। उस बीमारी को पीछे हटना ही है, क्योंकि आपने वचन की सामर्थ में से होते हुए नीचे देखा है और उन्हें चंगा होना है। हम यीशु के नाम में आते हैं कि शत्रु से मिले। आमीन।